Bride. Thank you, Mother. Lord bless you. Good morning, friends.
आपका शुक्रिया भाई नेवल, खुदावंद आपको बरकत दे। सुबह खैर दोस्तों, मैं यकीनन इसको अपनी जिंदगी की बेहतरीन चीजों में से खास समझता हूँ कि आज सुबह फिर एक बार टेबरनेकल में मौजूद हूँ, ताकि आज इसकी खूबसूरत साख्त और खुदा के बच्चों की उसके घर में बैठने की तरतीब को देख सकूँ। कल जब मैं यहाँ पहुँचा और खूबसूरत इमारत को देखा तो मैं बहुत हैरान हो गया। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था कि ये इस तरह की खूबसूरत होगी। जब मैंने इस इमारत का नक्शा देखा तो मैंने एक और छोटा सा कमरा देखा था जब उन्होंने इसका नक्शा बनाया था, लेकिन अब मैंने इसे एक खूबसूरत इमारत की शक्ल में पाया है और हम कादरे मुतलिक के इस खूबसूरत इमारत के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं।
I'm bringing you this morning greetings from my wife and my children.
और हम यहाँ मौजूद हैं। मैं आज सुबह अपनी बीवी और बच्चों की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ, जो इस मखसूसियत की और मसीह की तकदीस के हफ्तों में यहाँ आने की तमन्ना रखते थे, मगर बच्चे इस वक्त स्कूल में थे और उनको छुट्टी करवाना मुश्किल था। और वो घर आने के लिए तकरीबन फरसुदा थे, मगर आपकी याद हमसे कभी जुदा नहीं होगी, क्योंकि आपकी याद हमसे अलग नहीं है। दोस्तों का होना बड़ी बात है और मैं हर जगह दोस्तों को सराहता हूँ, लेकिन पुराने दोस्तों की तो बात ही कुछ और होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ नए दोस्त बनाते हैं, पर ये कभी भी पुराने नहीं होते। इस बात से कतई नजर, भले मैं कहीं भी घूमूं, ये मकाम हमेशा मेरे लिए मुकद्दस रहा है, क्योंकि तकरीबन 30 साल पहले मैंने इस कीचड़ से भरे तालाब को यीशु मसीह के लिए मखसूस किया था। उस वक्त ये जमीन कुछ नहीं थी, लेकिन सिर्फ कीचड़ का तालाब थी। ये सब कुछ सिर्फ एक तालाब था। यही सबब है कि सड़क से हटकर है, सड़कों को घूमकर जाना पड़ता है, ताकि सड़कों को तालाब से दूर रखा जाए, जो यहाँ था। और यहाँ पर कंवल के फूल हुआ करते थे, क्योंकि तालाब में कंवल के फूल उगा करते हैं। और कंवल एक बहुत ही अनोखा फूल है, अगरचे यह कीचड़ में पैदा होता है। इसे जोर मारकर कीचड़ से निकलना पड़ता है और फिर पानियों और दलदली कीचड़ से इसे अपने आप को ऊपर ले जाना होता है, ताकि अपनी खूबसूरती दिखाए। और मैं आज सुबह सोचता हूँ कि यही सब कुछ यहाँ हुआ है, कि उस वक्त एक छोटा सा कमल का फूल यहाँ उभरा और अपने पर पानी पर फैलाए। उसने मजीद अपनी पंखड़ियाँ फैलाई, उसकी नन्ही पंखड़ियाँ बाहर निकल गई और उसने वादी की सोसन को मनक्स किया। काश ये हमेशा कायम रहे, काश ये मुकम्मल तौर से खुदा के लिए मखसूस किया हुआ घर रहे। ये टैबरनेकल पहले ही 1933 में मखसूस किया जा चुका है, मगर आज सुबह मैं सोच रहा हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी बात होगी कि एक छोटी सी मखसूसियत की इबादत की जाए, और खास तौर से इन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी मसीह के साथ मोहब्बत और अकीदत से इस सब कुछ को मुमकिन बनाया है। और मैं आप में से हर एक का इनफरादी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हदिया जात और सब कुछ वो जो कर सकते थे इस चर्च को मसीह के लिए मखसूस करने के लिए किया है। और मैं नहायत ही मशकूर हूँ और कलीसिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अल्फाज अपने प्यारे भाइयों के मुतालिक जो यहाँ कलीसिया में हैं बोलूं, जिन्होंने अपनी खिदमात को इसके लिए मखसूस किया।
ब्रदर बैंक्स वुड आवर नोबल ब्रदर, ब्रदर रॉय रोबर्सन,
भाई बैंक्स वुड जो हमारे आला बाई हैं, भाई रॉय रॉबर्टसन जो हमारे आला बाई हैं, और बहुत से दूसरे जिन्होंने बगैर गर्ज और नेक नीति से महीनों इस इमारत की तामीर में हिस्सा डाला जब ये बन रही थी, और यहाँ खड़े रहे ताकि देखें कि ये दुरुस्त तामीर हो रही है। और जब मैं अंदर आया ताकि इस मंबर को देखूं, तो ये वैसा ही था जिसकी तमन्ना मुझे उम्र भर रही थी। मैं बल्कि भाई वुड जानते थे कि मुझे क्या पसंद है, लेकिन उसने कभी नहीं कहा था कि वो ये बनाएगा, मगर उसने इसे बना ही दिया। और मैंने इमारत का बगौर मुशाहदा किया कि कैसे ये तामीर की गई है। ये बहुत ही ये नहायत ही आला है, और अब कोई अल्फाज नहीं है कि मैं अपने एहसास का इजहार कर पाऊँ। देखें, कोई तरीका ही नहीं है कि इसे बयान कर सकूं, मगर देखें, खुदा सब समझता है। और आपका शुक्रिया, आप में से हर एक को आपके हिस्से की बरकत मिले, और सब कुछ जो आपने इस इमारत को ऐसा बनाने के लिए किया है, और इस तरह ये इमारत खुदावंद का घर होने के लिए बन चुकी है। और अब मैं ये अल्फाज कहना चाहूँगा, अब ये इमारत अंदर से जैसी है जितनी खूबसूरत है उतनी ही बाहर से है। मेरा बहनोई जूनियर वेबर मिस्त्री है। मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा काम हो सकता था जो हुआ है, इसलिए ये बेहतरीन काम है। एक और भाई जो यहाँ है, मैं इस शख्स से कभी नहीं मिला था, इसने साउंड सिस्टम नसब किया है। मैंने तवज्जो दी है कि इस तरह की हमवार इमारत में भी इस तरह का काम किया है। मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ, आवाज पलट कर वापिस नहीं आती है। वो आलात मुख्तलिफ राहों से होते हुए यहाँ छत में है। देखें, भले मैं कहीं भी खड़ा हूँ, ये बिल्कुल यकसा है। और हर कमरा जो तामीर किया गया है उनमें स्पीकर मौजूद हैं, और आप जिस तरह से सुनना चाहें उसे वैसे ही सुन सकते हैं। और मेरा ईमान है ये कादर मुतली खुदा का हाथ है जिसने ये सारी चीजें की हैं। अब देखें, हमारे खुदावन ने हमें ये इमारत बख्शी है ताकि हम तकरीबन 30 साल पहले की निस्बत बेहतर तौर से इसमें उसकी इबादत कर सके। जब हमने इबादत का आगाज किया था तब ये कच्चा फर्श था, और हम यहाँ अंगीठियों में कोयले जलाकर बैठा करते थे। और ठेकेदार भाई वुड उनमें से एक है, और भाई रॉबर्टसन मुझे बता रहे थे कि कहाँ पर वो सतून थे, और उन पुरानी अंगीठियों को उन शैतीरों पर रखा हुआ था, उनमें आग लग गई थी और वो शायद 2 या 3 फीट जल गए थे। ये नीचे तक क्यों नहीं जले थे? ये सिर्फ खुदा ही था जिसने बचाया। और तब जलने के बाद पूरे टेबरनेकल का वजन उसी पर टिका हुआ था, मगर ये नीचे क्यों नहीं गिरा था? क्योंकि ये सिर्फ खुदावंद का हाथ था जो उसको थामे हुए था। अब इसको लोहे के साथ और सीमेंट के साथ मजबूती से तामीर कर दिया गया है। अब मेरा ख्याल है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको अंदर से भी खुदा के फजल से अच्छा बनाएं। हमें खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत ही नहीं जिसमें हम आया करें, बल्कि काश हर एक जो इस इमारत में दाखिल हो, हर एक शख्स जो इसमें आया करे, यीशु मसीह की खूबसूरत खसूसियात को देखा करे। काश कि ये हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस की गई जगह हो, मुकद्दस किए गए लोग हों, क्योंकि चाहे इमारत की साख्त कितनी भी खूबसूरत हो, मगर चर्च की असल खूबसूरती उसके लोगों का किरदार होता है, और हम इसे सराते हैं। मैं ईमान रखता हूँ ये हमेशा अपनी खूबसूरती के साथ खुदा का घर होगा। अब कोने के सिरे का पत्थर रखने की मखसूसियत की इबादत में मुझे एक अजीम रोया मिली थी। उस सुबह जब मैंने इसको मखसूस किया था, उस कोने के पत्थर के सिरे पर लिख दिया था। और आप शायद हैरान हो रहे हो कि कुछ मिनट पहले क्यों मैंने बाहर आने में इतनी देर कर दी थी। जैसे ही मैं इस नए चर्च में आया और पहला काम जो मैंने किया वो एक नौजवान मर्द और नौजवान औरत का निकाह पड़ा था जो मेरे दफ्तर में खड़े थे।
I'll be a loyal minister to Christ.
काश ये एक नमूना हो कि मैं उसकी शादी के लिए दुल्हन को तैयार कर पाऊं और मसीह का वफादार खादम बना रहूं। और आए अब वैसे ही करते हैं जैसे मैंने इब्तिदा में किया था, जब हमने पहली बार चर्च की मखसूसियत करना शुरू की थी। उस वक्त मैं नौजवान था और शायद मेरी उम्र उस वक्त 21 या 22 साल थी जब हमने बुनियाद रखी थी। ये मेरी शादी से पहले की बात है। और मैं हमेशा इस जगह को बेहतरीन तरतीब में देखना चाहता था कि खुदा देखे, ताकि उसके लोगों के साथ खुदा की इबादत की जाए। और ये हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, ना कि खूबसूरत इमारत के वसीले, बल्कि पाकीज़ा जिंदगी ही वाहिद तरीका है जिसके वसीले हम ये कर सकते हैं। और अब इससे कबल कि हम इसे मखसूस करें, मखसूसियत की दुआ करते हैं, कलाम का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं और चर्च को वापस खुदा के लिए मखसूस करते हैं। और इसके बाद मेरे पास कुछ है। आज सुबह मेरे पास बशारती पैगाम है जो मेरे आने वाले पैगाम की बुनियाद है। और आज शब्द मैं मुकाशवा के पांचवें बाब से लेना चाहूंगा, जो कि सात कलीसिया जमानों से जुड़ा हुआ है और फिर सात मोरों तक जाता है। जैसा कि मेरे बल्कि फिर हमारे पास ये बातें होंगी, पीर की शब्द सफेद घोड़े के सवार को देखेंगे, मंगल की शब्द काले घोड़े के सवार को देखेंगे, उसी तरह आगे बढ़ेंगे, उन चारों घोड़ सवारों के मुतालिक बात करेंगे और फिर छठी मोर को खोला जाएगा। और फिर इतवार की सुबह, अगले इतवार की सुबह, अगर खुदावंद की मर्जी हुई, बल्कि हम इसे बाद में देखेंगे और इसका ऐलान बाद में करेंगे, शायद अगले इतवार की सुबह इस इमारत में बीमारों के लिए दुआया इबादत हो। और फिर इतवार की शब इसको खत्म करेंगे, बल्कि खुदा सातवीं मोहर को खोलने में हमारी मदद करे, जहाँ पर मुख्तसर सी आयत लिखी है और वहाँ ये लिखा है, आसमान में आधे घंटे के लिए खामोशी छा गई। इस खामोशी में कुछ है। और अब मुझे मालूम नहीं इन मोहरों का क्या मतलब है। मैं भी उन ही जैसा हूँ। मेरी सारी समझ का यही इख्तिताम हो जाता है। और हो सकता है आज सुबह आप में से भी कुछ के साथ ऐसा ही हो। हमारे पास आलमाना तसव्वुरात हैं जो इंसान के पेश करदा हैं, मगर वो इसको कभी छू भी नहीं सकते हैं। और अगर आप गौर करें तो इसे तहरीक से आना है। इसे तो फक्त खुदा ही जाहिर कर सकता है, सिर्फ खुदा, और बरा ही ये कर सकता है जिसके पास आज शब ये मखलसी की किताब है। अब इस सबब से मैं बीमारों के लिए दुआया इबादत और मजीद इसी तरह की इबादतों का ऐलान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ अजीजों के साथ रह रहा हूँ और मैं हर लम्हा दुआ और मुताले में गुजारता हूँ। और आप उस रोया के मुतल्लिक जानते हैं जो मुझे यहाँ से निकलने और मगरिब की तरफ जाने से मिली थी, वो सात फरिश्ते जो उड़ रहे थे। लिहाजा आप इसे कुछ देर के बाद समझ जाएंगे। बस अब देखें, इस इमारत में मेरा ख्याल है हमें इसमें होना चाहिए, अगरचे ये मखसूस की जा चुकी है या चंद लम्हों में फिर मखसूस की जाएगी कि खुदा की इबादत की जाए, तो हमें इसे उसी तरह रखना चाहिए। हमें कभी भी इस इमारत में खरीदो फरोख्त नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी इस घर में कोई तजारत नहीं करनी चाहिए। ऐसा कभी भी यहाँ नहीं होना चाहिए कि यहाँ खादमों को इजाजत दी जाए कि वो आए किताबें और बाकी चीजें बेचें, चाहे जो कुछ भी हो, क्योंकि और बहुत सी जगह हैं जहाँ ऐसा काम किया जा सकता है। क्योंकि हमें अपने खुदावन के घर में खरीदो फरोख्त नहीं करनी चाहिए। इसे इबादत की जगह होना चाहिए। ये पाक है और इसी मकसद के लिए मखसूस की गई है, समझे। अब उसने हमें एक आला जगह अनायत की है। आए इसे मखसूस करें और इसके साथ अपने आप को भी खुदा के लिए मखसूस करें। और अब ये शायद थोड़ा सा गैर महजब मालूम हो, मगर ये सैर करने की जगह नहीं है, ये इबादत की जगह है। हमें यहाँ इबादत के सिवा कोई एक फालतू लफ्ज भी एक दूसरे से नहीं कहना चाहिए, जब तक कोई नहायती जरूरी बात ना हो, समझे। हमें कभी भी इसके अंदर एहतजाज नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी इस इमारत के अंदर दौड़ना नहीं चाहिए और ना ही हमें अपने बच्चों को दौड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। और जब हम ऐसी एहतियात करते हैं तो हम बहुत जल्द महसूस करेंगे कि ऐसा करने के लिए हमने इसको तामीर किया है, ताकि हम इसकी पूरे तौर से देखभाल कर सकें। अब ये हमारी तरतीब है। बेशक बहुत से लोग अजनबी हैं, मगर टैबरनेकल के लोग इस बात को जानते हैं कि ये इमारत कादर मुतली की खिदमत के लिए मखसूस की जाने वाली है। बस अपने आप को मखसूस करें। याद रखें कि जब हम इस इबादत गाह में दाखिल होते हैं तो एक दूसरे से बात ना करें, सिर्फ खुदा की इबादत करें। अगर हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, मगर कभी भी यहां इधर उधर ना दौड़ें, जहां आप अपनी सोच को भी सुन ना सकें और कोई शख्स अंदर आ जाए और उसे मालूम ही ना पड़े कि क्या करना चाहिए। देखें, अगर बहुत ज्यादा शोर और ऐसी चीजें होती हैं तो ये सिर्फ इंसानी अमल है, और मैं इस चीज को चर्चेज में इतना ज्यादा देख चुका हूँ कि ये चीज मुझे इंतहाई बुरी लगती है, क्योंकि हम खुदावंद के घर में एक दूसरे से मिलने नहीं आते हैं। हम यहाँ खुदा की इबादत करने आते हैं और फिर अपने घरों को चले जाते हैं। ये हैकल इबादत के लिए मखसूस है। जब इबादत गाह से बाहर खड़े हैं तो आप कोई भी बात कर सकते हैं, बशर्ते कि वो दुरुस्त और मुकद्दस बात हो। मिलने के लिए एक दूसरे के घर जाएं या उन जगहों पर जाएं जहां एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जब आप इबादत गाह के दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं तो खामोश हो जाएं। आप यहां खुदा से बात करने आते हैं, समझे, और फिर वो वापस आपसे बात करता है। मुश्किल ये है कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं मगर बहुत ज्यादा सुनते नहीं हैं। बस जब हम यहां अंदर आते हैं तो उसका इंतजार करें। अब शायद यहां कोई एक शख्स भी ना हो जो उस वक्त मौजूद हो जिस दिन हमने इस पुराने टेबरनेकल को मखसूस किया था, जब मेजर अलरिच ने म्यूजिक बजाया था और मैं यहाँ तीन सलीबों के पीछे खड़ा हुआ था कि इस जगह को मखसूस करूँ। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। निगरान पीछे दरवाजे पर खड़े हों और नजर रखें कि कोई बात ना करे। जब आप बाहर अपनी बातें खत्म कर लें तो फिर अंदर आ जाएं। अगर आपके दिल में कोई तमन्ना है तो खामोशी से आप मस्जिद पर आएं और खामोशी से दुआ करें, फिर वापस अपनी जगह पर चले जाएं और बाइबल को खोलें। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है ये उस पर मुनसर है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप उससे कोई बात करना चाहते हैं तो कहें, मैं आपसे बाहर मिलूंगा क्योंकि मैं यहाँ खुदावंद की इबादत करने आया हूँ। आप खुदा के कलाम को पढ़ें या खामोशी से बैठे रहें। और इसके बाद म्यूजिक की बारी है। बहन गेटी, मुझे मालूम नहीं कि वो आज सुबह यहाँ हैं या नहीं। क्या बहन गिब्स हैं? ये पुरानी पियानो बजाने वाली हैं। मुझे यकीन है और मेरी बेहतरीन याददाश्त के मुताबिक इस कोने में पीछे बैठती थी और वो धीमी आवाज में ये सुर बजाती थी, सलीब पर मेरा नजात दहिंदा मुआ। ये बहुत ही सुरीला और मधुर म्यूजिक होता था और तब तक जब तक इबादत का वक्त नहीं हो जाता था बजाया जाता था और गीतों में रहनमाई करने वाला उठता था और कुछ गीत जो लोग गाते थे उनमें रहनमाई करता था। और तब अगर उनके पास कोई आला सोलो गीत होता था तो वो उसे गाते थे, मगर कभी भी चलते फिरते गीत नहीं गाए जाते थे और फिर म्यूजिक मुसलसल बजता रहता था। और जब मैं इसको सुनता था तो मुझे मालूम हो जाता था कि अब मेरा बाहर आने का वक्त हो गया है। जब खुदा का खादम जमायत में दुआ करते हुए और रूल कदूस के मसा में चलते हुए आता है तो फिर आप जान लें कि आप आसमान से सुनने वाले हैं। बस यही सब कुछ है और फिर कोई सबब नहीं कि आप अनसुनी कर दें। लेकिन अगर आप किसी उलझन में चलते हैं तब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यूं रूह रंजीदा हो जाता है, और हम ऐसा नहीं चाहते, हरगिज नहीं। हम यहाँ इबादत के लिए आते हैं। मैं कुछ मिनटों में अपने उनवान के मुतालिक बोलने वाला हूँ और वगैरह वगैरह। हमारे पास खूबसूरत घर है जहाँ हम अपने दोस्तों को ले जाकर मिल सकते हैं, मगर ये खुदावंद का घर है। अब देखें, यहाँ कुछ छोटे बच्चे हैं और कुछ बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं। अब वो कुछ भी नहीं जानते, वो एक ही बात जानते हैं, जो भी चीज मांगनी है वो रोकर मांगनी है, और बाज़ुकात पीने का पानी होता है और बाज़ुकात सिर्फ तवज्जो होती है। और बस हम खुदा के फजल से हमने एक कमरा अलग मखसूस किया हुआ है, फरिश्त में मौजूद है। उसको एक रोने वाला कमरा कहा गया है, लेकिन ये बिल्कुल मेरे सामने है। जैसा कि दूसरे लफ्जों में ये वो कमरा है जहां माएं अपने छोटे बच्चों को ले जा सकती हैं। अब जब मैं यहां पुलपट पर होता हूं, तो मुझे बच्चों के रोने से कोई परेशानी नहीं होती है, और शायद मैं इस पर गौर भी नहीं करता क्योंकि मैं मसा में होता हूं। मगर यहां करीब जो लोग बैठे होते हैं ये उनके लिए परेशानी का सबब होता है। देखें, वो यहां इबादत के लिए आए हैं। बस वो माएं जिनके छोटे बच्चे रोना और चीखना शुरू कर देते हैं तो आप उन्हें रोक नहीं सकती हैं। तो आप कभी भी ना कहें, मैं इसे यहाँ लाना छोड़ दूंगी, इसे यहाँ लाएं, क्योंकि एक हकीकी माँ जरूर अपने बच्चों को चर्च में लाना चाहेगी और ये काम आपको जरूर करना चाहिए। और हमारे पास यहाँ एक ऐसा कमरा है जहाँ से आप इमारत के सारे कोने और सारे ऑडिटोरियम को देख सकते हैं, और वहाँ एक स्पीकर भी पड़ा हुआ है जिससे आप अपनी मर्जी के मुताबिक आवाज को कंट्रोल कर सकते हैं जितनी चाहें, और साथ ही आखिर में एक बैतुल खुला है और पानी का बेसन भी मौजूद है और माओ की सहूलत के लिए सब कुछ मौजूद है और वहाँ पर कुर्सियाँ और दूसरी चीजें भी मौजूद हैं और आप वहाँ बैठ सकती हैं और वहाँ आपके बच्चे के कपड़े बदलने की भी जगह है और अगर बदलने की जरूरत पड़े तो वहाँ सब कुछ मौजूद है। ये सब कुछ वहाँ रखा गया है और फिर कई मर्तबा देखा गया है नौजवान बच्चे और बाज़ुकात बालिग भी शामिल होते हैं। आप जानते हैं नौजवान लोग चिट्ठियाँ भेजते हैं या मजाक या इबादत में इशारे करते हैं। अब आप पुराने लोग काफी समझदार हैं, समझे, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि ये गलत है। देखिए, आपको ये सब कुछ करने के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर आप उम्मीद करते हैं कि किसी दिन आपको हकीकी इंसान बनना है और खानदान को खुदा की बादशाह के लिए तैयार करना है तो फिर इसका आगाज ही ठीक करें। आप देखें और ठीक अमल करें और ठीक चाल चलें। और अब इस वक्त अब देखें, नगरान इमारत के कोनों में खड़े हुए हैं और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो सुने, वो इस जिम्मेदारी के लिए मुकर्रर किए गए हैं और ट्रस्टी यहाँ सामने बैठे हुए हैं और इस दौरान अगर कोई गलत हरकत करता है तो उन्हें हुक्म है कि वो शख्स को समझाएं कि वो चुप रहे। फिर अगर उनके दिलों में इस जगह का कोई एहतराम नहीं है तो बेहतर ये होगा कि उनकी जगह कोई और बैठ जाए, क्योंकि यहाँ कोई और भी है जो सुनना चाहता है, कोई है जो इस मकसद के लिए आया है कि सुने, और इसी मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं ताकि खुदावंद के कलाम को सुने। और बस हर कोई कलाम को सुनना चाहता है और वो चाहता है कि जितनी खामोशी मुमकिन हो इख्तियार की जाए, इतना खामोश रहें जितना रह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोह बातें करने वाला और शोर मचाने वाला नहीं है। बेशक इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हर कोई खुदावंद की इबादत कर रहा है और यही कुछ होना चाहिए। यही सबब है कि आप यहाँ आते हैं ताकि खुदा की इबादत करें। अगर आप महसूस करते हैं कि खुदावंद की हमद करें या नारे लगाएं तो आप ऐसा कर सकते हैं, समझे। यही सबब है कि आप यहाँ आए हैं। देखे, सिर्फ खुदावंद की इबादत करें, अपने पूरे दिल से इबादत करें। लेकिन जब आप आपस में बातें करते हैं और चिट्ठियां देते हैं तो फिर कोई भी इबादत नहीं कर सकता और इस तरह आप दूसरों को भी खुदावंद की इबादत से हटाते हैं, समझे। बस हम महसूस करते हैं कि ये गलत है और हम इस चर्च में ये असूल बनाना चाहते हैं कि हमारी कलीसिया, ये इमारत या ये चर्च सिर्फ खुदावंद की बादशाहत और कलाम की मुनादी के लिए मखसूस रहे। दुआ करना, इबादत करना, और फिर आपका यहाँ आने का मकसद यही होना चाहिए कि इबादत करें। और फिर एक और बात है, जब इबादत खत्म हो जाती है तो आमतौर पर चर्चेज में लोग ऐसा, मेरा ख्याल नहीं कि यहाँ भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं हमेशा इबादत खत्म होने के बाद देखें जल्दी बाहर निकल जाता हूँ। अक्सर दूसरी इबादत में मुनादी करने के दौरान मस्सा आ जाता है और रोहाएं जाहिर हो जाती हैं, जिसके बायस मैं कमजोरी महसूस करता हूँ और मैं निकलकर कमरे में चला जाता हूँ और शायद बिली या कोई और आदमी मुझे घर ले जाता है ताकि मैं कुछ देर आराम कर लूं, जब तक कि मैं उस हालत से बाहर ना आ जाऊं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थका देने वाला काम है। और फिर मैं कई ऐसे चर्चेज भी देख चुका हूं, जहां बच्चों को हर तरफ इबादत गाह में दौड़ने की छूट दी गई है और बालिग भी कमरे में खड़े होकर एक दूसरे के साथ शोर मचाते हैं। सुने, शाम की होने वाली इबादत में या जिस वक्त भी इबादत हो उसको खराब करने का ये अच्छा तरीका है, समझे। इसलिए जैसे ही इबादत खत्म हो जाती है उस जगह से निकल जाना चाहिए। जब आप इबादत कर लेते हैं फिर आप बाहर चले जाएं और एक दूसरे से बातचीत करें या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं करें। और अगर आपके दिल में किसी को कहने के लिए कुछ है तो बेहतर है कि आप उनसे मिलें, या अच्छा है कि आप उनके साथ उनके घर चले जाएं या जो कुछ भी करें, लेकिन इबादत गाह में ऐसा मत करें। इसे खुदा के लिए मखसूस रहने दें, समझे। ये उसके मिलने की जगह है जहाँ हम उससे मिलते हैं, समझे। और बेशक कानून इबादत गाह से निकलता है और मेरा ईमान है कि ये अमल हमारे आसमानी बाप की खुशनुदी के लिए होगा। और फिर जब आप यहाँ आते हैं और आपको मालूम होता है कि आपके दरमियान नेमतें नाजिल हो रही हैं, बल्कि आप देखें आमतौर से ऐसा होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा। जब लोगों के पास नया चर्च होता है तो फिर आपको मालूम है पहली बात क्या होती है, कलीसिया गुमन करने लगती है। लेकिन आप कभी ऐसा ना करें, बेशक ये इबादत करने की जगह है, ये खुदावंद का घर है। और जब रूहानी नेमतें आपके दरमियान नाजिल होना शुरू होती हैं, मैं समझता हूँ कि जब से मैं यहाँ से गया हूँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ पर मुंतकिल हो चुके हैं ताकि इसको अपना घर बना लें। और इस बात के लिए मैं खुदा का मशकूर हूँ और शुक्र गुजार हूँ, इसलिए कि मैं उस पर ईमान रखता हूँ। उस सुबह जब मैंने इसे मखसूस किया था और कोने के सिरे का पत्थर रखा था तो उस वक्त मैं एक नौजवान था और मैंने इसके कायम रहने की दुआ की थी कि ये यीशु मसीह की आमद तक खड़ा रहे। और जब मैंने ये किया था तो हजारों डॉलर का मकरूज हो गया था, और वो बल्कि आप उस तादाद की कलीसिया से चंदा लेते तो वो 30 या 40 सेंट बनते थे, और हमारी जरूरत तकरीबन 150 या फिर 200 डॉलर महाना थी। देखें, मैं ये कैसे कर सकता था, और मैं जानता था कि मैं काम कर रहा हूँ और मैं ऐसा कर लूँगा। मैंने 17 साल की खिदमत में एक सेंट भी नहीं लिया था, बल्कि सब जो कुछ मेरे पास था सिवाय मेरे अपने खर्चे के अलावा, और सब कुछ जो इस छोटे डब्बे में डाला जाता था, मैंने वो सब कुछ खुदा की बादशाही के लिए दे दिया। और लोगों ने नबूवत और पेशनगोइयां की थी कि ये एक साल के अंदर अंदर गैराज की जगह बन जाएगी। शैतान ने एक मरतबा कानून की धोखादही से इसे छीनने की कोशिश की थी। किसी शख्स ने दावा कर दिया था कि जब वो इस जगह पर काम कर रहा था तो उसका पांव जख्मी हो गया था, और तब वो उसे हड़प लेना चाहता था। उसने हम पर मुकदमा कर दिया था और टेबरनेकल को हर जाने में लेना चाहता था। और कितने हफ्ते मैं इस मकाम पर खड़ा रहा, और जैसा कि वो कहते थे, उन तमाम गलतफहमियों और पेशनगोइयों के बावजूद ये आज भी अमेरिका में मौजूद है, और बेहतरीन समात खाना और खूबसूरत चर्चेज के दरमियान खड़ा है। ये सच है। यहाँ से जिंदा खुदा का कलाम दुनिया के चौगिर्द पहुँचा है, समझे, दुनिया के चौगिर्द। ये कलाम मुसलसल दुनिया के चौगिर्द चक्कर लगा रहा है, जहाँ तक हम जानते हैं, आसमान के नीचे, हर एक देश में, और दुनिया के चौगिर्द पहुँच रहा है। और इसके लिए हम शुक्रगुजार होना चाहते हैं। आएं, इसके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें। और अब देखें कि हमारे पास इबादत करने की जगह है, हमारे सर पर छत है, एक अच्छा और साफ सुथरा चर्च है, ताकि इसमें बैठें। आएं, नए सिरे से अपने आप को इसके लिए मखसूस करें और अपने आप को मसीह के लिए मुकद्दस करें। और भाई नेवल हमारे अजीम भाई, हकीकी पास्टर और जिंदा खुदा के खादम हैं, और जितना ज्यादा ये इस पैगाम को जानते हैं उसे ये अपने दिल से थामे हुए हैं। ये सच है। ये बहुत ही शरीफ इंसान है। ये थोड़ा सा खौफजदा है, ये खौफजदा नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मगर ये बहुत ही शरीफ इंसान है। ये हद से ज्यादा नहीं बोलते, आप जानते हैं, ये कोई सख्त काट देने वाली बात या बैठ जाओ या चुप रहो नहीं कहते। मैंने इनकी टेपें सुनी हैं और ऐसा ही पाया है। लेकिन ऐसा होता है, जैसा कि मैं ये कर सकता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातें याद रखें, समझे। देखें, ये सब कुछ टेप में महफूज हो रहा है, और सब कुछ टेप में महफूज होता है। और मेहरबानी से हर डीकन को अपने काम को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, और याद रखें कि आपको ये खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया है कि इस खास जिम्मेदारी को निभाएं, समझे। हर एक ट्रस्टी भी इसी तरह करे, मगर पास्टर को ये सब, ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें कहे, ये खजानची की ड्यूटी है, बल्कि मेरा मतलब है डीकनों की है, क्योंकि ये चर्च की पॉलिसी है। ये ऐसे ही है, जब नौजवान जोड़े चर्च के बाहर आते हैं और हॉर्न बजाते हैं, और आप जानते हैं कि वो आम तौर से ऐसा किस तरह करते हैं, और कुछ और इसी तरह के काम करते हैं, इबादत के दौरान ऐसा करते हैं, तो फिर आप बाहर जाकर उनको रोकें। और अगर कोई माँ अपनी बच्ची को यहाँ चर्च में भेजती है और वो किसी बेदिन लड़के के साथ बाहर चली जाती है और गाड़ी में घूमती फिरती है, और उसकी माँ समझती है कि वो चर्च में है, बस डीकन को उस पर निगाह रखनी चाहिए और ऐसी लड़की को कहना चाहिए कि आप यहाँ अंदर चर्च में आकर बैठ जाएं, या मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर आपकी माँ के पास छोड़ आता हूँ, समझे। आपको जरूर ऐसा करना चाहिए। याद रखें और देखें, मोहब्बत हमेशा दुरुस्त करती है, हकीकी मोहब्बत हमेशा दुरुस्त करती है। बस आपको हमेशा दुरुस्तगी को कबूल करने के काबिल होना चाहिए। और माएं अब जान चुकी हैं कि उनके बच्चों के लिए यहाँ जगह मौजूद है, और आप जवान बच्चों को मालूम है कि इमारत में इधर उधर भागदौड़ अच्छी बात नहीं है, समझे। और आप बालिग लोगों को मालूम है कि समात खाने के अंदर बातें नहीं करनी चाहिए, और आपको गुफ्तगू जारी नहीं रखनी चाहिए, समझे। ऐसा मत करें, ये गलत है, इसमें खुदा की खुशनुदी नहीं है। यीशु ने कहा, लिखा है, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। अब तमाम कौमों की जानिब से वो कैसे दुआ का घर कहलाया जाता, जबकि वहाँ खरीदो फरोख्त कर रहे थे। उसने रस्सी का कोड़ा बनाया और उन लोगों को हैकल से बाहर निकाल दिया। और हम हरगिज ऐसा नहीं चाहते कि वो काम यहाँ इस इबादत गाह में भी हो। बस आए अपनी जिंदगियों को, अपने चर्च को, अपने कामों को, अपनी खिदमात को, और सब कुछ जो कुछ आपके पास है उसे खुदा की बादशाही के लिए मखसूस करें। अब देखें, अब इससे पहले कि हम मखसूसियत के लिए दुआ करें, मैं चाहता हूँ कि कलाम का कुछ हिस्सा पढ़ें, और ये एक बार फिर से मखसूसियत है, चूँकि हकीकी मखसूसियत 30 साल पहले की जा चुकी है। अब देखें, जबकि हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो इस पर कुछ मिनटों के लिए बात करते हैं, बस मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा हमें अपनी बरकत से नवाजेगा। अब एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जी हाँ, जहाँ हमारी रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, मगर अब हमारे पास यहाँ बाकायदा एक कमरा है और जो लोग चाहते हैं वहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहाँ तमाम आलात का खास इंतजाम किया गया है और बाकी सब कुछ भी है। उस कमरे में सीधी माइक से आवाज जाती है और यहाँ लबास के कमरे भी मौजूद हैं और बपतिस्मे की इबादत के लिए सब कुछ है। फिर एक और बात है, बहुत सारे लोग मुझ पर हमेशा तनकीद करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हकीकतन कलाम को नहीं जानते, और वो बात चर्च में सलीब लगाने के हवाले से है। मुझे याद है कि एक मर्तबा इस हवाले से यहाँ कुछ वाकया हुआ था। मेरे पास तीन सलीबें थी और एक भाई गजबनाक हो गया था क्योंकि उसने दूसरी तंजीम वालों को ये कहते सुना था कि सलीब लगाने का मतलब है कैथोलिक होना। मैं चाहता हूँ कि कोई तालिब इल्म या कोई शख्स या कोई नए सिरे से पैदा शुदा मसीही ये बताए, क्या कैथोलिक के पास सलीब का इख्तियार है? सुने, मसीह की मसलूबियत कैथोलिकिज्म की अकासी नहीं है, ये खुदा की बादशाही की अकासी है। अब सेंट्स कैथोलिकिज्म की अकासी करते हैं, जबकि हम ईमान रखते हैं कि इंसान और खुदा के बीच में एक दरमियानी है और वो मसीह है, लेकिन कैथोलिक वाले हर तरह के दरमियानी पर ईमान रखते हैं, हजारों मर्दों और औरतों पर और बाकी सब पर भी, क्योंकि जब कोई भी अच्छा कैथोलिक मर जाता है तो वो शिफायत करने वाला बन जाता है। अब देखें, मसीह की सलीब तो यीशु मसीह की अकासी करती है। क्या आपको इब्तदाई मसीहों के मुतालिक मालूम है? इब्तदाई कलीसिया की कदीम तारीख के मुताबिक वो अपनी कमरों पर सलीब लिए फिरते थे। जहाँ कहीं वो जाते थे बहैसियत मसीही अपनी शनाख्त इस तरह करवाते थे। अब कैथोलिक लोग दावा करते हैं कि वो लोग हमारे थे, क्योंकि वो दावा करते हैं कि वो इब्तदाई कलीसिया थे, लेकिन कैथोलिक कलीसिया उस वक्त बनी भी नहीं थी, समझे? मगर मसीही अपनी कमरों पर सलीबें लादते थे। आपने सुना होगा, लोग कहते थे सलीब उठाने वाले, क्या आप उनको कैथोलिक लोगों से मंसूब करते हैं? और दुनिया की आलमगीर रूल कुदुस से मामूर कलीसिया ही हकीकी कैथोलिक कलीसिया थी, यही दुरुस्त है। हम कैथोलिक हैं, हम असल कैथोलिक हैं, यानी बाइबल पर ईमान रखने वाले कैथोलिक हैं, समझे? ये कैथोलिक कलीसिया तो तंजीमी कलीसिया है, हम इस चीज से आजाद हैं, हम रसूलों के अकीदे की लड़ी हैं, हम रूल कुदुस के बपतिस्मे और उन सब चीजों का जिस पर इब्तदाई कलीसिया खड़ी थी लड़ी है, और तंजीमी कैथोलिक कलीसिया का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? बस कुछ भाइयों ने ये सलीब यहाँ लगाई है, ये उस जैतून के दरख्त से तराशी गई है जहाँ यीशु ने दुआ की थी। ये सलीब बनने में काफी साल लगे हैं। ये मुझे भाई ऑर्गन ब्राइड ने दी थी और मैं इसे इस चर्च के साथ ही मखसूस करना चाहता हूँ। और जिसने भी ये सलीब लगाई है, मुझे मालूम नहीं किसने लगाई है, मगर बिल्कुल ठीक जगह पर लगाई है, और ये यहाँ हमारी बाईं तरफ है। यीशु ने अपनी दाईं जाने वाले डाकू को माफ कर दिया था और वो मैं हूँ। एक दूसरी बात जिसकी ये अकासी करती है कि उसका सर झुका हुआ है, जिससे आपको उसकी मुसीबतों पर नजर करनी चाहिए। कोई भी शख्स जो यहाँ आता है, देखे वो इस मजबा पर नजर रखे हुए है, और ऐ गुनाहगारों, वो उम्मीद करता है कि आप यहाँ आए और वो यहाँ नीचे आप पर निगाह करे। और इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी रोशनी लगाई गई है ताकि जब मजबा पर किसी को बुलाया जाए तो वो रोशनी उस पर चमके, क्योंकि लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं। आप कह सकते हैं आपको इसकी क्या जरूरत है, आपको कोई मुहूर्त नहीं लगानी चाहिए। तो ठीक, फिर उसी खुदा ने जिसने ये कहा था अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, बिल्कुल उसी खुदा ने फरमाया दो करूबी बनाना और उनके पर इकट्ठे झुके हुए हों और उन्हें सरपोश के ऊपर लगाना जहाँ पर लोग दुआ करते हैं। अब गौर करें, ये लोग ना समझी की वजह से कहते हैं, समझे? बस ये सलीब खुदा की तरफ से ठीक जगह पर लगाई गई है, और मैं नहायत ही शुक्र गुजार हूँ कि मैं दाएं जानिब हूँ। मैं भरोसा करता हूँ कि उसने मुझ चोर को माफ कर दिया है, क्योंकि जहाँ तक चोरी की बात है और जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं की, मगर मैंने उसके वक्त को बहुत ज्यादा जाया किया है, इसलिए मैंने बहुत वक्त की चोरी की है। मैंने बेशुमार ऐसे काम किए हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज सुबह उसने मेरी खताओं को बख्श दिया है। और अब मैं बाइबल में से तवारीख की पहली किताब के 17वें बाब को पढ़ना चाहता हूँ और सिर्फ 5 मिनट के लिए मखसूसियत की इबादत के मुतालिक बोलना चाहता हूँ और फिर दुआ करेंगे और फिर हम पैगाम की तरफ मतवज्जो होंगे। अब पहला तवारीख और उसका 17वां बाब निकालें।
Now it came to pass, as David said in the house, that David said to Nathan the prophet,
और जब दाऊद अपने महल में रहने लगा तो उसने नातन नबी से कहा, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, पर खुदावंत के अहद का संदूक खैमा में है। नातन ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और उसी रात ऐसा हुआ कि खुदावंत का कलाम नातन पर नाजिल हुआ कि जाकर मेरे बंदा दाऊद से कह, बल्कि खुदावंत यूं फरमाता है कि तू मेरे रहने के लिए घर ना बनाना, क्योंकि जब से मैं बनी इसराइल को निकाल कर लाया हूँ आज के दिन तक मैंने किसी घर में सुकूनत नहीं की, बल्कि खैमा बा खैमा और मस्कन बा मस्कन फिरता रहा हूँ उन जगहों में जहाँ जहाँ मैं सारे इसराइल के साथ फिरता रहा। क्या मैंने इसराइल के काजियों में से, जिनको मैंने हुक्म किया था कि मेरे लोगों की गल्ला बानी करें, किसी से एक हरफ भी कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? बस तू मेरे बंदा दाऊद से यूं कहना कि रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़ साले में से, जब तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलता था, लिया ताकि तू मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो। और जहाँ कहीं तू गया मैं तेरे साथ रहा और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है, और मैं रूहे जमीन के बड़े बड़े आदमियों के नाम की मानिद तेरा नाम करूंगा। मैं इस जगह पर ये कहना चाहूंगा कि दाऊद ने वही कुछ देखा जो हमने देखा, और दाऊद ने कहा, ये दुरुस्त बात नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदार का घर बना दिया है और मेरे खुदा के अहद का संदूक अभी तक खैमों में रहता है। वो जानवरों और भेड़ों की खाल होती थी जिसे जोड़कर सी दिया जाता था। उसने कहा, मेरे लिए ये दुरुस्त नहीं है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो और मेरे खुदा के अहद का संदूक खैमे में रखा जाए। बस खुदा ने उसके दिल में बोझ डाला कि वो हैकल बनाए। हालांकि दाऊद वाकई खुदा से मोहब्बत करने वाला और उसकी तकदीस करने वाला एक शख्स था, मगर उसने बेबहा खून बहाया था। बस उसने कहा, दाऊद ये बात उस वक्त के नबी नातन की मौजूदगी में कह रहा था, और नातन जानता था कि खुदा दाऊद से मोहब्बत करता है। बस उसने कहा, दाऊद जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। कैसा आला बयान है, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। और उसी रात दाऊद की अकीदत के सबब से खुदा की मोहब्बत जलवागर हुई। और फिर गौर करें, उसी रात उसे मालूम पड़ा कि वो गलती पर था, और तब उसे वो काम करने से मना कर दिया गया। खुदा इतना ज्यादा पुरफजल हुआ कि वो नीचे उतर आया कि नातन से बात करे। और मुझे हमेशा ये अल्फाज अच्छे लगते हैं, जा मेरे बंदा नातन से, बल्कि जा मेरे बंदा दाऊद से कहे कि मैंने तुझे भेड़ साले में से लिया, जब वो कुछ भी नहीं था। और मैं एक मिनट के लिए इसे यहाँ मंसूब करना चाहूंगा, मैंने तुझे खाक से लिया और मैं तुझे एक नाम देता हूँ, और तेरा नाम रोहे जमीन के बड़े बड़े आदमियों के नाम की मानिद होगा, और मैं इसे राज में रखते हुए मंसूब करना चाहूंगा ताकि एक तरह से एक निशान बना पाऊं। मैं इसके मुतालिक सोच रहा था कुछ अरसा पहले मैं इसी शहर में रहा करता था और किसी को मेरी परवाह नहीं थी। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। मैं लोगों से मोहब्बत करता था मगर मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता था, और ऐसा मेरे खानदान के पस्से मंजर के सबब से था। और इस बात को कहने में मेरे बेशकीमत माँ बाप की बदनामी नहीं है। काश के माँ आज जिंदा होती और आज सुबह इस इबादतगाह में चलकर आती। बहुत सारे पुराने वक्तों के लोग जिन्होंने यहाँ इसकी तामीर के लिए अपना पैसा लगाया था, शायद खुदा आज सुबह उनको उस जीने के कटहरे से इसे देखने दे। शराब पीने के सबब से ब्रैनम खानदान का नाम ज्यादा अच्छा नहीं था। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं था। और मुझे याद है, ज्यादा देर नहीं हुई, मैं अपनी बीवी को बता रहा था, मुझे याद है कि मैं किसी से बात नहीं कर पाता था और कोई मेरी परवाह नहीं करता था। और अब ये हाल है कि मुझे थोड़ा सा आराम करने के लिए अपने आप को छुपाना पड़ता है। और अब खुदा ने हमें ये खूबसूरत इमारत बख्शी है और कई अजीम काम किए हैं जो उसने हमारी जिंदगी में किए हैं। और उसने मुझे एक बुरे नाम की बजाय एक ऐसा नाम बख्शा है। उसने बड़े बड़े लोगों की मानिंद एक नाम दे दिया है। और जहाँ कहीं मैं गया मेरे दुश्मनों को काट डाला है, और जहाँ कहीं ये कलाम गया कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो पाया। बस मैं इस बात के लिए खुदा का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और मुझे क्या पता था, जब मैं यहाँ से दो तीन ब्लॉक दूर एंग्रिमविल स्कूल में एक खस्ता हाल बच्चे की सूरत में जाया करता था, और फिर स्कूल में मेरा मजाक इंतहाई खस्ता हालत के सबब से उड़ाया जाता था, और मैं उस पुराने तालाब से फिरा करता था। मुझे उस वक्त क्या मालूम था कि इस पुराने तालाब के नीचे एक कमल का बीज पड़ा हुआ है जो एक दिन इस तरह खिल उठेगा। और मैं कैसे जान सकता था, जबकि कोई मुझसे बात नहीं करता था, और फिर वो मुझे एक ऐसा नाम दे देगा जो उसके लोगों के दरमियान इज्जत पाएगा। और अब देखें कि दाऊद को उसकी इजाजत ना मिल पाई कि वो हैकल को तमीर करे, और वो हैकल तमीर ना कर पाया। लेकिन खुदा ने फरमाया कि मैं तेरी नस्ल में से एक को उठा खड़ा करूंगा, और वो हैकल तमीर करेगा, और वो हैकल अबद तक कायम रहेगी, और तेरी नस्ल से, दाऊद की नस्ल से एक अब्दी बादशाहत होगी और वो संभालेगा। सुलेमान दाऊद का तबई बेटा था जो उसकी तबई ताकत से पैदा हुआ था, और उसी ने खुदावंद के लिए हैकल बनाई। लेकिन जब दाऊद की असल नस्ल यानी इब्ने दाऊद आया, तो उसने उन्हें बताया कि वो वक्त आएगा जब हैकल का पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि उनकी तवज्जो दूसरी हैकल की तरफ कराए। यूहन्ना मुकाश्वा की किताब में, जिस पर मुकाश्वा खोला गया, उसने इस हैकल को देखा था। मुकाश्वा 21 में उसने देखा, नई हैकल आ रही है, आसमान से उतर रही है, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता थी जिसने अपने शौहर के लिए संगार किया हो। फिर मैंने हैकल में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और खुदा उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, क्योंकि पहली चीजें जाती रहीं। तब दाऊद का हकीकी बेटा, और हम इस हफ्ते में इस सबक में उसके मुतालिक सीखने वाले हैं, वो अपनी हैकल में आएगा, खुदा की हैकल में, जो हकीकी हैकल है जिसको वो तामीर करने गया है। क्योंकि उसने यूहन्ना 14 में फरमाया, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं जाता हूँ। इससे उसका क्या मतलब है? ये पहले से मुकरर शुदा है और मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और मैं फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। और बेशक हम जानते हैं कि वो अजीम जमाना होगा जो आने वाला है। वो दाऊद की असल और नस्ल है जो यीशु मसीह है, और वो तख्त को लेगा और कलीसिया पर हुकूमत करेगा, और उसकी दुल्हन घर में उसके साथ होगी और इसराइल के 12 कबीलों पर अब तक राज करेगा। और जैसा कि दाऊद उन छोटी जगहों पर खुदा की हैकल तमीर नहीं कर पाया था, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो फानी था और उसने खून बहाया था। बस ऐसा ही आज हमारे साथ है। हम खुदा की हकीकी हैकल तमीर करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही है जो उसको तामीर कर सकता है, और वो अब वो उसको तामीर करने के मरले में है। मगर ये छोटी सी हैकल और वो हैकल जो सुलेमान ने उसके लिए बनाई थी, और बाकी सारी सिर्फ आर्जी इबादत की जगह हैं, जब तक कि वो वक्त नहीं आ जाता जब हकीकी हैकल जमीन पर तामीर की जाए और रास्तबाजी ही आसमान से आसमान तक बादशाही करेगी, और फिर मजीद आहो नाला ना होगा। उस हैकल में कोई जनाजा नहीं पड़ा जाएगा, वहाँ पर मजीद शादियाँ ना होंगी, क्योंकि वही एक शादी अजीम शादी अब्दियत के लिए होगी। वो कैसा अजीम वक्त होगा। मगर आए आज अपने दिलों में उस हैकल के कायम होने और उसके आने के इंतजार में इरादा कर लें। हम अपने आप को उसके रूह के वसीले ऐसे करदार में डाल लें कि हम उस जगह उसकी इबादत करेंगे जैसे कि हम इस जगह पर इबादत कर रहे हैं, इसलिए उस जगह के आने के मुंतजिर रहें। आए अब हम अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। मैं कलाम मुकद्दस को पढ़ता हूँ, और फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुन्दर भी ना रहा। फिर मैं यूहन्ना ने शहर मुकद्दस नए यरूशलम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंदा रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। आए अब हम अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे आसमानी बाप, हम एहतराम में खड़े होते हैं, हम एहतराम और मुकद्दस तकदीस में खड़े होते हैं, और खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमारे इस नजराने को कबूल कर जो तूने हम पर फजल किया है, और दौलत बख्शी कि तेरी इबादत के लिए जगह तैयार कर पाए। जमीन पर ऐसी कोई जगह नहीं है जो हम तेरे लिए तैयार कर सके, कुछ भी नहीं है या कुछ भी इस काबिल नहीं है कि खुदा का रूह उसमें ठहर पाए। मगर खुदावंद, हम ये तेरे हजूर बयाने के तौर पर पेश करते हैं जो हमारी मोहब्बत और जज्बात का बयाना है, और हम उस सब के लिए जो तूने हमारे लिए किया है तेरे शुक्रगुजार हैं। और अब ये इमारत और जमीन काफी अरसा पहले ही तेरी खिदमत के लिए मखसूस किए जा चुके हैं, और हम तेरे शुक्रगुजार हैं उस यादाश्त के लिए। और अब ऐ खुदावंद खुदा, जैसे के सालों पहले रोया जाहिर हुई थी और उसमें बताया गया था, और मैंने देखा था कि एक पुरानी इमारत है और उसके अंदर लोग थे, और उन्होंने दोबारा उसकी मरम्मत की और उसे नया बना दिया और मुझे पीछे दरिया के पार भेज दिया गया था।
Now, Lord God, creator of heavens and earth, we stand as the people of thy fold. We stand as the people of thy kingdom.
अब ऐ खुदावंद खुदा, जमीनों आसमान के खालिक, हम तेरे गल्ले के लोग होते हुए खड़े हैं, जैसे कि हम तेरी बादशाही के लोग होते हुए खड़े हैं, और मैं अपने आप को और पास्टर को और कलीसिया को और लोगों को और फिर हम इस अमारत को भी कादरे मुतलिक खुदा की खिदमत के वास्ते यीशु मसीह के यानी उसके बेटे के नाम से खुदा की खिदमत के लिए और उसके एहतराम और खुदा की तकदीस के लिए मखसूस करते हैं। और होने दे कि अंजील इस जगह से रवा रहे जब तक कि ये दुनिया के लिए कशिश ना बन जाए, ताकि लोग दुनिया के चारों कोनों से खुदा का जलाल देखने के लिए आएं, जो यहाँ पर जाहिर हुआ है, जैसा कि तूने माजी में किया। होने दे कि मुस्तकबिल में इससे कई गुना ज्यादा हो।
Father, we now dedicate ourselves to the service, to the word.
ऐ बाप, अब हम अपने आप को और जो कुछ हम में है कलाम के वसीले तेरी खिदमत के लिए मखसूस करते हैं। खुदावंद, ये जमायत और ये लोग आज सुबह अपने आप को कलाम सुनने के लिए मखसूस करते हैं, और हम बाहैसियत खादम अपने आप को कलाम की मुनादी के लिए मखसूस करते हैं, ताकि वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहें और हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझाएं, मलामत और नसीहत करें। जैसा कि 30 साल पहले कोने के सिरे का पत्थर रखते वक्त लिखा गया था और तूने फरमाया है, ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जो होंगे। खुदावन, जैसे कि हमने कोशिश की कि लोगों को कलाम से सिखाते रहें, होने दे कि हम नसीहत पजीर हों और कुवत पाए, ताकि इस कोशिश को दुगना करें। ऐ खुदावन, इस जगह पर रूह का दुगना मसा हो। होने दे कि रूह कुदस नाजिल हो। जैसा हैकल की मखसूसियत के दिन सुलेमान ने दुआ की थी और रूह कुदस बादल और आग के सतून की सूरत में सामने दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, करूबियों के चौगिर्द से गुजरा और उस मुकद्दस जगह पर चला गया और वहाँ पर ठहर गया। ऐ खुदा, सुलेमान ने दुआ की थी कि अगर तेरे लोग कहीं पर भी मुसीबत में हों और उस मुकद्दस हैकल की तरफ नजर करके दुआ करें, तो तू आसमान से सुन लेना। ऐ खुदावंद, रूह कुदस आज सुबह हर दिल पर, हर मुकद्दस रूह पर जो यहाँ पर मौजूद है नाजिल हो। और बाइबल फरमाती है कि खुदा का जलाल इतना ज्यादा था कि खुदाम वहाँ पर खिदमत ना कर पाए, ऐसा खुदा के जलाल के बायस हुआ था। ऐ खुदावंद खुदा, उसको एक बार फिर दोहरा, जबकि हम अपने आप को इस चर्च की मखसूसियत के साथ तेरे सपुर्द करते हैं, और ऐसा लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम अपने आप को अपने नजराने चर्च के साथ आज सुबह तेरी खिदमत के लिए, आखिरी दिनों में रोशनी बनने के लिए, शाम के वक्त की रोशनी बनने के लिए तेरे सुपुर्द करते हैं, ताकि मुंतजर लोगों के ईमान को बढ़ाएं और तसल्ली का सबब ठहरें जो दुल्हे की आमद का इंतजार कर रहे हैं, ताकि दुल्हन को मसीह की खुशखबरी का जामा पहनाए और खुदावन यीशु मसीह उसको कबूल करे।
This we dedicate myself, Brother Neville, and the congregation to the service of God in the name of Jesus Christ. Amen.
Amen.
Amen. You may be seated.
हम ये सब कुछ और अपने आप को भाई नेवल को और कलीसिया को खुदा की खिदमत के लिए मखसूस करते हैं और यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आप तशरीफ रखें।
David said, I was happy when they said unto me,
दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर चलें, और काश कि हमारे साथ भी हमेशा ऐसा ही हो, ताकि जब कहा जाए तो हम खुश हो जाएं और खुदा के घर में जमा हों। आमीन। अब इस मखसूसियत की मुख्तसर इबादत के बाद मेरे पास एक घंटा बचा है, और अब जरा याद रहे कि हम किस लिए मखसूस किए गए हैं। खुदावंद के हजूर इज्जत, एहतराम और तकदीस के साथ पुरसकून रहें, खुदावंद के हजूर इबादत करें, और खुदा के घर में जितना ज्यादा मौजम रह सकते हैं रहें। और अब जब इबादत खत्म हो जाती है तो फौरन, जैसे ही इबादत खत्म हो जाती है तो हैकल में से बाहर निकल जाए, समझे, और इससे सफाई करने वालों को वक्त मिल जाता है ताकि वो इसे अगली इबादत के लिए साफ कर लें और तैयार कर लें, और फिर खुदावंद के घर में कोई परेशानी नहीं रहेगी। और मैं आपके मुतालिक सोचता हूँ, इबादत खत्म हो जाने के बाद तकरीबन 15 मिनट में ये जगह बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए, और दोस्ताना माहौल को यकीनी बनाएं, हर एक के साथ हाथ मिलाएं और हर एक को वापस आने की दावत दें। और हम तवक्को कर रहे हैं कि इस आने वाले हफ्ते में इस टैबरनेकल में होने वाली इबादत उन इबादत से भी जो अब तक हुई है नहायत ही अहम होंगी, और हम उसके मुंतजिर हैं। अब मैं मुझ पर कुछ नमूदार हुआ था हत्ता के बहुत देर तक, लेकिन कल शब आखिरी पहरों में यानी सुबह सवेरे दुआ में मुझे कुछ महसूस होने लगा। बस मैं ईमान रखता हूँ कि ये अजीम वक्त होगा, अगर खुदावंद हमारी मदद करेगा तो मुझे यकीन है कि ऐसा जरूर होगा। अब देखें, अब जब मैंने अजीम वक्त कहा है तो आज सुबह मैं इसके मुतालिक कुछ बयान करने वाला हूँ। अब जानते हैं, जिसे इंसान अजीम कहता है बाज़ औक़ात वो अजीम नहीं होता, मगर जिसे खुदा अजीम कहता है इंसान उसे हमाकत समझता है, और जिसे खुदा हमाकत कहता है इंसान उसको अजीम कहता है। लिहाजा हम इस बात को ज़हन में रखें और हर लफ्ज को परखें। अब देखें, इबादत काफी तवील होती है, इसलिए वो तवील होंगी क्योंकि ऐसी इबादत काफी दुश्वार होती है जिसमें बहुत ज्यादा तालीमी और तकदीस के मुतालिक बातें होती हैं। और मैं तो जिस जगह मैं ठहरा हुआ हूँ वो लोग मुझे सब कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, मगर मुझे कहा गया है भाई ब्रहनम आपका वजन कम हो गया है, अच्छा है कि सब कुछ लें, मगर मैं मुसलसल खिदमत में हूँ, मुझे अगले इतवार की शब को यहाँ से एक दूसरी इबादत के लिए निकलना है जो इसके फौरन बाद मेक्सिको में है, लिहाजा ये एक सख्त काम है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा खाने से परहेज करूँ और अपने आप को तैयार रखूँ। और आज सुबह मैं भाई जूनियर जैक्सन और भाई रडल और मुख्तलिफ खुदाम को यहाँ देख कर नहायत ही खुश हूँ, खुदा आप सबको बरकत दे। अब मैं आज सुबह आपसे जिस मजमून पर बात करना चाहता हूँ, मेरे पास उसके मुतालिक यहाँ कुछ हवाले लिखे हुए हैं, और मैं पहले यसाया की किताब में से 53 बाब को पढ़ना चाहता हूँ। अब जबकि आप इसको ढूंढ रहे हैं तो इस दौरान मैं एक या दो ऐलान करना पसंद करूँगा। जैसा कि आज शब मैं इस किताब पर बोलना चाहता हूँ, ये आखिरी कलीसिया जमाने से मोरों के खुलने के लिए पुल की हैसियत रखती है। अब देखें, उनके दरमियान खासा फासला है, और इससे पहले जब मैंने कलीसिया जमाने खत्म किए थे तो फौरन उसके बाद मैंने दानियल के 70 हफ्तों के मुतालिक बयान किया था, क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं। और मैंने कहा था, अब अगर मैंने कभी मोहरों को लिया तो मुझे दानियल के 70 हफ्तों को पहले बयान करना पड़ेगा ताकि मोहरों को तरतीब से बयान कर पाऊँ, और फिर एक चीज को छोड़ दिया था, और वो 7 मोहरों की किताब का 5वां बाब था, और आज शब हम इसको देखेंगे। आज रात हम जरा जल्दी इबादत शुरू करना चाहते हैं। मेरे मुतालिक क्या ख्याल है, आपने पहले ही इसके बारे में बता दिया है कि जल्दी शुरू करनी है, क्या आपने बताया है, क्या ख्याल है, क्या सब लोग यहाँ 7 बजे मौजूद हो सकते हैं? ठीक है, हम अपनी इबादत बाकायदा गीतों के साथ 6:30 बजे शुरू करेंगे, और मैं यहाँ 7 बजे पहुँच जाऊँगा, और फिर इस तरह सारा हफ्ता हम इबादत जल्दी शुरू करेंगे। और अब देखें, हम इस तरह आते हैं, जितनी मोहब्बत परस्तीश से मसीह करते हैं कोई और नहीं कर सकता, हम परस्तीश से मोहब्बत करते हैं, हम इन चीजों से मोहब्बत करते हैं, मगर अब हम एक दूसरी चीज में मशगूल हैं, हम कलाम में मशगूल हैं। गौर करें, बस आए आए हम इसके साथ ठहरे रहें, हम इसके साथ मशगूल रहें, हम तालीम में मशगूल रहें, और आप महसूस कर सकते हैं कि ये मुझ पर कितना बड़ा दबाव है। देखें, क्योंकि अगर मैं कुछ गलत सिखाता हूँ तो मुझे इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, समझे, और मुझे इस बात को नहीं लेना कि कोई और क्या कहता है, मुझे जरूरी है, बल्कि इस बात को जरूर ही खुदा की तरफ से होना चाहिए, और मैं ईमान रखता हूँ कि वो 7 फरिश्ते जो सात गर्जों को थामे हुए हैं, वो ही इसे अता करेंगे, समझे। और अब यशाया का 53 बाब पहली या दूसरी आयत में देखें। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अब इसका किसी भी तरह सात मोरों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक पैगाम है, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे मखसूसियत करनी है और मैं इसमें नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं बचेगा। लेकिन मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक मखसूसियत की इबादत है, ये इस चर्च की मुख्तसर सी यादगारी की इबादत है, बल्कि मुख्तसर मखसूसियत की इबादत है, और इसलिए फिर वक्त नहीं बचेगा। इस किताब को खोलने के हवाले से जो मैं कहना चाहता हूँ और जो मैं कहना चाहता हूँ देखे, लिहाजा आज सब मैं वो कहूँगा। और अब ये एक मुख्तसर सी इबादत है, अगरचे ये बिल्कुल उसी के साथ मिल जाएगी। बस अब इस कलाम पर तवज्जो दें और इसे थाम लें। और अगर आप इस बात को टेप में या किसी और चीज में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आप इस टेप की तालीम पर कायम रहें और कुछ मत कहें, मगर वही जो टेप में कहा गया है, सिर्फ वही कहें जो टेप में बयान किया गया है। देखें अब, क्योंकि इन बातों में कुछ है, अब हम सब इन बातों को सीखने वाले हैं, तो फिर क्यों गलत समझा जाए, समझे। और आप पूर्ण यकीन हो जाएं और सिर्फ वही कहें जो टेप में कहा गया है, इसके अलावा कुछ ना कहें, समझे। इसलिए मैं नहीं कहता कि ये मेरी अपनी तरफ से है, ये उसकी तरफ से है जिसने ये कहा है, आप समझे। क्योंकि बहुत मर्तबा उलझन पैदा हो जाती है और फिर लोग उठते हैं और कहते हैं, अच्छा फलां फलां बात यूं कही गई है और उसका मतलब फलां फलां है, मगर इसे बस इसे वैसे ही रहने दें जैसे ये है। तवज्जो दें, हम बाइबल को उसी तरीके से चाहते हैं जैसे बाइबल बताती है कि ये ऐसा है, हम वैसे ही उसे चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं, इसलिए इसमें अपनी तशरीह मत डालें। आप देखें इसकी पहले ही तशरीह हो चुकी है। अब देखें हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। मुझे ध्यान से अब इसे दोबारा पढ़ने दें। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, सवाल है, और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। दूसरे लफ्जों में, अगर आप हमारे पैगाम पर ईमान लाए हैं तो फिर खुदावंद का बाजू जाहिर हो चुका है, समझे। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। अब मैं मुकद्दस मत्ती की अंजील से मुकद्दस मत्ती के 11वें बाब को पढ़ना चाहता हूँ। और अब देखें कि आप अपने कागज और दूसरी चीजें साथ लाए हैं, क्योंकि हम मुसलसल जारी रखेंगे। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग करने वाली चीज नहीं है, तो आप जरूर अपने हमरा कागज लाएं ताकि इसे लिख पाएं। मुकद्दस मत्ती का 11वां बाब 25वीं और 26वीं आयत 11, 26 और 27। ठीक है, जहां यीशु दुआ में बोल रहा है, मैं इसे थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहता हूं। आए इसे 25 और 26 से पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि इसका मैंने ऐलान किया था, क्योंकि इस पर मैंने अपनी बाइबल में निशान लगाया हुआ था। उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अकलमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। इन दो हवालों पर ध्यान दें। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। उस वक्त यीशु ने कहा, ए खुदा, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये वेद दनाओं और अकलमंदों से छुपाए और बच्चों पर जाहिर किए। हाँ ए खुदा, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। अब इस हवाले या इस सबक में से, अब इस पढ़े गए हवाले में से मैंने ये मजमून चुना है, खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है और फिर खुद को उसी में आशकारा करता है। अब मैं टेप के लिए इसे दोबारा दोहरा रहा हूँ। आप देखें सिर्फ टेप के लिए, क्योंकि वो लोग इसे टेप में महफूज कर रहे हैं, समझे। खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है और फिर खुद को उसी में आशकारा करता है।
How that God does such a thing as that.
सोचे तो ये अजीब लगता है कि खुदा किस तरह काम करता है। खुदा अपने आप को इतनी सादगी में छुपा लेता है और फिर दोबारा उस सादगी में अपने आप को लाकर इस तरह काम करता है और अपने आप को जाहिर कर देता है कि अकलमंद उसको तलाश करने में लाखों मील दूर रह जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मजमून है जिस पर हम तवज्जो करें इससे पहले कि हम सात मोरों की अजीम तालीम में जाएं, क्योंकि बहुत सारे इस बात को खो देते हैं जिस तरीके से वो खुद को आश्कारा करता है। अब इंसानों के अपने नजरियात होते हैं कि खुदा को कैसा होना चाहिए और खुदा क्या करने वाला है, और जैसे कि मैं पहले ही कई मर्तबा वो पुराना बयान बता चुका हूँ कि इंसान तो इंसान है। इंसान हमेशा खुदा की तारीफ करता है जो उसने माजी में किया होता है, और हमेशा आगे देखता है जो खुदा करेगा, मगर जो खुदा कर रहा होता है उसे नजरअंदाज कर देता है। समझे समझे, इस तरीके से वो उसको खो देते हैं। वो माजी में देखते हैं कि खुदा ने कितने अजीम काम किए थे, मगर भूल जाते हैं कि किस सादा सी चीज को उसने उस काम के लिए इस्तेमाल किया था। समझे, और फिर वो आगे निगाह डालते हैं और देखते हैं कि एक अजीम चीज आ रही है जो कि होने वाली है, और 10 में 9 मरतबा वही चीज ठीक उनके चौगिर्द हो रही होती है, और वो इतनी सादा होती है कि लोग उसे जान भी नहीं पाते। समझे, एक दिन एक शख्स यूटिका में और उसके जानने वाले कुछ लोग यहाँ मौजूद थे। मैं यहाँ उस शख्स की इंतहा पसंदी को आश्कारा करने के लिए नहीं कह रहा। वो खाना जंगी का एक तजर्बाकार शख्स था, और मेरा ख्याल है कि वो ऐसा ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरफ था, मगर मेरा ख्याल है वो एक बागी था। लेकिन वो गैर ईमानदार था। वो दावा करता था कि खुदा जैसी कोई चीज नहीं है। वो यूटिका में रहता था और उसका नाम जिम डोरसे था। शायद आप में से कई लोग उससे वाकिफ हों। जब मैं छोटा बच्चा था तो वो मुझे बहुत तरबूज दिया करता था। वो वहाँ नीचे दरिया के पास तरबूज उगाया करता था, और वो मेरे बाप का दोस्त था। लेकिन उसने कहा कि एक दिन एक अजीम नुमाया चीज उसको बताई गई जो कभी बताई गई हो, जो कि उसके ईमान के खिलाफ थी। अब मैं उन दिनों में एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसके इत्काद में फर्क आ गया था, जिसके सबब से वो वहाँ से बाहर निकल गया और उसने अपने सर को झुका लिया और रो पड़ा। और मैं इस बात से समझ गया कि उस शख्स ने तकरीबन 85 साल की उम्र में जलाली तौर पर मसीह को कबूल कर लिया है। एक दिन उसने एक बच्ची से जो संडे स्कूल से आ रही थी पूछा, क्यों वो अपना वक्त ऐसी बात पर जाया कर रही है। बच्ची ने कहा, क्योंकि वो ईमान रखती है कि खुदा है। मिस्टर डोरसे ने उसे बताया, उसने कहा, बेटी ऐसी किसी भी बात पर ईमान रखकर तुम बहुत ज्यादा गलती कर रही हो। और उसने कहा कि वो लड़की नीचे झुकी और जमीन पर से एक छोटे से फूल को तोड़ा और उसकी पंखड़ियों को निकाला और कहा, मिस्टर डोरसे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे जिंदा रहता है। ये बात बड़े काम की थी। जब उसने तलाश शुरू की तो वो बच्ची को कहने लगा, खैर ये जमीन से नशोनमा पाता है, और फिर सवालात पर सवालात जन्म लेते रहे कि जमीन कहाँ से आई है, इसमें बीज कैसे पड़ा, ये कैसे मुमकिन हुआ। लड़की उससे सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल करती रही जब तक उसे खुदा नजर ना आ गया। समझे, खुदा बहुत बड़ी चीजों में नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, बल्कि खुदा का इन सादा चीजों में असल रूप मौजूद है। बस खुदा को पसंद आया कि अपने आप को सादगी में छुपा ले और फिर खुद को सादगी में आश्कारा करे। समझे, अपने आप को सादगी में छुपा ले और फिर खुद को छोटी छोटी सादा चीजों में आश्कारा करे, और ये बात इंसान के सर के ऊपर से गुजर जाती है। जबकि आप कहेंगे, रास्तबाज खुदा ऐसा कैसे करेगा। बस इंसान इब्तदा से ऐसा बनाया गया था ताकि वो अपने आप को बदलने की कोशिश ना करे। इंसान ऐसा बनाया गया था कि वो मुकम्मल तौर पर खुदा पर इंसार करे। यही सबब है कि हमें बर्रों और भेड़ों से तशबीह दी गई है। एक भेड़ अपनी रहनुमाई नहीं कर सकती, उसके पास लाजमी रहनुमा होना चाहिए, और रूह कुदूस हमारी रहनुमाई करता है। बस इंसान इसी तरीके से बनाया गया था, और खुदा ने अपने तमाम कामों को नहायत ही सादगी से किया है ताकि सादा दिल इसको समझ सके। और खुदा अपने आप को सादा दिलों के लिए इतना सादा बना देता है कि सादा दिल उसको समझ जाते हैं। दूसरी तरफ उसने फरमाया है मेरा ख्याल है ये यसाया 35 में है। उसने फरमाया बेवकूफ भी उसमें गुमराह ना होंगे। ये नहायत ही सादा है। और हम जानते हैं कि खुदा नहायत ही अजीम है, इसी वजह से हम उससे तोको करते हैं कि वो कुछ अजीम चीजों में होगा और हम सादा चीजों को खो देते हैं। हम सादगी के सबब से ठोकर खाते हैं, इसी वजह से हम खुदा को खो देते हैं, क्योंकि हम सादगी की वजह से ठोकर खाते हैं। खुदा इतना ज्यादा सादा है कि आज कल के और तमाम जमानों के आलिम उसको लाखों मील दूर से खो देते हैं, क्योंकि उनकी फरिश्त में वो जानते हैं कि खुदा जैसा अजीम कोई नहीं है। लेकिन खुदा अपने मुकाशफा में इतना ज्यादा सादा है कि वो उसके करीब भी नहीं जा पाते और उसको खो देते हैं। अब इसका मुतालिया करें, इस सब का मुतालिया करें। और आप लोग जो बाहर से आए हैं, जब आप अपनी क़यामगाह के कमरों में जाएं, तो इन बातों को लें और इन पर गौर व फिक्र करें। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इसको इतनी तफसील में बयान करें जितनी तफसील में बयान करना चाहिए, मगर मैं चाहता हूं कि जब आप अपने मोटल या होटल या घर या जहां कहीं भी आप रह रहे हैं जाएं, तो जरूर गौर व फिक्र करें, इन बातों को इकट्ठा कर लें और जरूर इन पर गौर व फिक्र करें। जिस तरह से वो अपने आप को आश्कारा करता है, लोग उसे खो देते हैं, क्योंकि वो नहायत ही अजीम है। फिर भी वो खुद को सादगी में छुपा लेता है ताकि अपने आप को सादा लोगों पर आश्कारा करे। देखें, बड़ा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि वो उनके सरों से गुजर जाता है। लेकिन खुदा सादगी पर कान लगाता है और फिर आप उसे ठीक सादगी में पालेंगे। बड़े उल्मा और दुनियावी हिकमत और तालीम हमेशा उसे खो देती है। अब मैं यहाँ पर मुखालफत नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ स्कूल के उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं, दो तीन ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक मैं जानता हूँ, और मैं यहाँ पर स्कूल और तालीम की मुखालफत नहीं कर रहा और ना ही जहालत की हमायत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस काम के लिए यहाँ नहीं हूँ, मगर ये क्या है, लोग दरअसल इस पर इतना ज्यादा तकिया किए हुए हैं, यहाँ तक कि वो सेमिनरियों और मजीद ऐसी जगहों पर जाते हैं और वो उस हकीकी चीज को जो खुदा ने उनके सामने रखी है खो देते हैं। यही सबब है कि मैं तंजीमों में मौजूद भाइयों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं तंजीमों के इंतजाम के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये निजाम खुद को जलाल देने की कोशिश करता है और ये अपने खादमों को फला फला मकाम पर तालीम देते हैं, हत्ता के अगर उनके पास मखसूस तालीमी डिग्री ना हो तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है और उन्हें नफसियात के इम्तहानों और इस तरह की और बातों को पास करना पड़ता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ये खुदा की मर्जी है कि एक खादम माहिर नफसियात के इम्तहान से गुजरे, बल्कि उसको खुदा के कलाम से जांचा जाना चाहिए, समझे। और ये यही खुदा का अपने खादम को परखने का तरीका होगा, फिर वो उसे कलाम के साथ बाहर भेजेगा। लिखा है कलाम की मुनादी कर। अब आजकल हम फलसफा और हिकमत की मुनादी करते हैं, हम तंजीमों और रवायतों और मजीद ऐसी ही चीजों की मुनादी करते हैं और कलाम को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कलाम को समझा नहीं जा सकता। लेकिन कलाम को समझा जा सकता है, क्योंकि उसने इसे समझाने का वादा किया है। अब हम उससे दरख्वास्त करते हैं कि वो इसे समझाए। अब यहाँ हम कुछ मिनटों के लिए कुछ किरदारों को लेंगे। आए नूह के दिनों पर गौर करते हैं। नूह के दिनों में खुदा ने दुनियावी हिकमत को देखा कि वो नहायत ही हावी और काबिले तराम हो गई है, तो उसने अपना सादा सा पैगाम एक सादा शख्स के वसीले भेजा ताकि उन्हें अपनी अजमत दिखाए। अब हम जानते हैं कि नूह के जमाने में वो दावा करते हैं कि तहजीब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हत्ता कि हमारे इस दौर में ये जदीद तहजीब उस मकाम तक नहीं पहुंची। और मेरा ईमान है कि आखिरकार ये उस मकाम तक पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे खुदावन ने ऐसा कहा है, जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। उसने कुछ मिसालें दी, और उन्होंने मिस्र में हरामे मिस्र और अजूबे तामीर किए थे, और उन्होंने इतनी आला चीजें तामीर की जिनको हम आज तामीर करने की सलाहियत नहीं रखते। उनके पास मुर्दा जिस्म में लगाने के लिए मसाले और खुशबुएं थी, वो मुर्दा जिस्म में मसाले और खुशबू भर देते थे और वो बिल्कुल असल लगते थे, हत्ता के आज के दिन तक वैसे ही हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आज मम्मी नहीं बना सकते, हमारे पास वो चीजें नहीं हैं जिसके साथ वो बनाते थे। उनके पास ऐसे रंग थे जो जल्दी फीके नहीं पड़ते थे, और 4 या 5 हज़ार साल गुजरने के बावजूद भी वो आज भी वैसे ही रंग है जैसे वो पहले थे, समझे। मगर हमारे पास आज वैसा कुछ भी नहीं है, और उस तहजीब की बहुत सारी अजीम चीजें हमारी आज की जदीद तहजीब पर बरतरी साबित करती हैं। और बस आप उन अजीम निशानात से तसव्वुर कर सकते हैं जो आज हम छोड़ चुके हैं कि उस तहजीब में तालीम और साइंस किस कदर बुलंदी पर थे, और यकीनी तौर पर अजीम तहजीब थी। खैर, ये निशानियां बताती हैं कि उस वक्त के लोग लाजमन साइंस और जदीद तहजीब और तालीम की किस कदर बुलंदी पर थे। वो यकीनन बहुत ही बुलंदी पर थे, और ये होना ही था। मेरा ख्याल है कि शायद मुश्किल से उनमें कोई अनपढ़ शख्स हो। और बस खुदा ने उस जमाने के वसी माशरे और उनके निजाम में से किसी शख्स को तलाश करना शुरू किया, और शायद उनके निजाम में से कोई दुरुस्त किस्म का शख्स ना मिला, और आखिरकार उसे एक नाख्वांदा शख्स मिला जिसका नाम नूह था। वो शायद किसान या एक चरवाहा था, और खुदा ने उसे अपना पैगाम दिया ताकि लोगों के सामने उसकी मुनादी करे, और वो उन दिनों के आलमों के मुकाबला में नहायत ही सादा था, यहाँ तक कि लोगों ने उस पैगाम की सादगी के सबब से ठोकर खाई। और उस वक्त साइंस के सामने वो पैगाम पागलपन था। कैसे आसमान से बारिश हो सकती है जबकि वहाँ पर बारिश मौजूद ही नहीं थी, समझे। और बहुत ही सादा पैगाम कि कश्ती बना, जबकि वहाँ तैरने के लिए पानी मौजूद नहीं था, तो फिर उसे तामीर करने और उसमें दाखिल होने का क्या फायदा। क्यों? क्योंकि वो जनूनी बन गया था, वो तो इस तरह का एक शख्स बन गया था। अगर आप मेरे इजहार बयान को माफ कर दें, तो मैं कहूँगा कि वो एक अनोखा शख्स बन गया था। और तकरीबन खुदा के सब लोग ही अनोखे होते हैं, समझे, वो ऐसे ही हैं। मैं खुश हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ। बस आप जानते हैं कि वो जदीद तहजीब के तकाजों से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए वो अनोखे और अजनबी होते हैं। उसने अपने लोगों के मुतल्लिक कहा है, मेरे मखसूस लोग अनोखे और अजीब हैं, एक रूहानी काहिनों का फिरका है, शाही कौम है, और जो खुदा के हजूर रूहानी कुर्बानियां पेश करते हैं और अपने होंठों के फलों से उसके नाम की हम्द करते हैं। कैसे अजीम लोग हैं, उसने उन्हें संभाल रखा है। और अब गौर करें, उन दिनों में ये कैसी बड़ी बात थी कि एक जनूनी सा आदमी कलीसिया में आ जाए और वहाँ अंजील की ऐसी मुनादी करे जो देखने और सुनने में उनके एतकाद के खिलाफ हो। और साइंसदान कह रहे थे, क्यों, ये मुकम्मल पागलपन है, क्योंकि वो किसी भी तरह साइंसी तरीके से साबित कर सकते थे कि बारिश हो ही नहीं सकती। मगर उस सादा से भेड़ों के चराने वाले ने यकीन किया था कि अगर खुदा ने कहा है कि बारिश होगी तो बारिश जरूर होगी, समझे। और बस इस बात का आज के किसी शिफा पाने वाले के साथ मुवाजना करें। लोग कहते हैं ये सिर्फ जज्बात हैं, और ये मैं तुम्हें साइंसी तौर पर साबित कर सकता हूँ कि ये कैंसर या ये बीमारी या इसके असरात अभी तक वहाँ मौजूद हैं। लेकिन सादा ईमानदार के करीब वो बीमारी जा चुकी है, समझे, क्योंकि वो अलामत पर निगाह नहीं करता बल्कि वो वादे पर निगाह करता है, बिल्कुल जैसे नूह ने किया था। बस क्या आप नहीं देखते, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। साइंसी तौर पर कुछ नहीं, डॉक्टर कह सकता है, यहाँ देखें, आपकी गिल्टी तो अभी तक वहाँ मौजूद है, आपका कैंसर अभी तक मौजूद है, आपका बाजू वैसा ही माजूर है जैसा कि था, आप पागल हैं। लेकिन याद रखें, ये वही रूह है जो नूह के जमाने में थी, जो कहती थी आसमान पर कोई बारिश मौजूद नहीं है। हम चांद को किसी आयले से परखकर बता सकते हैं कि वहाँ पर बारिश मौजूद नहीं है, लेकिन अगर खुदा ने कहा है तो फिर बारिश होगी। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, और ईमान की आखिरी तसल्ली की जगह खुदा का कलाम है। यही वो जगह है जहाँ उसे तसल्ली मिलती है, आप समझे, उसकी तसल्ली की जगह खुदा का कलाम है, और यही वो जगह थी जहाँ नूह ने तसल्ली पाई थी, खुदा ने ऐसा कहा है और ये तय है। अब अगर आप दोबारा गौर करें तो नू यकीनन उस ईमान के सबब से दीवाना कहलाया। वो लोग आज भी रूह कुदूस के बपतिस्मे पर ईमान रखते हैं।
Now, the church says these people are fanatics. They're nothing but a bunch of worked up.
अब कलीसिया उनके मुतल्लिक कहती है, वो लोग दीवाने हैं और कुछ भी नहीं है। वो जज्बाती हैं और शोर मचाने वाले लोगों का ग्रोह है। लेकिन क्या वो थोड़ा सा भी जानते हैं कि खुदा का कलाम यही सिखाता है, ये एक वादा है। और नूह को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो लोग क्या कहते हैं कि इस बूढ़े का दिमाग खराब हो गया है। ये साइंसी तौर पर गलत है और दिमागी तौर पर भी गलत है, मगर नूह के लिए वो खुदावन का कलाम था और नूह उसके साथ लिपटा रहा। और अक्लमंद और दाना लोग उसकी सादगी से ठोकर खा गए और अपनी जान गवा बैठे। अब उस नस्ल के लिए ये कैसी मलामत की बात थी। बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर मैं उस वक्त में होता तो फिर देखते। नहीं भाई, आपकी भी बिल्कुल वैसी ही हालत होनी थी, क्योंकि आज भी बिल्कुल वही बात कही जा रही है, सिर्फ शक्ल फर्क है। और लोग आज भी सादगी से ठोकर खा रहे हैं जैसे उन्होंने उस वक्त खाई थी। कोई शक नहीं कि उन दिनों में भी उनके पास मुनादी करने वाले बहुत ज्यादा थे, मगर नूह के पास खुदा का इल्हाम था और नूह देख सकता था और समझ सकता था कि क्या होने वाला है। और वो जानता था कि इस तरह की एक जनाकार और बदकार नस्ल को खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। बस आज हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल उसी चीज को देख रहे हैं जो एक जदीद सदूम और अमूरा की शक्ल में मौजूद है। गौर करें, बदकार जनाकार लोग जो इतने ज्यादा अपनी तालीम से भरपूर हैं कि खुदा के अपने जहूर की सादगी और उसके कलाम की सादगी के सबब से जब वो अपने कलाम को जाहिर करता है तो ठोकर खाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, रोजिला या कोई और, ये जो ये कह सके कि हम खुदा का कलाम अपने दरमियान मुजस्सम होता हुआ नहीं देख रहे। आखिरी जमाने के लिए जो वादा किया गया था, शाम का नूर चमकने को था, हम खास लोग हैं जो ये देख रहे हैं। और जबकि ये बातें इल्म की दुनिया से छुपी हुई हैं, यीशु ने खुदा से कहा था, उसने कहा, ऐ बाप, तुझे ये पसंद आया कि तू ये बातें उनसे छुपाए, इसलिए ऐ बाप तूने ये बातें उनसे छुपाई हैं। उन्हें उनकी अकलमंदी के साथ छोड़ दिया गया। आप गौर करें, ये दरअसल दुनियावी अकलमंदी थी जिसने गेंद को इब्तदा में गुनाह की गलाजत में फेंक दिया था, क्योंकि हवा उस वक्त अकल की मुतलाशी थी जब वो शैतान से मिली। देखें, शैतान ने उसे अकल दी। और फहम कलाम के मुतजाद है। हमें ये नहीं कहा गया कि फहम हासिल करें, हमें कहा गया है कि ईमान रखें जिसके मुतालिक पहले ही कहा गया है। पर समझे, लेकिन आज के आलम कलाम को इस तरीके से चमकाते और पेश करते हैं और इसकी तशरी करते हैं। ये हमेशा ऐसा ही रहा है, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी पैमाने पर हैं। अब देखें, मगर लोगों ने उसे तब खो दिया था, और जैसे लोगों ने उसे तब खो दिया था, आज भी वैसा ही है, एक जैसी फितरत है। लोग बिल्कुल वही काम कर रहे हैं क्योंकि सबब यह है कि उन्होंने इसे खो दिया था, क्योंकि वो लोग बहुत ही होशियार थे कि उसका यकीन कर पाते। समझे, अब देखें, क्योंकि पैगाम बहुत ही सादा था और होशियार मजीद होशियार हो गए कि उस पैगाम की सादगी पर यकीन कर पाते। ओ मेरे खुदाया, खुदा ने सच्चाई को इस कदर ज्यादा सादा बना दिया था के होशियार और अक्लमंद लोगों ने उसे देखते हुए भी खो दिया, क्योंकि वो नहायत ही सादा था। खैर, यही वो बात है जो खुदा की अजमत को नहायत अजीम बना देती है, क्योंकि सबसे अजीम तरीन होने के बावजूद वो अपने आप को सादा बना लेता है। और आज इंसान जाहिर कर रहे हैं कि वो खुदा के नहीं है, बल्कि वो अजीम है। वो अजीम तर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को अजीम तर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को जनाबे आला बिशप और डॉक्टर और मुकद्दस पोप और सब कुछ कहलवाते हैं। अपने आप को वो बनाते हैं जो कि वो हकीकत में है नहीं है। और खुदा नहायत ही अजीम होते हुए भी अपने आप को पस्ती में यानी सादगी में ले आता है, क्योंकि सादगी में अजमत है। हम हवाई जहाज बना सकते हैं और हम रॉकेट को या एक मिसाइल को मदार में फायर कर सकते हैं और हम तमाम ऐसी चीजें बना सकते हैं, मगर फिर भी हम घास का एक पत्ता भी नहीं बना सकते। आमीन, इसके मुतल्लिक क्या ख्याल है? बजाय इसके कि हम वापस आएं और ये देखने की कोशिश करें कि घास किसने बनाई है और उसी खुदा को कबूल करने की बजाय जिसने घास तख्लीक की है, हम मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरों से ज्यादा जल्दी बनाकर ऊपर भेजे जाएं। समझे? हम अपने चर्चेज के अंदर नहायत दाना और अकलमंद हैं कि हम $1 मिलियन की इमारत या $10 मिलियन की इमारत बना सकते हैं, मगर फिर भी मजीद कोशिश करते रहते हैं कि अपना चर्च मेथोडिस्ट वालों से बेहतर तामीर करें या बैप्टिस्ट वाले प्रेस्बिटेरियन वालों से बेहतर इमारत तामीर करें, और अब तो पेंटिकोस्टल भी इस चूहा दौड़ में शामिल है। लेकिन असल में इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम नहायती होशियार बन बैठे हैं, हत्ता कि हमें अपने आप को खाकसार बनाने और ये महसूस करने में नाकाम हो जाते हैं कि खुदा इस छोटी सी कोने में लगी हुई कलीसिया में मौजूद है। समझे? ये सच है। खैर, यही सबब है कि हम सादगी से ठोकर खा जाते हैं। लोगों ने हमेशा ऐसा ही किया है। अब देखें, वो लोग कुछ ज्यादा ही होशियार थे कि उस सादा से पैगाम पर यकीन करते। वो पैगाम इतना ज्यादा पुरकशिश नहीं था जितनी के उनके पास साइंसी तहकीक मौजूद थी। वो इतना ज्यादा आला नहीं था। वो पैगाम उनके तालीमी प्रोग्राम के मुकाबले में जो उन दिनों में था ना काफी था। देखें, क्योंकि वो तहकीक करके जान चुके थे कि वहाँ एक खुदा है और वो इस बात को मालूम कर चुके थे कि वो अजीम है, और उन्होंने कोशिश की कि अपने आप को उसके साथ अजीम बनाएं, जबकि अजमत का मतलब हमेशा खाकसारी है। अब कौन जानता है कि कुतुब शमाली ही शमाल है या कुतुब जनूबी शमाल है, या फिर कुतुब शमाली जनूब है या कुतुब जनूबी शमाल है? कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है? हम खला में लटके हुए हैं। हम कहते हैं कुतुब शमाली ऊपर है। आप कैसे जानते हैं? शायद कुतुब जनूबी शमाल हो। गौर करें, आप नहीं जानते। बस आए इस कलाम को याद रखें। अगर कोई कहता है, भाई ब्रहनम, आप कैसे जानते हैं कि बुलंद नीचे किया जाता है? इसकी बुनियाद यीशु मसीह के कलाम पर है। उसने फरमाया, वो जो अपने आप को खाकसार बनाता है बुलंद किया जाएगा, मगर जो अपने आप को बुलंद करता है नीचे कर दिया जाएगा, पस्त कर दिया जाएगा। पस्त दर हकीकत बुलंद पस्त किया जाता है और पस्त बुलंद किया जाता है। जैसे कि एक बूढ़े मुकद्दस शख्स ने शिकागो में बताया कि एक शख्स एक फलां खादम एक फलां तंजीम से कुछ पेंटिकोस्टल लोगों के सामने उठ खड़ा हुआ। वो तमाम दुनियावी हिकमत से भरा हुआ था। वो वहाँ उठ खड़ा हुआ और उसने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो पेंटिकोस्टल लोग नहीं जानते थे, और वो वहाँ खड़ा हुआ और उसने देखा कि वो पेंटिकोस्टल लोगों की समझ में नहीं आ रहे थे। वो अपने फूले हुए सीने के साथ ऊपर चला गया क्योंकि वो मुकद्दस डॉक्टर फलां फलां था। आप जानते हैं, वो शिकागो के एक बड़े फलां फलां स्कूल से था, और उसने इधर उधर देखा और वो पेंटिकोस्टल लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वो जानते ही नहीं थे कि वो किसके मुतालिक बात कर रहा है। वो नहायत ही आला तालीम याफ्ता और नहायत ही होशियार और जहानत से भरपूर था, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाए थे। ये कुछ ऐसे लगता था जैसे कोई सेनेटर या कोई ऐसा शख्स हो जो हाल ही में सदारत का उम्मीदवार हो और उसे शिकस्त उठानी पड़ी हो। टी कोर्ट्स ने मुझे बताया था जब मैं माता फूड के जनाजे पर कलाम सुना रहा था और जी उठने के मुतालिक और जी उठने की जमानत के मुतालिक बता रहा था। यकीनन जैसे सूरज तुलू होता है वैसे ही मैं जी उठूंगा, बिल्कुल जैसे यकीनन घास सूखकर खत्म हो जाती है और पत्ता दरख्त से गिर जाता है, मगर वो दोबारा बहाल हो जाता है। जब जमीन मदार के गिर्द अपने आप को दुरुस्त करती है तो उसको दोबारा जी उठना पड़ता है। ट्रक ने कहा, बिली, मैंने उस पैगाम को सराहा है जबकि भाई नेवल और मैं गाड़ी में बैठे हुए थे, और मैंने कहा, टक, बल्कि उसने कहा, मैं आपके पैगामात को सराहता हूँ। मैंने कहा, टक, मेरे पास कोई तालीम नहीं है। मैंने कहा, उसने कहा, यही तो आला बात है। समझे? अब देखें, और उसने मुझे बताया वो उसे सुनने गया था। खैर, मेरा ख्याल है मैं उस शख्स से माजरत खा हूँ, क्योंकि मेरा मतलब किसी को कमतर करना नहीं है। आप जानते हैं वो शख्स एडलाय स्टीवनसन है, और उसने मुझे बताया कि उसने उसे 15 मिनट सुना, और मिस्टर स्टीवनसन एक आला आवाज करने वाला है। आप जानते हैं, मैं समझता हूँ जब तक टिक ने ना बताया था, मेरा ख्याल है उसने कॉलेज से तालीम हासिल की है। उसने बताया कि वो वहाँ बैठा हुआ था और वो सो गया। उसने बताया कि सिर्फ 15 मिनट ही सुनते हुए थे और मुझे नींद आ गई, और बताया कि कॉलेज की तालीम होने के बावजूद जो कुछ उसने बयान किया था मैं उनमें से कुछ अल्फाज के सिवा कुछ ना समझ सका, वो नहायत ही मुश्किल थे। उसने कहा, भाई ब्रहनम, आपने मुझे अपनी किसी इबादत में सोते हुए नहीं देखा होगा, क्या आपने कभी देखा है? बस गौर करें, ये उसकी सादगी है, सिर्फ सादगी है जिसमें खुदा रहता है। अब देखें, वो लोग उन दिनों में नहायत ही होशियार थे और खुदा के सादा तरीके से काम करने को समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वो उनका आलमाना काम ना था। उसे आलमाना होना चाहिए था, उसे नहायत ही पुरकशिश होना चाहिए था, वरना वो उसे खो देते। लेकिन अब देखें, अजीम यहोवा अपने कलाम में छुपा हुआ था और उसने अपने आप को उन लोगों पर आश्कारा किया जो उसके कलाम का यकीन करते थे, ताकि उन्हें निजात दे और उस सादा पैगाम को पूरा करे। नूह का सादा सा पैगाम था और खुदा ने उसे पूरा किया था। अब इस पर गौर करें। अब फिर दोबारा मूसा के जमाने में रहाई के एक और मौका पर गौर करें। जब खुदा अपने लोगों को रहाई बख्शने वाला होता है, तो खुदा पहले लोगों को एक पैगाम भेजता है और वो पैगाम नहायत ही सादा होता है, जैसा कि हम इन मोरों के खुलने में समझ जाएंगे। और इस पैगाम को पहले बयान करने का मेरा मकसद भी यही है, ताकि हम जान लें कि उन मोरों का खोला जाना नहायत ही सादा है, मगर वो होशियार लोग इसे समझने में लाखों मील दूर रहेंगे। समझे? मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा मुझे इसके लिए मसा करेगा। समझे? मगर ये उनके सरों से गुजर जाएगा, और यही सबब है कि मैंने सोचा है कि ये पैगाम आज सुबह नहायत ही सूदमंद रहेगा, ताकि बुनियाद खुदा की सादगी पर रख दी जाए। देखें, खुदा कैसे अपने आप को सादगी में छुपाता है। जरा गौर करें, वो जरों को तोड़ सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी के बारे में बात होती है तो वो बता नहीं पाते कि ये कहाँ से आती है। एक सादा सा घास का पत्ता, उस पर गौर करें, खुदा उसमें छुपा हुआ है। वो चांद पर रॉकेट भेज सकते हैं और वहाँ पर उसकी रफ्तार और सिमत का तौइन कर सकते हैं, या और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घास के पत्ते में जिंदगी को बयान नहीं कर सकते। ये सच है। समझे? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बात नहायत ही सादा है, मगर वो इसे नजरअंदाज करते हैं। अब मूसा पर नजर करें। उन दिनों जब खुदा अपने कलाम के मुताबिक बनी इसराइल को रहाई बख्शने वाला था, तो उसने खुदा ने क्या किया? उसने एक सादा से खानदान को चुना। हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखें, सिर्फ लिखा है लावी का बेटा, बस यही सब कुछ है जो हम जानते हैं। समझे? और बस हम और उसकी बीवी थी, वो भी आम से थे, एक गारे से प्लस्तर करने वाले, जैसे कि दुनिया सोचती है, और दुश्मन के लिए ईंटें बनाने वाले थे। वो बनी इसराइल में से एक आम से गुलाम थे, मगर खुदा ने एक आम से यहूदी खानदान में से उस खानदान को चुना कि उसमें से एक रहाई बख्शने वाला पैदा करे। उसने कभी भी किसी शाही और मशहूर या कुछ और, या फिर किसी काहिन को नहीं चुना। उसने एक आम से अदना से खानदान को चुना। समझे? ये सादगी है। गौर करें, उसने क्या किया? फिर उसने एक बच्चे की पैदाइश करवाई जो कि एक सादा सा इंसान था, और वो सूरज को मुकर्रर कर सकता था, और अगर वो ऐसा करना चाहता तो वो उन्हें ऐसे रहाई दे सकता था। वो हवा को मुकर्रर करके उन्हें रहाई दे सकता था। वो एक फरिश्ते को मुकर्रर करके उन्हें रहाई दे सकता था। ओ हालेलुया, खुदा जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। अच्छा भाई ब्रहनम, आप कैसे जानते हैं? खुदा अपने प्रोग्राम को कभी तर्क नहीं करता है। यही सबब है कि हम जानते हैं आज भी वो सादगी में है। समझे? अब देखें, वो हमेशा सादगी में काम करता है। देखें, खुदा इब्तदा में सूरज को मुकर्रर कर सकता था कि वो अंजील की मुनादी करे, या हवा को मुकर्रर कर सकता था कि वो अंजील की मुनादी करे, या किसी फरिश्ते को कि वो अंजील की मुनादी करे, मगर उसने इस मकसद के लिए इंसान को मुकर्रर किया, और वो इसे कभी तब्दील नहीं करता। उसने कभी भी इब्तदा में ऐसा मुकर्रर नहीं किया। उसने कभी तंजीमों को मुकर्रर नहीं किया। उसने कभी इंसानों के ग्रोह को इस काम के लिए मुकर्रर नहीं किया। उसने इंसान को मुकर्रर किया ताकि अंजील की मुनादी करे, और ना ही मशीनरी, मैकेनिकल आलात या किसी फरिश्ते को मुकर्रर किया, बल्कि ये इंसान था। और जब वो उन लोगों के लिए रहाई लाया, तो उसने एक सादा से इंसान को भेजा जो गुलामों के एक सादा से खानदान में पैदा हुआ था। ओ मेरे खुदाया, वो कैसा अजीम खुदा है जो अपने आप को सादगी में आश्कारा करता है। अब गौर करें, और खुदा ने उसे दुनियावी अलूम में तालीम हासिल करने दी, ताकि वो नकाम हो और साबित हो कि ये अलूम नहीं है जिनसे हमें मखलसी मिल सकती है, बल्कि ये ईमान है जिसके वसीला से हम आजाद हो सकते हैं। खुदा ने मूसा को उनमें जाने दिया ताकि वो आला तालीम हासिल करे, यहाँ तक कि वो इतना तालीम याफ्ता हो गया कि वो मिस्रियों को भी तालीम सिखा सकता था। वो बहुत ही दानिशमंद था। खुदा उस सादा से खानदान के साथ था जो शायद अपना नाम भी नहीं लिख पाता था। مگر موسیٰ نے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر لی تھی تاکہ اس عظیم تعلیم کے ساتھ وہ استادوں کو دانش سکھانے کے قابل ہو سکے، وہ ذہین لوگوں کو سکھا سکتا تھا۔ جی ہاں، اور خدا نے اسے یہ سب کچھ کرنے دیا تاکہ اسے عاجزی کا نمونہ بنائے اور ظاہر کرے کہ عقل اور فہم کا اس سے کچھ لین دین نہیں ہے۔ اور موسیٰ نہایت ہی گہرے طور پر اپنی ذہانت میں ناکام ہو گیا۔ خدا نے اسے اس راہ پر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جانے دیا تاکہ وہ ناکام ہو جائے، اور وہ ناکام ہوا اور وہ گر گیا۔ تاکہ وہ دکھا سکے، نہ طاقت سے، نہ زور سے، نہ ہی مصر کے فہم سے، نہ ہی ہمارے سکول کے علم سے، اور نہ ہی ہماری سیمینریوں کی طاقت سے، اور نہ ہی ہماری تنظیموں کی تعداد سے، اور نہ ہی ہماری عالمانہ تعلیم سے، مگر میری روح سے، خدا فرماتا ہے۔ کیونکہ جب وہ جلتی ہوئی جاری میں خدا سے ملا تو اس کی دانش جاتی رہی اور وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اس نے اپنے جوتے اتار دیے اور اپنے آپ کو خاکساری سے عاجز کر لیا اور اپنی ساری عقل کو بھول گیا۔ جب خدا نے مخلصی دینی تھی تو اسے پہلے عقل و فہم میں تعلیم حاصل کرنے دی تاکہ وہ ناکام ہو جائے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ آپ اپنی عقل و فہم کے زور پر یا کسی اور کی عقل و فہم پر تکیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسے گرنے دیا تاکہ اپنے ہاتھ کو ظاہر کرے۔ کیا آپ اس کو سمجھ گئے ہیں؟ خدا کا ایسا کرنے کا ایک مقصد تھا، تاکہ اپنے آپ کو سادگی میں ظاہر کرے، اور اس نے موسیٰ کو اعلیٰ ترین بننے دیا، یہاں تک کہ وہ اگلا فرعون تھا، وہ ایک عظیم جنرل تھا۔ تاریخ کے مطابق موسیٰ نے ارد گرد کے ملکوں کو شکست دی تھی، اور پھر جب اس نے اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ خداوند کے کام کو کرنا چاہا تو خدا نے اسے سر کے بل گرا دیا تاکہ وہ اسے بیابان میں بھٹکنے دے اور اس کے اندر سے وہ سب کچھ نکال دے، اور پھر خدا اس پر عاجزی میں ظاہر ہوا اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی دے کر اسے بھیجا تاکہ لوگوں کو رہائی دے۔ جبکہ وہ یہ کام ملٹری کی تربیت کے ساتھ نہ کر سکا، اور نہ ہی تعلیم سے، اور نہ ہی سائنسی علوم سے، اور نہ ہی وہ یہ کام فوجی طاقت سے کر سکا، تو خدا نے اسے بیابان کی ایک ٹیڑی میڑی لاٹھی دی اور اس نے اس کے ساتھ وہ کام کر دکھایا۔ خدا عاجزی میں ہے، سادگی میں ہے۔ خدا موسیٰ میں اور اس چھڑی میں تھا، اور جتنی دیر تک چھڑی موسیٰ کے پاس تھی خدا اس کے ساتھ تھا، کیونکہ خدا موسیٰ میں تھا۔ یقیناً توجہ کرے، نہ زور سے، نہ طاقت سے، پر میری روح سے، صرف سادہ ایمان سے۔ موسیٰ کو اپنی ماں کی تعلیم سے سمجھ آ گئی تھی کہ اسے ایک مخلصی دینے والا بننا ہے، اور اس نے ایسا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک عظیم فوجی بنایا، لیکن وہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ دیکھیں، اس کے پاس عقل تھی، اس کے پاس تعلیم تھی، مگر یہ چیزیں فائدہ مند نہ ہوئیں۔ بس اس کو وہ سب کچھ بھولنا پڑا اور سادہ چیز پر آنا پڑا تاکہ وہ خدا کو اس کے کلام کے مطابق لے سکے، اور پھر اس نے قوم کو مخلصی دی۔ جی ہاں جناب، خدا کس کے وسیلے؟ اپنے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلے رہائی بخشتا ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو اس پر نظر ڈالتے۔ ابھی ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ باقی بچے ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ ہم ایک نظر ہابل اور کائن پر ڈال سکتے ہیں کہ کیسے کائن نے خوبصورتی سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں کے سوچنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، جب ان کی جماعت اچھے لباس سے ملبوس ہوتی ہے، اور کہن کی پوشاک یا خادموں کی پوشاک اچھی ہو، اور کوائر کی پوشاک اچھی ہو، اور سب کچھ جو وہ پہنتے ہیں اچھا ہو، تو اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہاں سے نکلا ہے؟ کائن نے بھی یہی کوشش کی تھی، اور اس نے ایک مذبح بنایا تھا، اور کوئی شک نہیں کہ اس نے وہ خوبصورت بنایا تھا، اور وہ شخص مخلص تھا، اس نے عبادت کی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں مخلص ہوں، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ مخلص ہوتے ہوئے بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ توجہ دیں، اس نے مذبح بنایا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس پر پھول سجائے اور خوبصورت پھل رکھے، اور سوچا یقیناً ایک عظیم جلالی مقدس خوبصورت خدا اس قربانی کو قبول کرے گا۔ مگر دیکھیں، اس نے یہ اپنی عقل سے کیا تھا، اس نے یہ اپنی سوچ کے مطابق کیا تھا، اور یہی کام آج بھی ہو رہا ہے۔ وہ اپنی عقل سے، اپنی تعلیم سے، اور اپنے طور طریقوں سے، اور اپنی خلاقیات سے جو انہوں نے سیکھی ہے، ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن ہابل نے ایمان کے مکاشفہ سے افضل قربانی خدا کے حضور گزرانی۔ اگر انسانی عقل سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی صفائی نہیں تھی۔ اس شخص نے برے کو گردن سے پکڑا اور اس کو انگور کی بیل سے باندھ کر کھینچا، اسے مذبح پر لایا، اس میں خوبصورتی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ उसको मजबा पर रख कर उसके गले को एक तेज धार पत्थर से काटता रहा जब तक वो लहू में लथपथ न हो गया। उसका लहू चारों तरफ बह रहा था और वो बड़ा मरते हुए ममिया रहा था। अगर इसे देखें तो ये खौफनाक मंजर था, समझे, मगर ये सादगी में था। सादगी में वो जानता था कि वो अपने बाप और माँ के खून से पैदा हुआ है, अपने बाप के खून के जरिए अपनी माँ से जन्म लिया है और ये खून ही था जो गिरावट का सबब बना था। लिहाजा ये खून ही है जो उसको वापस ले आएगा। बस इस तरह हाबल ने खुदा के हुजूर अफजल कुर्बानी गुजरानी, क्योंकि ये बात उस पर आशकारा हो चुकी थी। और कुछ ऐसे भाई हैं जो आज भी सोचते हैं कि उन्होंने सेब या नाशपाती खाई थी। और एक दिन मैंने अखबार में एक बहुत ही अहमकाना बात देखी, उन्होंने लिखा था, अब उन्होंने साबित कर दिया है कि हवा ने जो खाया था वो सेब नहीं था, बल्कि वो मेरा ख्याल है उन्होंने दावा किया है कि वो एक खुबानी थी। ओ बस गौर करें, ये रूह कहाँ से आई है। और वो कहते हैं कि मूसा ने दर हकीकत कभी भी बहरे कुलजम को अबूर नहीं किया था, बल्कि वहाँ पर एक सरकंडों का बहुत बड़ा गुच्छा था, यानी सरकंडों का समुंदर था, और वो बनी इसराइल को सरकंडों के समुंदर के ऊपर से ले गया था जो समुंदर के इख्ताम तक था। वहाँ पर एक सरकंडों का बहुत बड़ा गुच्छा था और यूं मूसा ने समुंदर को अबूर किया था। वो सरकंडों का समुंदर था जो उसने अबूर किया था। अब जानते हैं जैसे कि लंबा घास और आबी पौधों या इसी तरह की कोई और चीजें होती हैं, वहीं से मूसा ने उसे अबूर किया था। कैसी अहमकाना सोच है, जबकि पानी के बारे में बाइबल कहती है पानी दाहिनी तरफ से बाईं तरफ अलग हो गया था और खुदा ने तुंद पूर्वी आंधी चलाकर उसे अलग कर दिया था, समझे समझे। और ये लोग इस वाक्य को अपने ही तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, और ये वही तरीका है जिससे लोग हमेशा नाकाम होते रहे हैं और नाकाम होते रहेंगे। और आप इन बातों से वाकिफ हैं। और काइन बिल्कुल आज के जिस्मानी सोच रखने वाले शख्स की अक्कासी था, जो कि जाहिरी तौर पर मजहबी है, क्योंकि ऐसा शख्स जाहिरी तौर पर कुछ करना चाहता है। देखें ये चर्च जाता है और अमारत के लिए बहुत से काम करना चाहता है। देखें सिर्फ एक ही चर्च है और आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। बाकी क्याम गाये हैं, समझे, जैसे आप मेथोडिस्ट क्याम गाह में, बैप्टिस्ट क्याम गाह में, प्रेसबिटेरियन क्याम गाह में और पेंटिकोस्टल क्याम गाह में शामिल हो जाते हैं, मगर चर्च में आप पैदा होते हैं। जी हाँ जनाब, समझे, ये सारी क्याम गाहें हैं, ये कलीसियाएं नहीं है, ये क्याम गाहें हैं। मेथोडिस्ट कलीसिया जैसी कोई चीज नहीं है या पेंटिकोस्टल कलीसिया जैसी कोई चीज नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, हरगिज नहीं, ये सब गलत है, समझे। देखें ये अपनी जगह पर दुरुस्त है क्योंकि ये क्याम गाहें हैं जिनमें लोग शामिल हो जाते हैं, मगर आप जिंदा खुदा की कलीसिया में पैदा होते हैं और वो यीशु मसीह के रूहानी बदन से तश्कील पाती है। अब देखें, लेकिन ये बात खुदा को पसंद आई कि हाबल पर अपना मुकाशफा सादा ईमान और खून बहाए जाने के वसीला से अयां करे। ओ काश मेरे पास वक्त होता ताकि मैं इस पर कुछ देर और बयान कर पाता, समझे। तो भी काइन अपनी तमाम दानिश के बावजूद एक होशियार शख्स था। ओ आप कहते हैं भाई ब्रैनम, आप कहते हैं वो होशियार था, आप उसको एक पढ़ा लिखा जहन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा था, वो नहायत ही होशियार था। उसकी नस्ल को देखें, उसकी औलाद पर नजर डालें, उनमें से हर कोई साइंसदान और डॉक्टर था और हर एक होशियार इंसान था। लेकिन आप सेठ की नस्ल को देखें, वो खाकसार देहाती और किसान और वगैरह वगैरह थे और तबाही और बर्बादी तक खाना बदोश थे। लेकिन काइन की औलाद होशियार और अकलमंदों का ग्रोह थी, यहाँ तक कि वो दावा करते थे कि वो तांबे को कूट कर दाते बना सकते हैं और फन्ने तामीर के माहिर थे क्योंकि वो होशियार लोग थे, जबकि दूसरे ग्रोह के लोग खेमों में रहते थे और अपनी भेड़ों को पालते थे और खुदा के वादों पर तकिया करते थे। देखें, समझे, देखें ये क्या था। अब नीचे तक निसब नामों को देखें और मालूम करें आया ये दुरुस्त है कि नहीं, समझे। वो लोग खुदा के वादों पर भरोसा करते थे और इसी तरह नूह उन लोगों में से चुना गया था और इसी तरह पालूस भी अपने लोगों में से चुना गया था, समझे। इसी तरह से जॉन वेस्ली, मार्टिन लूथर और बहुत सारे चुने गए थे। इसी तरह से आपको भी निकाला गया है ताकि आज वो कुछ बने जो आपको होना चाहिए, ताकि खुदा के सादा वादों पर ईमान लाने के लिए आजिज बन जाएं। अब ध्यान दें, ये खुदा को पसंद आया कि अपने आप को जाहिर करे। अब खुदा हमेशा इस बात को साबित करेगा कि आया ये सच्चाई है या नहीं, समझे। अब बहुत सारे लोग खुद ही ऐसी बातों की कोशिश में लगे रहते हैं जिनसे खुदा लाखों मील दूर रहता है। ये दुरुस्त है, लेकिन जब आप देखते हैं कि खुदा आपके पास आ गया है तो कहें यही है। जब ये ठीक वक्त पर होता है तो कहें ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, फिर आप जान जाते हैं कि ये सच्चाई है। अब देखें, जब कुर्बानियां मजबा पर मौजूद थी तो खुदा ने काइन के ज़हनी तस्वीर को रद्द कर दिया, मगर जब खुदा ने हाबल को देखा कि उसने सादा ईमान से यकीन किया है कि वो सेब या खेत के फल नहीं थे जिनसे गुनाह आया, بلکہ وہ خون تھا۔ اس نے ایمان کے وسیلے اس پر یقین کیا اور یہ اسے خدا کی طرف سے مکاشفہ ملا تھا، اور خدا نے اس شخص کی قربانی کو قبول کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ آدم کا بیٹا تھا۔ سمجھے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں بیماروں کے لیے دعا کرنے کا تصور ملتا ہے۔ یسوع نے کہا، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میرا کلام تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، ہم تیزی سے اختتام کی طرف آ رہے ہیں اور ہمارے پاس 20 منٹ ہیں۔ ایلیا کے زمانے پر غور کریں۔ خدا نے انتخاب کیا کہ خود کو اس سادہ سے شخص میں چھپا لے۔ اب ذرا اس کے بارے میں سوچیں۔ خیر، خدا نے انتخاب کیا، وہ اس کا انتخاب تھا۔ یاد رکھیں کہ ان کے پاس ربی اور کاہن تھے۔ ان دنوں میں ان کے پاس بڑے عظیم لوگ موجود تھے۔ بذات خود اخیہ بادشاہ بھی یہودی تھا۔ اس کے زمانے میں اس سرزمین پر بڑے عظیم لوگ موجود تھے، لیکن خدا نے خود کو اس سادے سے شخص میں چھپایا، نہ کہ کسی عالم میں، ہرگز نہیں، نہ ہی دنیا کے کسی مشہور شخص میں، نہ ہی کسی عظیم ذہین ملٹری والے شخص میں، یا کسی اور میں، ہرگز نہیں، نہ کسی مشہور نام والے میں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے ماں اور باپ کون تھے۔ ہم اس کے نسب نامے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، صرف یہ کہ ایک سادہ سا بوڑھا کسان تھا جو اسی مقصد کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ ایک نبی ہو۔ خدا نے اسے اپنے لیے جنگل میں رکھا ہوا تھا۔ ہم اس کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ اچانک سے کہیں سے باہر نکل آیا اور سارے کلیسیائی نظام کو رد کر دیا۔ او میرے خدایا، اور کیا آپ جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ وہ کون سے سکول سے آیا ہے؟ سمجھے، وہ کس تنظیم سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا وہ فریسیوں یا صدوقیوں میں سے ہے، یا پھر اس سے بڑھ کر ان کے پاس کیا تھا؟ سمجھے، وہ ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نے اس سارے نظام کو رد کر دیا۔ سمجھے، خدا نے ایسا کرنے کے لیے اسے چنا تھا، مگر وہ ایک سادہ سا شخص تھا، وہ تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ ہمارے پاس ایسا کوئی حوالہ موجود نہیں جہاں کبھی وہ سکول گیا ہو۔ ہمارے پاس اس کے متعلق کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف ایک سادہ سا آدمی تھا، مگر خدا کو پسند آیا کہ اس سادہ سے آدمی میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ خدا وہاں اس سادہ سے آدمی کے اندر خود کو انسانی جامے میں چھپائے ہوئے تھا۔ کیا آپ اس بات کو سمجھ گئے؟ خدا ایک ان پڑھ خبتی میں چھپ کر خود کو دنیا پر ظاہر کر رہا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں، انہوں نے اس پر ہر طرح کا الزام لگایا، حتیٰ کہ ایلیا کو جادوگر کہا گیا۔ دیکھیں، تمام نبیوں پر الزام لگائے گئے تھے، بس یسوع پر بھی اس طرح کا الزام لگایا گیا۔ اب غور کریں، بالزبول اور دیوانہ کہا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ تو پاگل ہے۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں تجھ میں بدرو ہے اور تو پاگل ہو گیا ہے۔ سمجھے، یہی مقام تھا جہاں اس نے ان سے کہا تھا، جب وہ آخر زمانے میں آئے گا تو پھر ایسا کرنا کفر گنا جائے گا، لیکن اس وقت انہیں معاف کر دیا گیا۔ لیکن اس آخر زمانے میں یہ معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی قیمت ابدی جدائی کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ لکھا ہے، نہ اس جہان میں اور نہ آنے والے جہان میں معاف کیا جائے گا۔ لیکن ایلیا کو انہوں نے پاگل شخص قرار دے دیا تھا۔ کیا آپ کھڑے ہوئے تصور کر سکتے ہیں، جیسے کہ عورتیں جدید زمانے کی طرح اس وقت اپنے بال کاٹتی تھیں، میرا خیال ہے ایزبل کی طرح سنگار کرتی تھی، اور وہ ایسا کرنے والی اس سرزمین کی پہلی خاتون تھی، اور پاسٹر حضرات اور باقی سب کچھ دنیا داری میں جا چکا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ تا وہ بوڑھا ایلیا باہر آ گیا اور ایزبل سے لے کر سارے نظام کو رد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے سوچا، ہم ایلیا کو سننا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے پاس پاسٹر موجود ہیں۔ یقیناً وہ اسے سننا نہیں چاہتے تھے، مگر تو بھی وہ ان کا پاسٹر تھا، وہ ایزبل کا پاسٹر تھا۔ حالانکہ وہ اس کو سننا نہیں چاہتی تھی، وہ شاید کسی اور پاسٹر کو سننا چاہتی تھی، مگر وہ خدا کا بھیجا ہوا تھا۔ سمجھے، وہ خدا کی طرف سے اس عورت کے لیے بھیجا گیا پاسٹر تھا، مگر وہ اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا پاسٹر تھا۔ دھیان دیں، اور ایلیا نے اپنے آپ کو خاکسار بنایا، اور جو کچھ خدا نے کہا تھا اس کے ساتھ اس قدر لپٹا رہا کہ خدا کو پسند آیا کہ اس کی روح کو جو اس پر تھی اسے اس پر سے لے کر 3 مرتبہ اور بھیجنے کا وعدہ کیا۔ سمجھے، آمین، اس نے ایسا کیا، آمین، یقیناً اس نے کیا، یقیناً اس نے اس کا وعدہ کیا کہ وہ روح آئے گی، اور وہ علیشہ پر نازل ہوئی جو اس کا جان نشین تھا، پھر یوحنا استباغی پر ظاہر ہوئی، اور پھر ملاکی 4 کے مطابق اسے دوبارہ یہاں اس آخری زمانے میں ظاہر ہونا ہے۔ سمجھے، خدا اس روح سے محبت کرتا تھا جو اس سادہ سے ان پڑھ جنگلی شخص پر تھی جو وہاں جنگل میں رہتا تھا، اور پس وہ خدا کے کلام کا اس قدر فرما بردار تھا کہ جب خدا کہتا تھا ایلیا یہ کر تو ایلیا وہی کرتا تھا، اور خدا نے اپنے آپ کو اس میں بہت ہی سادگی میں چھپایا ہوا تھا، جبکہ ان سب نے اس کے بارے میں یہی کہا تھا، اس پاگل بوڑھے کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ और वगैरह वगैरह। मगर फिर एक दिन जब वो बहुत बूढ़ा हो गया और उसके बाल जड़ गए और उसकी दाढ़ी के सफेद बाल लटक रहे थे और सर के थोड़े से बाल उसके कंधे पर लटक रहे थे, उसके हाथों में झुर्रियां पड़ गई थी और जिल्द लटक रही थी। सामरिया की राह पर चलता हुआ आ रहा था और उसकी आंखें आसमान की तरफ लगी हुई थी और एक टेढ़ी सी छड़ी उसके हाथ में थी और बहुत ज्यादा काबिले सूरत नहीं था कि उसको देखा जाए, मगर उसके पास उस जमाने के लिए कलाम था। खुदावंद यूं फरमाता है, वो उसके साथ अकलाया नहीं, वो उसके साथ अतलाया नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा था अब अखियब अजीम है, बल्कि वो ऊपर चढ़ गया और कहा जब तक मैं न कहूँ आसमान से मीन नहीं बरसेगा। हालेलुया, समझे, खुदा ने उसकी सादगी की कदर की। अब आप गौर करें कि ये बात इतनी सादा थी कि हर एक उसके खिलाफ हो गया था, हर एक उसकी जान का दुश्मन बन गया था, खादमों की एसोसिएशन और इसके अलावा सब के सब उसकी जान के दुश्मन बन गए थे, ये सच है, और हर कोई उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। मगर उस सादगी में वो लोग उसकी किसी मुहिम या जो कुछ वो कर रहा था उसमें तावुन नहीं कर रहे थे। हर कोई सोचता था वो पागल है, मगर खुदा खुद को छुपा रहा था। लेकिन जब उस बीज के पकने का वक्त आ गया जो कि लगाया गया था, तो खुदा ने अपने आप को आसमान से उस आग को बेचकर जो उस कुर्बानी को चट कर गई थी जाहिर कर दिया। खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है और फिर खुद को उसी में आशकारा करता है, समझे। यकीनन खुदा को ऐसा करना अच्छा लगता है और वो हमेशा ऐसा ही करता है। जी हाँ जनाब, अब देखें हम इस बात को देखते हैं कि उसने ये काम करने का वादा किया है। लेकिन आज हमारे साथ मसला ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होना चाहते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सेमिनरी तंजीम परस्ती और तालीमी दिमाग चाहते हैं, इसलिए खुदा हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। खुदा किसी शख्स को कोई काम करने के लिए दे सकता है या उसे खिदमत बख्श सकता है, और पहली बात आप जानते हैं वो शख्स उन बातों को सुनना शुरू करेगा जो दूसरे लोग कहते हैं, और पहली बात जो होगी आप जानते हैं वो किसी बड़े ग्रोह में मिल जाएगा और फिर खुदा अपना हाथ उससे उठा लेता है और उसे अकेला छोड़ देता है, समझे समझे। फिर खुदा अपने लिए किसी दूसरे शख्स को ढूंढेगा जो उस काम को कर सके, समझे। वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढता है जो उसके कलाम को कबूल करे, जो उसके इलाही मुकाशवे के साथ खड़ा रहे और उससे दस्तबरदार ना हो और उस कलाम पर ठीक तौर पर कायम रहे, क्योंकि वो इसी तरीके से करता है और उसने हमेशा इसी तरीके से किया है। पर जब कोई शख्स बहुत ज्यादा तालीम हासिल कर लेता है और होशियार बन जाता है तो अपनी तशरीह बयान करने की कोशिश करता है, खैर वो इस तरह कहने लग जाता है कि रूल कुदस का बपतिस्मा, ओ ये तो किसी और जमाने के लिए था। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कहते तो खैर ये कहते हैं अगर उस वक्त के लिए नहीं था तो कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि वो इस तरीके से नहीं आता जैसा पेंतिकोस्त के दिन नाजिल हुआ था, बल्कि जब हम ईमान लाते हैं तो उसी वक्त हम रूल कुदस पा लेते हैं और इसी किस्म की और बहुत सी बेकार बातें करते हैं, समझे। और फिर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे के मुतालिक बात करें तो वो हालांकि बाइबल इस किस्म की तालीम देती है, खैर आप कहते हैं ठीक है मगर सेमिनरी ऐसा कहती है और फला फला ऐसा कहता है, ये तो समझौता करना है, समझे। इसलिए खुदा इस किस्म के शख्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, समझे। शायद वो अपने आदमी को सारे मुल्क में ख्वार होने दे और लोग उसको निकाल दे और उस पर तंज करें और उसका मजाक उड़ाएं और वगैरह वगैरह, मगर जब हकीकी मुकाबले का वक्त आता है तो खुदा खड़ा हो जाता है और ठीक अपनी पहचान सादगी में करवाता है। फूल की तरह सीधे ऊपर खड़े हो जाएं, उस बीज पर निगाह डालें, जब जमीन में गिरता है तो लगता है कि वो मर गया है, फिर उस बीज को खोदें तो सड़ा हुआ है और गंदा नजर आता है, मगर उसमें से जिंदगी निकलकर बाहर आती है ताकि एक बार फिर दूसरा फूल पैदा करे। खुदा सादगी में है, वो बिल्कुल ऐसा करता है। अजमत की राह हमेशा खाकसारी में है, इसलिए अपने आप को खाकसार बनाएं, ऐसा कभी मत कहें खैर है मेरे पास ये है मेरे पास वो है, आपके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ याद रखें अगर आप पर खुदा का फजल हुआ है तो उसके शुक्रगुजार हूँ और खाकसार बने रहें। देखें सिर्फ अपने आप को खाकसार बनाएं। अब मुझे जरा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि घड़ी पर, इसलिए कि मैं आपको ज्यादा देर तक बिठाना नहीं चाहता हूँ, देखें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप थक जाएं, इसलिए कि इस हफ्ते के दौरान हमारे पास काफी ज्यादा वक्त है। अब देखें अब हम इस बात पर गौर करते हैं कि लोग बहुत ज्यादा होशियार और तालीम याफ्ता हो गए हैं। अब मैं आपको एक दूसरा रुख दिखाना चाहता हूँ, दूसरी जानिब वाले, उस दूसरी तरफ वाले बहुत दूर निकल गए हैं, वो मजहबी बनने के चक्कर में जुनूनी बन गए हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास वो ग्रोह भी मौजूद है, समझे, वो दूसरी तरफ निकल गए हैं। यही वो नुक्ता है जहां मैंने उन भाइयों के साथ इख्तलाफ किया था। इस बात को ज्यादा देर नहीं हुई कि वो नूर की राह से हट गए, वो उस कुदरत के जहूर को जान ना पाए और उन्होंने खुद साख्ता एक ग्रोह बना लिया बस वो कनाडा में इकट्ठे हुए और उन्होंने लोगों का ग्रुप बना लिया जिन्हें वो बाहर भेजने लगे और एक दूसरे को नबी और रसूल बनाने लगे और ऐसे ही चीजें करने लगे और वो हकीकत में फिर गए समझे। और ऐसा हमेशा होगा समझे। वो इस तरह के बन गए, वो ऐसा महसूस करने लगे कि वो ऐसे हैं। वो इस बात को नहीं जानते थे और उन्होंने दूसरी बातों को बिल्कुल रद्द कर दिया और ऐसे काम किए यहाँ तक कि वो दूसरी तरफ के होकर रह गए। देखें, यहाँ पर एक हिस्सा तो ऐसा है जो नहायत ही अक्लो फहम रखते हैं लेकिन बुक से भरपूर और डिट है, वो हर बात का इनकार करते हैं, और दूसरी जानिब दूसरी तरफ वाले इंतहा पसंद जज्बात से भरपूर लोगों का ग्रोह है और वो कलाम का इनकार करते हैं। लेकिन हकीकी सच्ची कलीसिया शारा के बीच में चलती है। अब अगर आप गौर करें तो ये कलीसिया वो है जिसे बाइबल का इल्म है कि खुदा क्या फरमाता है और ये रूहानी तौर पर अपने दिल में काफी सरगर्म है और ये शाहरा पर है। यशाया ने कहा कि ये ऐसे ही होगा, उसने कहा एक शाहरा होगी। अब देखें कि बाब बरकत मुकद्दस बेशकीमत नाजरीन कलीसिया के दोस्तों के दरमियान एक अजीम तहरीक थी जिसे खुदा ने जारी किया था, मगर उन्होंने क्या हासिल किया? जब खुदा ने कलीसिया में गैर जुबानें बोलने की नेमत बख्शी तो इतने ज्यादा मजहबी और इतने ज्यादा अपने अकायद में मगन हो गए थे कि उन्होंने इसे शैतान कह दिया। और आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ समझे समझे। वो इससे कहीं बढ़कर पाक बन गए और बस हम देखते हैं तमाम चीजें बीज की तरफ जाती हैं और ठीक खत्म हो जाती हैं समझे। और ये दूसरा हिस्सा है। अब देखें, एक तरफ वाले जनूनी बन जाते हैं, दूसरी तरफ वाले सर्द मोहर और अपने अकायद में मगन हो जाते हैं। अब ये साया कहता है वहाँ एक शायरा होगी और नाजरीन लोग और बहुत से पुराने मुकद्दसीन लोग कहा करते थे वो पुरानी मुकद्दस शाहरा खुदा को जलाल मिले, हम उस पुरानी शाहरा पर चल रहे हैं। मगर आप याद रखें जो नबी ने कहा था वो दरअसल ये नहीं था। उसने कहा वहाँ एक शाहरा होगी और वो एक जोड़ने वाला रास्ता है यानी एक शाहरा, और उसे ऐसे ही पाकीजगी की शाहरा नहीं पुकारा गया बल्कि वो पाकीजगी की शाहरा है। अब देखें, लोग खुद को पाक करने की कोशिश करके पाकीजगी की शाहरा बना रहे हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे मैंने पहले कहा था, ये ऐसे ही है। ये तो ऐसे ही होगा जैसे एक चील अपने आप को कबूतर के पर लगाकर खुद को एक कबूतर बनाने की कोशिश कर रही हो जबकि इसकी फितरत चील जैसी है समझे। वो जबकि ये ऐसे ही होगा जैसे एक कौवा कोशिश करे कि एक कबूतर या एक मोर के पर लगा ले और कह रहा हो आप देखें मैं एक खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन गौर करें ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई नकाल हो। मगर एक मोर को इस बात की फिक्र करने की कतई जरूरत नहीं है कि उसके मोर वाले पर होंगे या नहीं, और एक कबूतर को इस बात की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उसके कबूतर वाले पर होंगे या नहीं, क्योंकि उसकी फितरत कबूतर की है इसलिए उसके पर भी कबूतर के होंगे। और देखें, कोलिनेस के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि औरतों को लंबे बाल रखने चाहिए और लंबे कपड़े पहनने चाहिए और इस तरह के काम करने चाहिए और लंबे स्कर्ट लेने चाहिए और उन्हें शादी की अंगूठी या किसी किस्म का जेवर नहीं पहनना चाहिए। गौर करें ये खुद पसंदी की पाकीजगी है समझे। देखें ये बनावटी पाकीजगी है लेकिन जिंदा खुदा की हकीकी कलीसिया भी है। और देखें तंजीम के साथ क्या हुआ है, अब उनकी तमाम औरतें पेंटिकोस्टल वालों की तरह बाल काटती हैं और वगैरह वगैरह, और वो तकरीबन सभी अंगूठी पहनती हैं और वगैरह वगैरह। और अब पेंटिकोस्टल वालों को देखें, सालों पहले वो कैसे राग अलापते थे कि देखें हम कलीसिया हैं, हम कलीसिया हैं। अब कलीसिया मसीह का बदन है और ये इंफरादी तौर पर है, दूसरे इंफरादी लोगों के दरमियान है जो खुदा की बादशाहत में पैदा होते हैं, यानी वो जिंदगी जो अंदर से बाहर की तरफ आती है और ये खुद ब खुद जीती है। आपको भेड़ को कहना नहीं पड़ता कि ऊन पैदा करे, या मेरा मतलब है ऊन तैयार करे, भेड़ को ऊन तैयार करनी नहीं पड़ती। क्या वो कहती है कि अब मेरे मालिक को इस साल कुछ ऊन की जरूरत है इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत है? हरगिज नहीं। हालांकि उसको जो करने की जरूरत है वो ये है कि वो भेड़ ही बनी रहे, ये सच है, और ऊन खुद ब खुद ही पैदा हो जाएगी, वो पैदा होगी, वो पैदा हो जाएगी, वो उसे पैदा करेगी, क्योंकि हमें ये नहीं कहा गया कि हम फल तैयार करें बल्कि हमें फल पैदा करने हैं। गौर करें, फल लाएं, समझे, हमें फल पैदा करने हैं। और जब तक आप खुदा के फलदार दरख्त हैं और खुदा के कलाम के साथ हैं तो खुदा का कलाम खुद को साबित करेगा और वो उस वक़्त तक फल लाएगा जब तक कलाम उसमें मौजूद है। यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे तो जो कुछ चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, समझे। आप इसको तैयार नहीं करते, आप इसको पैदा करने के लिए कोई काम नहीं करते, ये दर हकीकत वहाँ मौजूद है और ये पैदा होता रहता है। आए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा जल्दी करते हैं क्योंकि थोड़े से मिनट बाकी बचे हैं और फिर हम खत्म करेंगे। अब देखें, अब दूसरी तरफ वाले इतने आगे निकल गए हैं कि वो जुनूनी बन गए हैं। अब वो दूसरी तरफ निकल गए हैं और वो सोचते हैं, क्योंकि वो ऊपर नीचे उछलते कूदते हैं या किसी किस्म के जज्बाती हो जाते हैं और जोश से भर जाते हैं और गैर जुबाने बोलते हैं और नबुवत करते हैं जो दुरुस्त साबित होती है, या इसी तरह के कुछ और काम करते हैं और वो सोचते हैं कि यही सब कुछ है और वो उन्हें मिल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उस रोज बतेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या मैंने तेरे नाम से नबुवत नहीं की और तेरे नाम से बहुत सारे काम नहीं किए और बद्रूहे नहीं निकाली? वो कहेगा, मेरे पास से चले जाओ, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। समझे, ये इस तरह नहीं है अजीजो, ये बात इस तरह नहीं है, यही सबब है। और क्या गैर जुबानें सबूत हैं? मैं गैर जुबानों में दुआ करने पर ईमान रखता हूँ, मगर मैं इसे इस तरह नहीं मानता कि यही रूह कुदुस की निशानी है। नहीं जनाब, रूह के फल इसकी निशानी है, समझे? जी हाँ। अब आप गौर करें, यही सबब है कि मैं पेंतिकोस्टल भाइयों से इस मामले में जरा सा मुख्तलिफ हूँ, क्योंकि वो कहते हैं अगर एक शख्स गैर जुबानों में बोलता है तो उसमें रूह कुदुस है। मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, सिर्फ यही निशानी नहीं है कि उसमें रूह कुदुस है, समझे? मैंने जादूगरों को गैर जुबानों में इतनी तेज बोलते सुना है जितनी तेज वो बोल सकते हैं, और इंसानी खोपड़ी से लहू पीते हैं और शैतान को बुलाते हैं। मैंने इंडियन को सांपों को पकड़ते और अपने गिर्द लपेटते देखा है, और एरिजोना में बारिश में नाचते और अपने हाथों को ऊपर उठाते देखा है, और इधर उधर दौड़ते हुए देखा है। जादूगर आगे आता है और खुद को छेदता है और एक पेंसिल नीचे रखता है और वो गैर जुबानों में तहरीर करती है और फिर उसका तर्जमा किया जाता है, समझे? बस मुझे ये मत बताएं, मेरे लिए ये बातें पुरानी हो गई हैं, समझे? बस वो तो रूह का फल है, यीशु ने कहा, उनके फलों से, ना के गैर जुबानों से या जोश से, बल्कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, समझे? बस वो रूह का फल है, ये खुदा है जो अपने आप को फरोतनी और मिठास में आश्कारा कर रहा है और हर घड़ी यकसा है। ये बात उस शख्स के मुतालिक है जो ठीक कलाम के साथ कायम रहता है। हर वक्त जब वो कलाम को सुनता है तो वो उसे आमीन के साथ कबूल करता है, चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप देखें कि वो उसका यकीन करता है, ठीक है, समझे? मगर हम काफी दूर निकल जाते हैं, फिर हमें जज्बात में सुकून मिलता है और इस तरह शैतान लोगों के दरमियान आ जाता है, क्योंकि ये शैतान का कारोबार है और वो एक अच्छा कारोबारी शख्स है, और वो लोगों के दरमियान आ जाता है और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उन्हें रूह मिल गया है, क्योंकि वो ऊपर नीचे उछलते कूदते हैं मगर फिर भी अपने पड़ोसी से नफरत करते हैं। क्या ऐसा नहीं है? देखें, फिर ऐसी चीजों के मुतल्लिक बयान करना और गैर जुबानों में बोलना, ऐसी चीजें सिर्फ हैरान कुन है। और याद रखें, आप हकीकी रूह कुदुस की गैर जुबानें बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप में रूह कुदुस नहीं हो सकता। बाइबल ऐसा ही कहती है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं, मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच हूँ, 1 कुरिन्थियों 13, समझे? लिहाजा आप मत समझे कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मेथोडिस्ट वाले कहते हैं, जब हम चलाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने रूह कुदुस पा लिया है, लेकिन उन्होंने नहीं पाया। नाजरीन वाले कहते हैं, जब वो पाकीजगी के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो उन्हें रूह कुदुस मिल गया है, लेकिन उन्हें नहीं मिला। पेंतिकोस्टल वाले कहते हैं, जब हम गैर जुबानों में बोलते हैं तो हमने रूह कुदुस पा लिया है मगर उन्हें नहीं मिला, समझे? समझे, खुदा अपने आप को जज्बात में आश्कारा नहीं करता है, हरगिज नहीं, वो जज्बात में नहीं है। आप सिर्फ उस मकाम को देखें, वो अपने आप को इस हद तक फ्रोतन बना लेता है कि कोई भी उसे देख सकता है। देखें, बशर्ते के अगर आप उसमें अपनी ज़हनी बातें और अपने ख्यालात को मिलाने की कोशिश ना करें तो आप भी उसे देख सकते हैं, वो खुदा है। अब देखें, फिर वो जुनूनियों का ग्रोह बन जाते हैं, और फिर दूसरी तरफ रवायती लोग हैं और एक तरफ जुनूनी है, और दोनों अतराफ से लोग बुलाए जाते हैं और दुल्हन इन दोनों के दरमियान सीधी चलती है। ये सच है, खुदा ये साबित करता है कि वो अपने कलाम के साथ चलता है। अब देखें, हो मुझे इसमें से कुछ बातें छोड़नी होंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत कुछ है और मैं बल्कि मेरे पास वक्त की कमी है। अब मैं जल्दी करूँगा जितनी जल्दी मैं कर सकता हूँ। अदन से, अदन के बाग से ये बात चली आ रही है कि मसीहा आ रहा है, और अदन से ही इस बात की नबुवत की गई है। अब मैं अपने कुछ हवाला जात और नोट्स को छोड़ रहा हूँ जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि पैगाम को वक्त पर खत्म कर पाऊँ। खुदा फरोतनी में छुपा हुआ है। अब मैं तेज तेज बोलूँगा, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़हन नशीन कर लें, समझे? अदन ही से इसकी नबुवत की गई थी कि एक मसीहा आएगा। ये पहले ही से बता दिया गया था कि वो कैसा शख्स होगा। हम इस पर काफी वक्त ठहर सकते हैं। आप बाइबल में जानते हैं कि वो कैसा होगा, वो किस किस्म का शख्स होगा, क्योंकि मूसा ने बताया था कि खुदावन तुम्हारा खुदा मेरी मानिंद एक नबी बरपा करेगा। वो जानते थे कि मसीहा एक नबी होगा, उसके पास इस किस्म की खिदमत होगी। और तमाम नबियों ने बयान किया था कि वो क्या करेगा, उन्होंने उसके मुतल्लिक अलामतों में बयान किया था, और ये बात सीधी उनके सरों के ऊपर से गुजर गई और कुछ के नीचे से गुजर गई, समझे। देखें, कुछ के ऊपर से और कुछ के नीचे से गुजर गई, समझे। जब वक्त पूरा हो गया कि वो मंजर पर जाहिर हो, तो वो लोग जिनके पास उसे भेजा गया था, उनके पास उनकी अपनी तशरी थी कि उसे कैसा होना चाहिए, और वो उनकी अपनी ख्याली तशरी थी। बाइबल कभी नहीं बदली, बाइबल हमेशा से यकसा है, और यही सबब है कि मैं वो कहता हूँ जो कलाम फरमाता है, मैं उस पर कायम रहता हूँ, क्योंकि बाइबल की कोई जाती तशरी नहीं की जा सकती। बस मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और पेंटिकॉस्टल लोगों, इसमें अपनी तशरी डालने की कोशिश मत करें, और ना कहें कि इसका वो मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका बिल्कुल सिर्फ वही मतलब है जो उसने कहा है। किसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं जानता कैसे, ये कहना मेरा काम नहीं है, ये खुदा है जो इसकी फिक्र करता है, क्योंकि वही वाहिद है जिसने ये फरमाया है, ना कि मैंने फरमाया है, तो जो करें, इसलिए कि वो अपने फरमान की खुद फिक्र करता है। लेकिन अब देखें कि इस मसीहा के मुतल्लिक नबुवत की गई थी, नबियों ने बताया था कि वो कैसे आएगा, और जब वो आएगा तो वो क्या करेगा, मगर लोगों के दरमियान उनकी अपनी तशरी मौजूद थी, और जब वो आया तो सादगी के इंतहाई सादा तरीके से आया, और कलीसिया के तमाम ग्रोह उससे ठोकर खा गए। क्या ये सच है? और वहाँ उन लोगों को ऐसा सिखाया गया था। एक शख्स उस वक्त तक उस्ताद या काहिन नहीं बन सकता था जब तक वो लावी की नस्ल से पैदा ना हुआ हो, और सिर्फ सोचें कि उसका पर दादा एक काहिन होता था, वो ठीक कलाम के मुताबिक दिन रात हैकल में रहता था, जिस तरह कैथोलिक काहिन या एक बिशप होता है जो नस्लों से फला फला कलीसिया में से खिदमत करता हुआ आता है, और वगैरह वगैरह। जैसे लोग कहते हैं कि मेरा परदादा और दादा मेथोडिस्ट का बिशप था, मेरा दादा एक बिशप था, और वगैरह वगैरह, समझे। उन सबको कलाम के मुताबिक दुरुस्त रहना होता था, लेकिन उन्होंने उसके लिए अपने तरीके बना रखे थे, और उनकी औलाद ने उन्हें उसी तरीके से कबूल कर लिया था जिस तरह से उनके बाप दादा ने उन्हें सिखाया था, यहाँ तक कि उनके बाप दादा ने हकीकी राह से हटकर सिखाया था, और उन्होंने उसमें से फला फला तंजीम बना ली थी, हत्ता कि जब रूल कुदूस ने उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की तो वो उसको कबूल ना कर पाए। और आज भी बिल्कुल वही चीज मौजूद है। मेरा मतलब ये नहीं कि गुस्ताखी करूं, मगर ये सच्चाई है, आज भी बिल्कुल वही चीज मौजूद है। उन्होंने कलाम को नहायत ही पचीदा बना दिया है, और किसी दूसरी राह पर फिर गए हैं, और वो अपनी बातें सिखाते हैं, जैसा कि बयान किया गया है कि खुदा के कोई पोते नहीं हैं। आप इसको जानते हैं, खुदा के सिर्फ बेटे और उसकी बेटियां हैं, लेकिन उसके पोते और पोतियां नहीं हैं। हर शख्स को एक जैसी कीमत चुकानी है, और एक जैसी राह से आना है, जैसे आपके वालिद ने किया, आपको भी वैसे ही करना लाजिम है। बस अब वो नहायत ही सादा था, जब वो मसीहा जिसके मुतल्लिक 4000 साल पहले ही हर नबी ने बता दिया था, दाऊद ने और बाकी सब ने उसकी तमजीद की, और जब वो आया तो लोगों ने अपने ख्यालात तख्लीक कर रखे थे, उसको क्या करना है और वो क्या करने वाला है, इसके बारे में सब कुछ समझा दिया गया था, और सब कुछ चार्टों पर बना दिया गया था। लेकिन जब वो आया तो वो नहायत ही सादा तरीके से आया, उसने उनकी थियोलॉजी को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। देखें, उनको इसका पता भी ना चला, वो कलाम के ऐन मुताबिक आया। अब क्या आप ईमान रखते हैं? खुदा ने नबियों के वसीले से कलाम किया था कि मसीहा फला फला तरीके से आएगा। ये बड़े ही दुख की बात है कि हमारे पास एक और घंटा नहीं है, हम इसमें मजीद जा सकते और इसको बयान कर सकते कि ये कैसे था, समझे। हम सब जानते हैं कि ये कैसे था, ज्यादातर हम में से इस बात से वाकिफ हैं, कैसे खुदा ने फरमाया था कि वो आएगा, और वो कैसे आया। लिखा है, ए बैतलहम, यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, और सब कुछ मौजूद है कि वो कैसे करेगा और वो क्या करेगा, समझे। और फिर भी वो नहायत ही सादा था, जबकि उन आलमों ने उसको इस कदर पचीदा कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने उसे खो दिया। मगर आप जानते हैं कि यीशु कलाम के मुतजाद नहीं आया था, बल्कि वो कलाम के ऐन मुताबिक आया था, मगर उनकी तशरियात के बिल्कुल मुतजाद था, समझे। उसने वही बातें सिखाई जो उनकी आलमाना तरबियत के मुतजाद थी। अब देखें, मिसाल के तौर पर, अब उन्होंने सोचा होगा, यकीनन जब मसीहा आएगा तो वो हैकल में आएगा और कहेगा, कैफा या जो कोई भी सरदार कायन हो, मैं आ गया हूँ, और लाखों फरिश्ते उसको सलामी देंगे, और खुदा फरमाएगा, दोस्तों सब ठीक है, खैर तुम जो जमीन पर हो, तुम हकीकतन एक अजीम कलीसिया हो, तुम मेरे लोग हो, मैं यहाँ बुराई को माकूफ करने लगा हूँ, और आसमान के दरवाजे खुलने लगे हैं, और आज सुबह मैं मसीहा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, और मैं उसे फला फला जगह पर उतारूंगा, और तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएं, और फिर कहे डॉक्टर फलां फलां और आप डॉक्टर फलां फलां आप सब आगे खड़े हो जाना ताकि आप उसे पहले मिलें और सलाम करें। अब शायद ऐसा ही है जो वो आज भी सोच रहे हैं। अब मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा सा सख्त है, मगर मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ इसको इसी तरीके से होना है, और अगर ये इस तरीके से नहीं आता तो ये दुरुस्त नहीं है, फिर ये मुखालफ मसीह है। समझे, अगर ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं आता तो फिर ये मुखालफ मसीह है। आप गौर करें, बस ऐसा नहीं होगा और बस ऐसा होगा, और फिर अगली बात उसका इस्तकबाल लाखों फरिश्ते अपने बैंड के साथ करेंगे, और वो वहाँ उस सहन में उतरेंगे जो सुलेमान की हैकल है, और हो वहाँ पर उस मुकद्दस सरजमीन पर जहाँ पर मुकद्दसीन और उल्मा ने वफात पाई थी और वगैरह वगैरह। जी हाँ, लेकिन यीशु ने कहा तुम रेयाकार हो, तुम अबलीस की औलाद हो। उसने कहा तुम नबियों की कब्रों को सजाते हो जबकि तुम्हारे अबाओ अजदाद ने उन्हें कत्ल किया। ये ठीक है, ये सच है। देखें कितने ही रास्तबाज और अंबिया तुम्हारे पास भेजे गए और फिर भी तुमने उनमें से हर एक को कत्ल किया। समझे, फिर देखें वो रास्तबाज किसको कहता है, जिनको वो दीवाना और पागल कहते हैं। जी हाँ, उन्होंने इस तरह सोचा था कि मसीहा इस तरीके से आएगा। मगर वो एक चरनी में एक कुंवारी के हां, एक गरीब गुमनाम कुंवारी लड़की के हां पैदा हुआ और एक आम से बढ़ई बाप के जेरे साया परवरिश पाई। गौर करें, ना के सरदार काहिन की बेटी या किसी और के हां पैदा हुआ, बल्कि वो एक गरीब औरत के हां पैदा हुआ जो एक छोटे से गांव में रहती थी जिसे नासरत कहते थे, और वो बस एक रंडवा था जिसकी बीवी मर चुकी थी और उसके कुछ बच्चे थे, और वो यूसुफ था, और उससे उसकी मंगनी हुई थी, और उसका आगाज ही एक बुरे नाम से हुआ। लोग कहते थे वो नाजायज तरीके से पैदा हुआ है। ओ मेरे खुदाया, इस बात ने उनके बरम को रेजा रेजा कर दिया। समझे, उनकी तालीमी इखलाकियात के जाब्ते ने उसको हजम ना किया और उनके कलाम की तफसीर में इसकी कोई गुंजाइश ना थी, लेकिन फिर भी वो खुदावन यूं फरमाता था, ओ मेरे खुदाया। मैं इसको सोचकर और देखकर कि वही बात दोबारा वाकया हो रही है कांप जाता हूँ, इसलिए कि खुदा तब्दील नहीं हो सकता। अब देखें 12 बज चुके हैं, क्या आप मुझे सिर्फ क्या मैं रोक दूं या फिर आपका शुक्रिया। देखें बस थोड़ा सा और रह गया है, बैठे रहें। अब देखें क्योंकि मैं ये आने वाले पैगाम की बुनियाद रख रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी छोड़ दूं, शायद अगले 10 या 15 मिनटों में हम ऐसा कर पाएं। खुदा आपको बरकत दे। अब गौर करें, ये नहायत ही सादा था उनके लिए। ये ऐसा था कि उन्होंने उस निशान को खो दिया, मगर खुदा ठीक निशाने पर था। देखें, वो कलाम के मुताबिक निशाने पर था, वो बिल्कुल उसी तरीके से आया जैसे खुदा ने कहा था, लेकिन उसके मुतालिक उनकी तफसीर गलत थी। मूसा के जमाने में रहाई बख्शने वाले के मुतालिक तफसीर गलत थी, नूह के जमाने में उनकी तफसीर गलत थी। गौर करें, लेकिन खुदा अपने कलाम के मुताबिक आता है। और फिर यीशु आ मौजूद हुआ और उसने वो बातें सिखाई जो कि उनकी तालीम के मुतजाद थी। कहते थे अगर तू मसीहा है तो फलां फलां काम कर, आप समझे, अगर तू मसीहा है तो सलीब से उतरा और हमें दिखा। समझे, खुदा लोगों से मस्करा नहीं करता है, बल्कि खुदा सिर्फ वही काम करता है जो उसकी नजर में रास्त और खुशनुमा होता है। वो सोचते थे कि ऐसे शख्स को जरूर ही फरिश्तों की सलामी के साथ आना चाहिए, लेकिन वो एक अस्तबल में पैदा हुआ और ये उनकी अपनी चमकती इखलाकियात के हिसाब से नहायत ही मजाका खेज बात थी, और आम लोगों के लिए भी कि वो सोचें कि कादरे मुतलिक खुदा, अजीम कादरे मुतलिक यहोवा जो कायनात का मालिक है और जिसने सब कुछ तख्लीक किया है, वो अपने बच्चे के लिए भी जगह तैयार नहीं कर पाया कि वो किसी गाय के बाड़े में गोबर के ढेर के पास पैदा होने की बजाय एक अच्छी जगह में पैदा होता। ये कैसे हो सकता था, समझे, ये क्या था, खुदा सादगी में था, और यही वो बात है जो उसको इस कदर अजीम बनाती है। देखें, उनकी तालीमी इखलाकियात कभी भी खुद को इतना कमतर नहीं कर सकती थी। देखें, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सके थे, मगर खुदा इतना अजीम है कि वो खुद को इतना नीचे ले आया कि उसके पास उसके अपने बेटे के लिए भी कपड़े ना थे। इस पर जरा सोचें। और इस दुनिया में, बल्कि सराय में भी उसके लिए जगह ना थी, और वो गाय की चरनी में पैदा हुआ, एक छोटी सी तंग और एक छोटी सी खो जो के पहाड़ी के पिछले हिस्से में थी, और वहाँ घास फूस के बिस्तर पर खुदा के बेटे ने जन्म लिया। ओ, ये बात उनकी सोच से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। और उसकी माँ को माँ बनना था, मगर वो पहले ही माँ बन गई थी। हो, और वो शादी से पहले मंगनी में ही माँ बन गई थी, समझे? उसने माँ बनना था और लोगों ने ये देखा और जानते थे कि ये इस तरीके से हुआ है, और मरियम अपने दिल में जानती थी कि क्या हो रहा है, और यूसुफ भी नहीं समझता था। लेकिन खुदावंद के फरिश्ते ने रात को उसके पास आकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से ना डर, उसमें कोई बुराई नहीं है, जो कुछ है वो रूह कुदस की कुदरत से है। इस बात ने मसला हल कर दिया। वो शख्स यूसुफ खुदा के साथ इस कदर जुड़ा हुआ था कि खुदा ने उसके साथ बात की। लेकिन आज हमने अपनी आलमाना चादर को अपने गिर्द इतना ज्यादा लपेट रखा है कि हमें कुछ सुनाई ही नहीं देता, मास्वाय उसके जो हमारी तंजीम के आलम बताते हैं जिससे हम तल्लुक रखते हैं। मैं ज्यादा दुरुस्त होना या तनकीद करना नहीं चाहता हूँ, लिहाजा मैं इसको यहीं पर छोड़ देना चाहता हूँ। गौर करें, मगर आप समझ गए हैं कि मेरा क्या मतलब है। गौर करें, वो चरनी में उन चमकते आलमों के लिए बेबसी की तस्वीर थी। हत्ता कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने कहीं एक दिन भी स्कूल में गुजारा हो, मगर तो भी 12 साल की उम्र में वो सादा सा बच्चा हैकल के अंदर अपनी बातों के सबब से उन कहानियों की दिलचस्पी का महवर बना हुआ था। ओ मेरे खुदाया, ये क्या था? खुदा खुद को छुपा रहा था। अब मैं ईमान में काफी भरपूरी महसूस कर रहा हूँ। खुदा ने खुद को चरनी में छुपा रखा था। खुदा ने खुद को एक नन्हे बच्चे में छुपा रखा था, समझे? तवज्जो दें, देखें, अगरचे थोड़ी देर के बाद वो उसे जाहिर करने वाला था, उसे ऐसा करना था। जब वो गली में निकलता होगा तो कोई शक नहीं, दूसरे वालदेन अपने बच्चों से कहते होंगे, उस बच्चे के साथ मत खेलना, उस बच्चे के साथ कोई ताल्लुक ना रखना, उसकी माँ एक कस्बे की तरह है, समझे? और इससे कबल के माँ और बाप शादी के बंधन में बंधते, वो बच्चा पैदा हो गया था, वो औरत माँ बन गई थी, इसलिए उससे कोई ताल्लुक ना रखना। मरियम क्या सोचती थी? लेकिन बैरूनी सोच जैसी भी थी, मगर वो इन बातों को दिल में रखकर गौर और फिक्र करती थी। उन दोनों ने ऐसी बातों को अपने दिल में छुपा रखा था, वो दोनों जानते थे, इसलिए वो उसके मुतल्लिक कुछ गलत नहीं कह सकते थे। बाज़ुकात खुदा अपने बंदे को कहता है, अपने इत्मीनान को थामे रह, इसके मुतल्लिक कुछ मत कह। मेरा कुछ ऐसे लोगों से इबादत में वास्ता पड़ा है जो कहते हैं, अच्छा अगर आप खुदा के खादम हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ क्या होने वाला है। यकीनन मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या होने वाला है, मगर फिर आप क्या कर सकते हैं जब खुदा फरमाता है कि अपने इत्मीनान को थामे रह, इसके मुतल्लिक कुछ न कहना। एक दिन कुछ लोगों से बात हुई और उन्होंने एक किताब में से कुछ दिखाया। मैंने सालों पहले कुछ कहा था, मैंने कहा, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम इसको समझ नहीं सके थे। मैंने कहा आप वहाँ इसे देखें, ये यहाँ पर पीछे है, उस पर तारीख और सब कुछ लिखा हुआ है कि वो वहाँ किस तरह वाकया होगा। बहुत सारे लोगों ने इसको इस किताब में देखा था। मैंने कहा था ये इस तरह वाकया होगा और इस तरीके से ये होगा। मुझसे पूछा गया, अच्छा तो फिर आपने इसके मुतल्लक क्यों कुछ नहीं कहा था? उसका सबब उसको इस तरीके से होना था, समझे? यूसुफ भी मुख्तलिफ तौर से जानता था, क्योंकि वो जानता था कि उस बच्चे का ताल्लुक किससे है। मरियम भी जानती थी कि वो बच्चा किसका है, और यीशु भी जानता था कि उसका बाप कौन है। उसने क्या कहा था? मुझे अपने बाप का काम करना जरूर है, ना कि लकड़ियों को काटना और दरवाजों को बनाना, बल्कि उसे अपने बाप का काम करना जरूर था। आमीन। उसने ये बात अपनी माँ से भी कही थी, क्या तू नहीं जानती ये मेरा वक्त है, क्योंकि मुझे अपने बाप का काम करना जरूर है। अब उन्होंने सोचा ये छोटा सा घबराया हुआ बच्चा है, और किसी भी तरह कोई भी नाजायज बच्चा एक किस्म का अनोखा और अजीब होता है। ये आपका मकाम है, लेकिन देखें खुदा ने खुद को छुपाया हुआ था। सुने, खुदा ने अपने आप को उसमें छुपाए रखा था, जिसके मुतालिक दुनिया की सोच ये थी कि वो नाजायज, धोखेबाज और गलाजत है। गौर करें, खुदा अपने आप को मरे हुए बीज की आलूदगी में छुपाता है ताकि उसमें से जिंदगी पैदा करे, समझे? क्या आप इसको समझ गए? खुदा अपने आप को एक सादा सी गरीब सी खातून में छुपा लेता है, या किसी आम से आदमी में जो अपने दोपहर के खाने को पौने में बांधकर अपनी बीवी और बच्चों को चुमता और खुदा हाफिज कहकर बाहर काम पर चला जाता है, और शायद खुदा उसमें खुद को जाहिर करके कोई ऐसा काम करे जिसके मुतालिक बड़े बिशप साहब को कोई इल्म ना हो, समझे? वो तो बगैर नरसिंगे फूके किसी को बाहर भेज देता है ताकि खुदा को जलाल मिले। बस ये बात है, सादा दिल उसको सुनते हैं और खुश होते हैं। देखें, अब देखें, खुदा अपने आप को उस बच्चे की सादगी में छुपाए हुए था। वो खुद को उस एक मामूली से घराने में छुपाए हुए था, और वो खुदा था, और उस जमाने के आलिम और अजीम लोग, जहीन, फहीम और दाना लोग, और हेरोदीस, और उस जमाने के नीरो और वो सब और वगैरह वगैरह उसको पहचानने में नाकाम हो गए थे, लेकिन खुदा सादगी में छुपा हुआ था। अब जल्दी करते हैं, यशायाह 40 में यूहन्ना अस्तबागी को देखते हैं। अगर आप चाहें तो हम इसे भी ले सकते हैं, मलाकी 3। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप सब इस पर निशान लगा लें। यशायाह 40, आप सब जानते हैं, ये तसल्ली के मुतल्लिक बात करता है, जैसा कि शायद ये अच्छा होगा कि मैं इसको पढ़ लूँ। क्या आपके पास वक्त है? आए, इसको सिर्फ एक मिनट के लिए पढ़ते हैं। हम यशायाह की किताब के 40वें बाब को खोलेंगे और यहाँ पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो इसके मुतल्लिक क्या कहता है। यहाँ देखें, तसल्ली दो, मेरे लोगों को तसल्ली दो। अब याद रखें, ये 712 साल पहले कहा गया था। देखें, वहाँ सुर्खी पर ध्यान दें। देखें, उसके पैदा होने से 712 साल पहले एक नबी उसके मुतल्लिक बयान कर रहा था। तसल्ली दो, मेरे लोगों को तसल्ली दो, तुम्हारा खुदा फरमाता है। यरूशलम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए, उसके गुनाह का कफारा हुआ और उसने खुदावन के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला तो चंद पाया। उसकी आवाज, पुकारने वाले की आवाज, बियाबान में खुदावन की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदावन के लिए शहरा हमवार करो, हर एक नशीब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाए। ओ मेरे खुदाया, मेरे खुदाया, उसे किस किस्म का शख्स होना था, समझे? अब मेरे साथ मलाकी की किताब खोलें, जो कि आखिरी पुराने अहदनामे में नबियों की आखिरी किताब है। अब मलाकी में गौर से सुनो, मलाकी ने इसको आखिरी जमाने के लिए चुना है, बस आप इसको मत भूलें। मलाकी 3 बाब, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हाइकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है। अब ये भी यूहन्ना के मुतल्लक ही कहा गया है, देखो मैं अपने रसूल को अपने आगे भेजूंगा और वो राह दुरुस्त करेगा। यीशु ने मत्ती 11:10 में इसके मुतल्लिक बयान किया है, उसने कहा, अगर चाहो तो मानो, ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ, समझे? ये दुरुस्त है। अब देखें, ये सब कुछ कैसे बयान किया गया, जबकि 700 साल पहले ही बता दिया गया था कि मसीह के आने से कबल एक पेशरू को भेजा जाना है, मगर जब वो उस सादगी में जाहिर हुआ तो उन्होंने उसे खो दिया, उन्होंने उसे खो दिया। अब याद रखें कि वो एक काहिन का बेटा था। खैर, ये उसके लिए कैसा नामाकूल लगता है कि वो अपने बाप की जगह को पूर्ण ना करे। उसे सेमिनरी में जाना चाहिए था, मगर उसका काम उससे बहुत ज्यादा अजीम था। 9 साल की उम्र में वो बियाबान में चला गया और वो लौट कर आया और मुनादी करने लगा, मगर उन्होंने उसे खो दिया। वो उनकी आला तरबियत शुदा तालीम की निस्बत बहुत ही ज्यादा सादा था, बल्कि नहायत ही सादा था कि वो उस पर यकीन कर पाते कि ये वही है। उन्होंने उस शख्स के आने के मुतालिक कुछ और ही सोच रखा था। इस बात के मुतालिक क्या ख्याल है कि हर एक ऊंची जगह पस्त की जाए और हर एक पस्त जगह ऊंची की जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाए। दाऊद ने उस पर निगाह की और कहा कि पहाड़ मेंढों की तरह उछले और पत्तों ने तालियां बजाई। क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? एक खस्ता हाल दाढ़ी वाला शख्स, गैर तालीम याफ्ता और बेड़ की खाल का लिबास पहने हुए यहूदिया के बियाबान से ये कहते हुए जाहिर हुआ, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और ऐसे सांप के बच्चों, इस ख्याल में ना रहो कि मैं फलां तंजीम से ताल्लुक रखता हूँ, क्योंकि खुदा इस काबिल है कि वो इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है, मेरे खुदा। उन्होंने कहा, अच्छा ये वो शख्स नहीं है, हम जानते हैं ये वो नहीं है, लेकिन ये वही था। गौर करें, वो राह साफ कर रहा था, समझे? यही वो वक्त था जब ना हमवार राहें हमवार की गईं, उस वक्त ही ऊंची जगह नीची की गई। ये मत सोचो कि इब्राहिम तुम्हारा बाप है, मुझे ऐसी बातें मत बताना शुरू करो, क्योंकि खुदा इस काबिल है कि इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। उस वक्त ऊंचे मकाम नीचे किए गए। ओ मेरे खुदाया, ये बात है। जी हाँ, फर्क देखें, उसने वही कहा जो होने वाला था। और जब वो आए तो उन्होंने सोचा, ओ मेरे खुदाया, अगर वो उनकी अपनी तंजीम से आया होता तो उसको जरूर कबूल कर लेते, लेकिन देखें, वो इंतहाई सादगी में जाहिर हुआ था। हालांकि कलाम की तफसीर बताती है कि ऊंचे मकाम नीचे किए गए और ये वही था, लेकिन वो उसको कबूल करना नहीं चाहते थे। नौजवानों, उसने उन्हें साफ कर दिया था, उसने उनके छुपे राज खोल दिए थे। उसने कहा, ऐ सांप के बच्चों, घास में छुपे हुए सांप, मैं तुम्हें बताता हूँ, दरख्त की जड़ पर कोल्हाड़ा रखा हुआ है और हर दरख्त जो फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है और आग में डाल दिया जाता है। बेशक मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा और उसका छाज उसके हाथ में है। वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, वो अपने खित्ते बल्कि गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा मगर भूसे को आग में जलाएगा। आमीन। यही वो मकाम था जब ना हमवार जगह हमवार की गई तो जो करे, मगर लोग उसको नहीं समझ पाए थे। लेकिन ये बात बिल्कुल कलाम के मुताबिक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कलाम ने बयान किया था। बहुत ही सादा था, जिसे उन्होंने खो दिया था, उन्होंने उसे देखते हुए भी खो दिया था। आप कभी भी उस तरह नाबीना मत हो, समझे? आप कभी भी उस तरह नाबीना मत हो। बस अब गौर से सुनो, उन्होंने उसको खो दिया था इसलिए कि वो नहायत ही सादा था और लोग ऐसे शख्स को पहचानने में नाकाम हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने उसे खो दिया। फिर ये क्या था? खुदा जो के कलाम है, वो सादगी में छुपा हुआ था, ना कि एक काहिन जिसका कॉलर मुड़ा हुआ होता है, जो जहीन और तालीम याफ्ता होता है। यीशु ने उनसे यही बात पूछी थी। उसने कहा, तुम बाहर क्या देखने गए थे? जब यूहन्ना के शागिर्द उसके पास आए थे, उसने कहा, तुम क्या देखने गए थे? क्या तुम ऐसे शख्स को देखने गए थे जिसने काहिन का लिबास पहना हुआ हो या खूबसूरत कपड़े पहने हुए कोई शख्स हो? आप जानते हैं, उसने कहा, क्या वो इस किस्म का मुनाद था? उसने कहा, क्या तुम इस तरह के शख्स को देखने गए थे? उसने कहा, नहीं। आप जानते हैं, इस तरह के लोग मुर्दों को दफनाते और बच्चों को चूमते हैं, लेकिन वो मैदान जंग में दो धारी तलवार के मुतालिक कुछ भी नहीं जानते थे। आप जानते हैं, वो तो खूबसूरत बातों के साथ बाहर निकलते हैं, जैसे कि कोई केवानेस क्लब या कोई ऐसा और अदारा हो, वो उसी में खुश रहते हैं। लेकिन जब बाहर जंग में आते हैं और उसका सामना करना पड़ता है, तो उनको उसके मुतालिक कुछ मालूम नहीं होता है, इसलिए कि वो तो ऐसे बादशाहों के महल में रहे हैं और इसी किस्म के मशहूर लोगों के साथ बेवकूफ बने रहते हैं। उसने कहा, फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या तुम हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे? एक शख्स को जो कह सकता है। किसी शख्स ने कहा, आप जानते हैं, आप वदानियत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर आप असेंबलीज में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या करूंगा। हम ऐसा करेंगे, मेरा ईमान है, मैं ऐसा कर लूंगा। हाँ, एक हिलता हुआ सरकंडा, ना कि यूहन्ना। नहीं 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 नहीं, अगर तुम हम में शामिल हो जाओ तो एक सदूकी बन जाओगे और फरीसी ना रहोगे या कुछ और बन जाओगे, तो फिर क्या देखने गए थे? तुम किसी हिलते हुए सरकंडे को नहीं देखने गए थे। नहीं, यूहन्ना हिलने वाला सरकंडा नहीं है। नहीं भाई साहब, नहीं। उसने कहा, फिर तुम क्या देखने गए थे? एक नबी को? देखें, ये नबी ही हो सकता था जो ये कर सकता था। उसने कहा, अब देखें, ये नबी की निशानी थी। गौर करें, खुदा का कलाम उसके साथ था, क्योंकि कलाम नबी पर नाजिल होता है, समझे? उसने कहा, तुम क्या देखने गए थे? एक नबी को? उसने कहा, हाँ, ये दुरुस्त है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बढ़ के, क्योंकि वो नबी से बढ़कर था। वो नबी से क्यों बढ़कर था? क्योंकि वो अहद का पैगंबर था, यकीनन वो था। वो शरीयत और फजल के दरमियान एक पुल था, क्योंकि वो वहाँ एक बुनियादी पत्थर था जिसके मुतल्लिक पहले से बता दिया गया था। उसने कहा, अगर तुम उसको कबूल कर लो तो ये वही था जिसके मुतल्लिक नबी ने कहा था, देखो मलाकी 3 में, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा, गौर करें, और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, समझे? ओ, वो नहायत ही सादा था। खुदा एक बार फिर सादगी में छुपा हुआ था। फिर गौर करें, उसने क्या किया था? उसने अजीम मसीहा की आमद की खबर दी। उसका छाज उसके हाथ में है। देखें, वो अपने खित्ते को तैयार कर रहा है। जवानों, मेरा मतलब है, वो अपने खित्ते को खूब साफ करेगा। वो भूसे को लेगा और उसे बाहर फेंकेगा ताकि उसको भी जलाया जाए। ये दुरुस्त है। वो गेहूं को इकट्ठा करेगा ताकि उसे खित्ते में जमा करे। गौर करें, वो तहरीक से मामूर था, मगर जब यीशु आया तो वो लोग किसी और चीज के मुंतजिर थे। आप जानते हैं, वो सब रसूल, वो सब लोग किसी जोरावर चीज के मुंतजिर थे। मेरे खुदाया, मेरे खुदाया, हो वो आ रहा है। उसके मुतालिक बस यही सोच थी, जवानों वो जोरावर होगा और वो रोमियो को जमीन से जोरे बाजू से मार देगा। मेरे खुदाया, जब वो आएगा तो वो यूनानियों को इस तरफ और रोमियो को उस तरफ मार डालेगा। और जब वो आया तो वो एक अदना खाकसार शख्स था जिसको एक तरफ से दूसरी तरफ धकेल दिया गया। ये क्या था? खुदा अपने आप को सादगी में छुपा रहा था। ओ मेरे खुदाया। फिर वो अपने पैगाम के इख्तिताम पर खड़ा हुआ और कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? क्योंकि जो कुछ बाइबल कहती है वो मैंने किया, और अगर मैंने अपने बाप जैसे काम नहीं किए तो फिर मुझे इल्जाम दो, क्योंकि जो कुछ कलाम कहता है मैंने वो किया। क्या मैंने वो नहीं किया? आप जानते हैं, बेएतकादी गुनाह है। कौन मुझ पर इल्जाम लगा सकता है? अगर मैं बदरुहों को खुदा की मदद से निकालता हूँ तो मुझे दिखाओ तुम उसके मुतालिक क्या कर रहे हो। सादगी देखें, हत्ता के अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, मगर हो उस ईस्टर की सुबह, हालेलुया, यही वो बात है जहाँ उसने अपने खलियान को साफ किया। मेरे भाई, दर हकीकत उसने भूसे को उड़ा दिया। जी हाँ, यही हकीकत है। और गेहूं पर खित्ते में मोहर कर दी, और हम जमीन पर पड़े हुए हैं और अब्दी जिंदगी हमारे अंदर है। और खुदावंद के उस अजीम दिन के मुंतजिर हैं जब हमें पुकारा जाएगा और जब वो जिंदगी जिंदगी पर आ जाएगी और हम क्यामत में जी उठेंगे और उसके साथ हवा में उड़ेंगे और खित्ते में जमा किए जाएंगे और भूसा जला दिया जाएगा और वो छिलके जो हमारे इर्द गिर्द लिपटे हुए थे और हमको इस हिम्मत और उस हिम्मत खींचते थे ना बुझने वाली आग में जला दिए जाएंगे। आमीन। हो क्या वो अजीम खुदा नहीं है? खुदा सादगी में मौजूद था मगर उन्होंने उसे खो दिया। क्यों? क्यों? इसलिए कि उसने मजहबी कलीसियाई तर्ज की मुनादी नहीं की थी। उसने ऐसा कभी नहीं किया था। उसने एक मुनाद की तरह कभी मुनादी नहीं की थी, समझे? उसने ऐसे मुनादी की, उसने खुदा की सादगी वाली जुबान इस्तेमाल की थी, सादा जुबान, जैसे कि कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जैसे कि दरख्त, जैसे कि सांप, ना कि एक सेमिनरी के उस्ताद की माने, जैसा कि इन दिनों के कलीसियाई आलम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इल्मे इलाहियात के डॉक्टर, जैसे डॉक्टर फला फला। उसने ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसने एक जंगली आदमी की माने जो कि जंगल से निकलकर आता है मुनादी की। उसने कुल्हाड़े और दरख्तों और सांपों और ऐसी ही चीजों और गेहूं और खित्ते और ऐसी चीजों के मुतालिक बताया। मेरा ख्याल है कि उस दौर में उसे कदमों पर खड़ा रहने वाला मुनाद कहा जाता था, क्योंकि वो यर्दन के किनारे खड़ा ही रहता था। यकीनन खुदा सादगी में था और दुनिया की हिकमत से छुपा हुआ था। आए अब जरा इस बात को देखते हैं। यीशु ने कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने ये बातें दुनिया के अकलमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की, समझे? खुदा सादगी में यानी मसीह में छुपा हुआ था, खुदा सादगी में यानी यूहन्ना में छुपा हुआ था, समझे? जरा गौर करें, वो ही था। जरा इस बात के मुतालिक सोचे, खुदा सादगी में मौजूद है और वो खुद को दुनिया की हिकमत से छुपाता है। अब हम जल्दी एक या दो मिनट में खत्म करेंगे क्योंकि मैं आपको मजीद और रोकना नहीं चाहता। ध्यान दें, आए एक मिनट रुकें, कोई जाती बात कहना चाहता हूँ। जरा इस दिन के मुतालिक सोचे जिसमें हम रह रहे हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। इस दिन के मुतालिक सोचे जिसमें हम रह रहे हैं, जबकि खुदा इतनी छोटी सी नाचीज सी जगह में जहाँ हम रह रहे हैं उतर आया है ताकि बीमारों को शिफा दे। मगर अमीर और आला रुतबा लोग और आला तलीम याफ्ता लोग कह रहे हैं मौजजात के दिन गुजर चुके हैं, इलाही शिफा जैसी कोई चीज नहीं है। आपको वो पैगाम याद है जो मैंने ठीक इस जगह पर दाऊद और जाति जूलियत के मुतालिक एक सुबह सुनाया था जब मैं यहाँ से रवाना हुआ था, और मुझे कहा गया था, भाई ब्रहनम, आप कैसे इस थोड़ी सी पढ़ाई के साथ पढ़ी लिखी दुनिया का सामना कर पाएंगे? मैंने कहा था, मुझे नहीं पता मैं कैसे इसका सामना कर पाऊंगा, लेकिन खुदा ने कहा है जा, समझे? देखें, ये बात काफी है, ये उसका कलाम है, उसने वादा किया है और वो वक्त आ पहुंचा है। जब वो फरिश्ता जिसे आप उस तस्वीर में देखते हैं, जो उस दिन दरिया के किनारे जाहिर हुआ था, जिसको इस आने वाले जून में 30 साल, बल्कि इस आने वाले जून में 33 साल हो जाएंगे, उसने कहा था जैसे यूहन्ना अस्तबागी को भेजा गया था, ये बात 5,000 या इससे भी ज्यादा लोगों की मौजूदगी में हुई थी। उसने कहा, अब वक्त आ पहुंचा है कि तेरा पैगाम दुनिया में फैल जाए। अगर आप में से कोई वहां था तो आपको याद है कि किस कदर तनकीद की गई थी। मेरा ख्याल है कि रॉय स्लॉटर या उनमें से कुछ यहां बैठे हुए हैं, शायद इन्हें वो दिन याद होगा, या कुछ और लोग भी हैं जैसे मिसेस स्पेंसर या जो कोई भी है, उनमें से कुछ पुराने लोग यहां बैठे हुए हैं जिन्हें मालूम है, समझे? जॉर्ज राइट या उनमें से कुछ ने देखा था और जानते हैं कि ये कैसे हुआ था। क्या उसने ऐसा नहीं किया? उसने ऐसा किया। और फिर उस दौरान जब वो मुखालिफ हो गए थे तो कहने लगे, ये तो सिर्फ दिमागी ख्याल है, और खुदा मुड़ा और उसने एक बूढ़ी बेजुबान जानवर अपोसम को वहाँ भेजा था और खुदा की कुदरत से उसको शिफा मिली। लाइल वुड और बैंक्स जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो खुदा ने सच्चाई को साबित किया था। जब एक छोटी सी दरियाई पानी की मछली पानी के ऊपर पड़ी हुई थी और रुल्कदूस ने एक दिन कबल ही बता दिया था कि वो उन्हें अपना जलाल दिखाने जा रहा है और कुछ करने जा रहा है, और सुबह जब हम कश्ती में थे तो पाकरू वहाँ उतर आया और मैंने उस मछली को उठाया और उससे कहा, जबकि वो पानी में आधे घंटे से मुर्दा पड़ी हुई थी क्योंकि उसके गलफड़े और आंते मुंह से बाहर निकल आई थी और उसमें जिंदगी फिर लौट आई थी और वो अच्छी तरह से तैरने लगी जैसे कोई दूसरी मछली तैर सकती है। ये क्या था? खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है। खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा करने के काबिल है। खुदा एक जानवर अपोसम को या एक मछली को या किसी भी चीज को शिफा दे सकता है, और अगर वो अपना पैगाम नाजिल करे और लोग उस पर ईमान ना लाए तो वो एक जानवर अपोसम को उठा खड़ा करेगा कि वो उस पर ईमान लाए। हालेलुया। खुदा एक मुर्दा मछली को जिंदा कर सकता है, वो एक मुर्दा जानवर अपोसम को जिंदा कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो जो कुछ चाहता है कर सकता है। ये इस नस्ल के लिए कैसी बड़ी मलामत है जब लोग इसके सबब से ठोकर खाते हैं और उसके मुतालिक बहस करते हैं और कहते हैं आपने ये या वो नहीं किया था, तो खुदा एक सादा से जानवर को भेज देता है। समझे, कैसी बड़ी मलामत है ये, क्या है ये? खुदा सादगी में है, गौर करें, और अपनी अजमत को जाहिर कर रहा है। ओ मेरे खुदाया, इस नस्ल के लोगों को इनकी बेएतकादी पर मलामत कर रहा है। अब देखें, जैसा उन्होंने हमेशा किया है, अब भी वो यही सोच रहे हैं कि ये सब बातें उनके अपने तरीके से होनी चाहिए। अब इलाही शिफा जैसी कोई चीज है, जैसे एक कैथोलिक शख्स ने मुझसे कहा था, एक दोस्त ने किसी रात मुझे उसके मुतालिक बताया था, आप उसके मुतालिक जानते हैं, उसने कहा ये एड्स है, जिसके बेटे को देखने में हॉस्टन गया था। उसने कहा अच्छा, अब अगर ये खुदा की नेमत है तो इसे कैथोलिक चर्च में आना चाहिए। आपने गौर किया? समझे, जी हाँ, मेथोडिस्टों ने सोचा इसे उनकी कलीसिया में आना चाहिए, और पेंटिकोस्टों ने सोचा इसे उनकी कलीसिया में आना चाहिए, मगर ये उनमें से किसी के पास भी नहीं। ये यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत और उसी के जहूर में आई है, ये सच है, यकीनन वो ऐसा करता है। जी हाँ, सिर्फ उस पर निगाह करें, उसे अपने पास से मत जाने दें, उसको अपने दिल में जगह दें और उसे याद रखें, अपने दिल में उस पर गौर करें, उनके मुताबिक, उसे उनके तरीके से और उनकी तंजीम में होना चाहिए। देखें, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो खुदा की तरफ से नहीं है, ये सिर्फ नफ्सियात है या फिर शैतानी चीज है, ये खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि अगर ये खुदा की तरफ से होता तो फिर उसे उनके अपने तरीके से आना चाहिए था। आप समझे, यानी उस तरीके से जैसे हमने उसकी तफसीर हासिल की होती है, यही वो तरीका है जिससे यीशु को फरीसियों के पास आना चाहिए था, मगर इसको इसी तरीके से होना था। देखें, अगर उनके अगरचे खुदा एक मसीहा भेजने वाला था, मगर उन्होंने पहले ही से उसके मुतालिक तफसीर कर रखी थी कि उसे कैसा होना चाहिए था, और क्योंकि वो फर्क तरीके से आया था, इसलिए वो उनके लिए मसीहा नहीं हो सकता था। वो कोई नाजायज औलाद थी, वो एक बालजबुल था, मगर वो खुदा था जो खुद को सादगी में छिपाए हुए था। वो सोचते थे कि पेशरू को लाजमन एक आला तलीम याफ्ता होना चाहिए, जो उनके खैर, अच्छा, बेशक हर साल एक दिन जब वो, जी हाँ, वो अपने खादमों को मखसूस करते थे और उन्हें मिशनरियों के तौर पर भेजते ताकि वो मजीद शागिर्द बनाए और उन्हें तंजीम में लाए, तो हर कोई सोचता था यही वो पेशरू होगा जो आने वाला था। मगर खुदा ने उसे बियाबान में से उठा खड़ा किया, जहाँ पर कोई सेमिनरी का वजूद भी नहीं था, देखें, और ना ही इस तरह की कोई चीज थी। समझे, खुदा अपने आप को आजसी में और सादगी में छुपाता है। मगर अब इंतजार करें, खत्म करते हुए हम ये कहते हैं कि खुदा के सादा पैगाम को रद्द करना, उसको रद्द करना है, खुदा के सादा तरीके को रद्द करना अब्दी हलाकत है। अब ये कितना ज्यादा अहम है, हम बताते हैं कि ये कितना सादा है, और लोग तसव्वुर करते हैं कि वो इस पर हंस सकते हैं, इसका मजाक उड़ा सकते हैं, और जैसे चाहें वो इसके साथ बर्ताव कर सकते हैं, मगर ये खुदा से अब्दी जुदाई है। वो लोग जो नूह के दिनों में मर गए थे और जिन्होंने उसके पैगाम को कबूल नहीं किया था, वो फना हो गए थे, और जब यीशु मरा तो इससे पेशतर कि वो जी उठता, उसने उनमें जाकर मुनादी की। वो आलमे रवा में उतरा और उन रूहों में जो कैद में थी और जिन्होंने नूह के जमाने में तहम्मुल में तोबा ना की थी, उनमें जाकर मुनादी की, और खुदा का सादा सा पैगाम सादा से शख्स के वसीले बयान किया गया। वो पाताल में उतर गया और उसने कहा, नूह ने बताया था कि मैं यहाँ आऊंगा और मैं यहाँ आ गया हूँ, ये दुरुस्त है। समझे, जब मूसा बियाबान में पैगाम सुना रहा था तो वो लोग उस नबी के पैगाम को सुनने में नाकाम हो गए थे जो उसको खुदा की तरफ से मिला था, जबकि वाजे तौर पर आग के सतून के वसीले साबित किया गया था जो बियाबान में रहनुमाई कर रहा था। और इसके बाद उन्होंने उठने की कोशिश की ताकि एक तंजीम बनाई जाए, और वो सब वहीं बियाबान में मर गए और फना हो गए, और सिर्फ दो आदमी यशुआ और कालिब बचे। और वहाँ वो फरीसी इतने ज्यादा अंधे हो चुके थे और वो उसको देख नहीं पाए थे, बस वो वापस माजी में चले गए और कहने लगे, हमारे बाप दादा ने मन खाया था, उन्होंने बियाबान में मन खाया था, यीशु ने कहा, और वो सब के सब मर गए। उन्होंने खुदा के जलाल को देखा था, वो उसके जलाल की रोशनी में चले थे, वो नूर में चले थे, वो आग के सतून की रोशनी में चले थे, वो उसकी कुदरत की हजूरी में चले थे, वो उन जगह पर चले थे जो रूल कुछ ने उनके चलने के लिए तैयार की थी। उन्होंने वो मन खाया था जो आसमान से नाजिल हुआ था, जो खुदा ने मुहैया किया था, मगर फिर भी वो खो गए और हलाकत में चले गए, वो सब, बल्कि उनमें से हर एक हलाक हुआ। अगर आप उस बात को लेते हैं तो ये खुदा की हजूरी से अब्दी जुदाई थी। लिखा है वो सब के सब हलाक हुए। समझे, हर कोई जिसने यीशु का इनकार किया वो हलाक हो गया। देखे मेरा क्या मतलब है, खुदा की उस सादगी को रद्द करना ये मामूली बात नहीं है। आप कहते हैं खैर मुझसे गलती हो गई थी, आप इसको उस तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए खुदा इसको उस तरीके से कबूल नहीं करता है। आप अब्दी तौर से फना हो जाते हैं, बेहतर है कि हम इसके मुतालिक कुछ सोचें। अब इसकी वाजे तौर पर खुदा की तरफ से शनाख्त होनी चाहिए। देखें, और अगर ये हो जाती है तो फिर ये उसका कलाम है, समझे? हो उनकी मानित ना करें जिन्होंने अपने वक्तों में मूसा को रद्द कर दिया था, एलिया को रद्द कर दिया था और यूहन्ना को रद्द कर दिया था, हत्ता कि उन्होंने अपने दिनों में यस्सू को रद्द कर दिया था। मैं यहाँ आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ और फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज्यादा ठेस नहीं लगेगी, लेकिन तवज्जो दें। किसी दिन मुझे होस्टिन टेक्सास में बुलवाया गया कि वहाँ मैं किसी की माफ़ी के लिए कोशिश करूँ और मैं वहाँ लोगों को इकट्ठा करके माफ़ी के हवाले से एक पैगाम की मुनादी करूँ, ताकि वो लोग जो वहाँ पर इकट्ठे हों उनको एक नौजवान लड़के और लड़की को माफ़ी के लिए एक कागज पर दस्तखत करने के लिए तैयार करूँ। आप जानते हैं कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। मेरा ख्याल है कि आप उसके मुतालिक अखबार में पढ़ चुके हैं। और वो मिस्टर आयर्स का सुतेला बेटा था, और मिस्टर आयर्स वो शख्स है जिसने खुदावंद के फरिश्ते की तस्वीर को खींचा था, जिसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। वो एक रोमन कैथोलिक था और उसकी बीवी यहूदी थी, और उसने उस यहूदी लड़की से शादी की थी। वो एक दूसरे के साथ मजहब के बारे में और इस तरह की बातें नहीं करते थे। और टेड कैपरमैन जो के कारोबार में और डुगलस स्टूडियो में उसका शराकतदार था, और जब वो वहाँ पर आया था जहाँ पर मिस्टर बेस्ट, डॉक्टर बेस्ट जो के बैप्टिस्ट चर्च का था, अपना मुक्का भाई बोसवर्थ की नाक के सामने ताने खड़ा था, और उसने कहा था, अब ऐसा करते हुए मेरी तस्वीर उतारो। उसने कहा, मैं इस बूढ़े शख्स की खाल उतार कर इसका तमगा बनाकर इलाही शिफा की यादगार में अपने मुतालिया के कमरे में सजा कर रखूंगा। और इससे कब कि मैं होस्टिन टेक्सास में जाता, खुदावंद खुदा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वहाँ जाऊँ, और मैं खुदावंद के नाम में वहाँ पर मौजूद था। और आप सब उस मुबाइसे और उन चीजों के बारे में जानते हैं जो वहाँ पर वाकया हुई थी। आप उसके मुतालिक किताबों और दूसरी चीजों में भी पढ़ सकते हैं। और ऐसा वहाँ हुआ था, मैं उस रात वहाँ पर था और मैं वहाँ पर पुरसकून और आजिज रहने की कोशिश कर रहा था। क्यों? उन्होंने हमारे बारे में इस तरह कहा था कि ये लोग अनपढ़ बेवकूफ लोगों का ग्रोह है। डॉक्टर बेस्ट ने कहा था, ये लोग अनपढ़ लोगों के ग्रोह के अलावा और कुछ नहीं है। उसने कहा, ऐसे कोई लोग नहीं है जो इलाही शिफा जैसी बेकार चीज पर ईमान रखें, और ये ददकारे हुए लोगों का ग्रोह है। मगर वो नहीं जानता था कि ये खुदा सादगी में छुपा हुआ है। क्यों? उसने कहा कि इस शख्स के पास तो ग्रामर स्कूल की तालीम भी नहीं है। वो शख्स तमाम तरह की तालीम की डिग्रियों से लेस था, हत्ता कि उसने सोचा कि वो भाई बोसवर्थ को किसी भी तरह आसानी से हरा सकता है। मगर जब कलाम की बारी आई तो वो शख्स भाई बोसवर्थ के 10% भी मुकाबले का नहीं था, समझे? और भाई बोसवर्थ जानते थे कि वो कहाँ खड़े हैं, और बहुत सारे लोग उस वक्त वहाँ मुबाइसे के वक्त मौजूद थे जो यहाँ बैठे हुए हैं। और वहाँ ऐसा हुआ था, फिर उस शख्स ने ये कहते हुए हम पर इल्जाम लगा दिया कि हम अनपढ़ बेवकूफ लोगों का टोला है, और साथ ही कहा कि समझदार पढ़े लिखे लोग तो ऐसी बातों पर ईमान नहीं रखते हैं। भाई बोसवर्थ ने कहा, सिर्फ एक लम्हा ठहरे। उसने कहा, इस शहर में कितने लोग हैं? उस रात वहाँ तकरीबन 30,000 लोग हमारी तरह बैठे हुए थे। उसने कहा, इस शहर के कितने लोग हैं जो उन बड़े शानदार बैप्टिस्ट गिरजों में जाते हैं, जो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक साबित कर सकते हैं कि जब से भाई ब्रैनम इस शहर में आए हैं, खुदा की कुदरत से उन्होंने शिफा पाई है। वो खड़े हो जाए, और 300 लोग खड़े हो गए थे। उसने कहा, अब इसके मुतालिक क्या ख्याल है? ये बात थी, खुदा सादगी में छुपा हुआ था। फिर उसने कहा, भाई, उसने कहा, उस इलाही शिफा देने वाले को मेरे सामने लाओ, मैं उसको किसी को हिप्नोटाइज करते हुए देखना चाहता हूँ, और फिर मैं उनकी आज से लेकर एक साल तक निगरानी करूँगा। और टेड कैप और एयर्स वहाँ मौजूद था, और ये वही था जिसने उस तस्वीर को खींचा था। उसने कहा, मिस्टर ब्रैनम, एक हिप्नोटाइजर के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एक औरत को देखा था और इस तरह उसके गले में गुल्लड़ था, और कहा इसने उस औरत को हिप्नोटाइज कर दिया था। अगले दिन मैंने उस औरत से बात की थी और उसको कोई गुल्लड़ नहीं था। उसने कहा, इस शख्स ने इसको हिप्नोटाइज कर दिया था, और हो उसने मुझ पर नालिश की, और उसने कहा कि मुझे इस शहर से भाग जाना चाहिए और उसको इसका करने वाला होना चाहिए। देखें, उसने इस तरह की ढेरों बातें की, और ये सब कुछ होस्टिन क्रॉनिकल्स अखबार के पहले सवे पर सुर्खियों में छपा था। मैंने वहाँ एक लफ्ज भी ना कहा, क्योंकि मैं वहाँ अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करने गया था, और मेरे लिए यही काफी था कि मैं उसके कलाम के साथ मुस्तहिद खड़ा रहूँ। उसने मुझे वहाँ भेजा था, और ये उसी का काम था। उस शब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा, मैं इलाही शिफा देने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अगर कोई ऐसा कहता है, मैंने कहा, तो वो गलत है। और मैंने कहा, मैं इलाही शिफा देने वाला कहलवाना नहीं चाहता। मैंने कहा, अगर डॉक्टर बेस्ट निजात का प्रचार करता है तो वो इलाही निजात दहिंदा कहलवाना पसंद नहीं करेगा। मैंने कहा, तो फिर मैं भी इलाही शिफा का प्रचार करता हूँ, मगर मैं इलाही शिफा देने वाला कहलवाना नहीं चाहता हूँ। और जैसे वो कहता है कि वो इलाही नजात दहिंदा नहीं है और यकीनन वो नहीं है और ना ही मैं इलाही शिफा देने वाला हूँ, लेकिन उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है और मैं तो सिर्फ उसकी तरफ निशानदेही कर रहा हूँ, समझे। इस पर उसने कहा, ये तो बेवकूफी वाली बातें हैं। आप जानते हैं, वो वापस मुड़ गया और मैंने कहा, लेकिन अगर खुदा की हजूरी और उस नेमत के मुतालिक और खुदावंत के उस फरिश्ते के मुतालिक अगर कोई सवाल हो तो उसको साबित किया जा सकता है। तकरीबन उसी वक्त वहाँ वो औरत घूमती हुई आई और उसने कहा, अब इसके मुतालिक बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले ही मेरे बारे में बता चुका है। और मैं बाहर निकल गया और मैं ह्यूस्टन में गया, जो कि एक बड़ा शहर है। वो किसी भी तरह मुल्क के शहरों में एक बेहतरीन शहर है। किसी दिन जब मैं वहाँ पर गया तो वो शहर देखने में नहायत ही गैर मौजब लग रहा था। गलियाँ गंदी थी और वहाँ उस जगह पर टेक्सास एवेन्यू के काउंटर थे और मैं राइस होटल में चला गया जहाँ पर फिल्मी सितारे क्याम करते थे, और वहाँ नीचे तहखाने में उस कैफेटेरिया में चला गया और छत टपक रही थी और प्लास्टर उखड़ा हुआ था। जगह जगह गलाजत और गंदगी थी और वहाँ के मुनादों में इतनी ज्यादा उलझन थी कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। क्यों? इसलिए कि नूर को रद्द करने का मतलब है अंधेरे में चलना, और वहाँ उनके बच्चे मौत की कतार में बैठे हुए हैं। ये सच है, खुदा वहाँ पर उतरा था, खुदा ने अपने आप को सादगी में जाहिर किया था, सादगी वहाँ पर जाहिर की गई थी मगर उसे रद्द कर दिया गया था, और वहीं पर उन्होंने उस तस्वीर को खींचा था जिसने सारी दुनिया में हलचल मचा दी थी। यहाँ तक कि साइंसदानों ने भी कह दिया था कि दुनिया की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जबकि माफूकुल फितरत शय की तस्वीर ली गई हो, और ये तस्वीर वाशिंगटन डीसी में मजहबी आर्ट के हाल में सजाई गई है, फिर उस वक्त वहाँ सादगी में जाहिर की गई, समझे समझे। खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है और फिर खुद को उसी में जाहिर करता है, समझे। अब देखें, उसने अपने आप को मसीह की मौत में छुपाया था और जी उठने की कुदरत में खुद को जाहिर किया था। वो मेरे खुदाया, आप इस जैसी बहुत सारी बातों में देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसका कोई इख्तिताम नहीं है। आप इसके मुतालिक बातें करना जारी रख सकते हैं, लेकिन देखें, आप इस मकाम पर हैं। इस बात का इनकार करना कि सूरज की रोशनी नहीं है सिर्फ इसी सूरत में किया जा सकता है कि आप तहखाने में जाकर अपनी आंखों को बंद करें, और ये बात दुरुस्त है। और याद रखें, आप सिर्फ एक ही सूरत में गलत हो सकते हैं, जब आप पहले दुरुस्त बात को रद्द कर देते हैं, समझे। और अगर आप अपनी आंखें खोलने से इनकार करते हैं तो आप अंधेरे में रहेंगे, समझे। अगर आप देखने से इनकार करते हैं तो आप क्यों कर देख पाएंगे, समझे। सादा चीजों पर ध्यान दें, क्योंकि ये छोटी चीजें होती हैं जिन्हें आप छोड़ जाते हैं। आप बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ने की कोशिश नहीं करते, समझे। ओ मेरे खुदाया, फिर आप यहाँ देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि मत्ती 11:10 में उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मानो, ये वही है, समझे, ये वो है जो मेरे आगे भेजा गया है, और ये सादगी थी। एक दिन उससे पूछा गया और कहा गया, तो फिर फकिया ऐसा क्यों कर कहते हैं। उसने कहा इब्ने आदम यरूशलम को जाता है और मुझे गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा, और वो इब्ने आदम को हलाक करेंगे और वो मर जाएगा और फिर तीसरे दिन जी उठेगा। उसने कहा, उस रोया के मुतालिक किसी को मत बताना जो तुमने ऊपर देखी थी। अब जरा इस पर सोच विचार करें कि वो शागिर्द जो यूहन्ना के साथ रहते थे, उसे बातें करते थे, उसके साथ बियाबान में रोटी खाया करते थे, उसके साथ नदी के किनारे पे बैठा करते थे, उसके बावजूद भी वो ये पूछते हैं, फिर उस्ताद क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। तू कहता है कि तू सलीब पर चढ़ जाने वाला है, तू मरकर जी उठेगा, तू मसीह है जो अपने तख्त पर बैठेगा, अब फकिया क्यों कर और हमारा कलाम क्यों कर कहता है। बल्कि कलाम साफ बताता है कि इससे पहले कि मसीह आए, उससे पहले एलिया आएगा। जी हाँ, समझे। उसने कहा, वो तो पहले ही आ चुका है और तुमने उसे नहीं पहचाना। अब देखें, शागिर्दों ने पूछा, वो कौन था। मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी ठेस पहुँचाना चाहता हूँ, गौर करें, मगर मेरा ऐसा मतलब नहीं है, अगले चंद मिनटों के लिए गौर करें, सिर्फ एक या फिर दो मिनट के लिए। ताहम मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको यकीनी तौर पर समझ जाएं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देखें, क्यों उन लोगों ने जो मसीह के साथ चलते थे पूछा कि नविश्ते क्यों ये कहते हैं कि पहले एलिया का आना जरूर है। ये वो लोग थे जो यूहन्ना के वसीले बदले थे मगर उसको जरा भी नहीं जानते थे, बल्कि पूछते थे कि फिर नविश्ते और उस्ताद क्यों कहते हैं। क्या आप समझ गए हैं मेरा क्या मतलब है, समझे। नविश्ते क्यों कहते थे कि एलिया का पहले आना जरूर है। शागिर्द जो यस्सु के साथ चलते थे पूछते थे कि क्यों उसका इनसे पहले आना जरूर है और वो सब कुछ बहाल करेगा। यस्सु ने तकरीबन आधी दर्जन लोगों के सामने इस बात को बयान किया था और इतने ही लोग उस वक्त उसके साथ थे, समझे? और सिर्फ इतने ही लोगों से उसने इस बात को कबूल करने की उम्मीद रखी थी, क्योंकि इतने ही उसको कबूल करने के लिए मुकर्रर किए गए थे। यीशु ने कहा, वो तो आ चुका है और तुम उसे नहीं जानते हो। हालांकि उसने वही काम किए जो कलामे पाक में बताए गए थे कि वो करेगा, और उसने तुम सबको बहाल किया कि तुम सब ने मुझे कबूल किया और मुझ पर ईमान लाए। उसने बिल्कुल उन्हीं कामों को किया जो पाक कलाम ने बताए थे कि वो करेगा, और लोगों ने भी उसके साथ वही कुछ किया जो कुछ पाक कलाम में लिखा था कि वो उसके साथ करेंगे। वो तो पहले ही आ चुका है, मगर तुमने उसे नहीं पहचाना। क्या आप तैयार हैं? मैं यहाँ आपको एक झटका लगाने लगा हूँ। उठाया जाना भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। ये बहुत ही सादगी से होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, हत्ता के इन्हीं दिनों में, जब तक कि किसी दिन उठाया जाना नहीं हो जाता, कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएगा। अब आप मेरी इस बात से खड़े मत हो जाएं, बल्कि इस पर एक मिनट गौर करें। मैं पुर यकीन हूँ। अब मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूँ। उठाया जाना इतने सादे तरीके से होगा, और अदालत आ जाएगी और वो इब्ने आदम को देखेंगे और वो कहेंगे, क्या इससे पहले फला फला बात नहीं होनी थी? क्या इससे पहले हमारे पास एलिया ने नहीं आना था? क्या इससे पहले उठाया जाना नहीं होना था? यीशु कहेगा, ये सब कुछ हो चुका है और तुमने उसे नहीं जाना। देखें, खुदा सादगी में है, समझे? अब हम इस हफ्ते कुछ गहरी और अनोखी बातों का मुतालिया करेंगे। अब ध्यान दें, उठाया जाना बिल्कुल इसी तरह होगा। दुल्हन में बहुत थोड़े से लोग होंगे। ये इस तरह नहीं होगा जैसे कि, अब देखें कि सिखाने वालों ने कैसे इस बात को बयान किया है। उन्होंने इसके चार्ट बनाए हुए थे। वो सिखाते थे कि 10 मिलियन लोग उठाए जाने वाले हैं, और अगर वो मेथोडिस्ट मुनाद होता है तो वो कहता है कि सारे मेथोडिस्ट लोग उठाए जाएंगे, और अगर वो पेंतिकोस्टल मुनाद होता है तो वो कहता है सारे पेंतिकोस्टल लोग उठाए जाएंगे। ये बात उसको कभी भी नहीं छू पाएगी। उठाया जाना इस तरह से होगा कि हो सकता है कि जेफरसन विल के इलाके से एक शख्स उठाया जाए और वो गायब हो जाए। वो कहेंगे, अच्छा, तुमने कभी उनमें से बाकी किसी को मालूम नहीं होगा। कोई एक शख्स जॉर्जिया से गायब हो जाएगा, समझे? कोई एक शख्स अफ्रीका से उठा लिया जाएगा। हम कहते हैं कि 500 लोग जिंदा होकर उठा लिए जाएंगे। अब देखें, ये कोई कलीसिया का बदन नहीं है, बल्कि ये दुल्हन है। ये कलीसिया नहीं है, ये दुल्हन है, समझे? कलीसिया में से हजारों लोग जी उठेंगे, मगर वो दूसरी क़यामत में जी उठेंगे। लिखा है, जब तक हजार वर्ष पूरे ना हुए, बाकी मुर्दे जिंदा ना किए गए, समझे? अगर दुल्हन के रूप में 500 लोग जमीन से एक ही मिनट में उठा लिए जाएं, तो दुनिया को इसके मुतल्लिक कुछ भी मालूम नहीं होगा। यीशु ने कहा, दो बिस्तर पर होंगे और मैं एक को ले लूंगा और दूसरे को छोड़ दूंगा। ये रात के वक्त की बात है। दो खेत में होंगे, ये दुनिया के दूसरे हिस्से की बात है। मैं एक को ले लूंगा और दूसरे को छोड़ दूंगा, और जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। जरा सोचें, जिस तरह आम तौर से जिंदगी चलती आ रही है, चलती रहेगी। पुरजोश पैगाम सुना दिया गया होगा, और आप जानते हैं जो पहली बात होगी वो कुछ इस तरह होगी कि लोग ये कहेंगे कि वो मुनाद कहीं चला गया था और फिर कभी वापिस नहीं लौटा। शायद वो शिकार खेलने जंगल में गया था और फिर कभी वापिस नहीं लौटा, और फला शख्स कहीं चला गया था, और आप जानते हैं कि उसको क्या हो गया था। मुझे यकीन है कि शायद उस नौजवान लड़की को किसी ने उसको अगवा कर लिया होगा, और जानते हैं उसके साथ ज्यादती करके उसको किसी नदी में फेंक दिया होगा, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं था। उसके आधे 99 में से, बल्कि आप कह सकते हैं 1 करोड़ में से शायद किसी एक को मालूम हो पाएगा। देखें, शायद लड़की का कोई वाकिफकार कहे कि लड़की खो गई है, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि वो कभी इस तरह से कहीं नहीं जाती थी, हरगिज नहीं। जब लोग कहते हैं कि कब्रें खुल जाएंगी, तो कब्रें किस तरह खुलेंगी? जबकि मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है कि हम इस चीज को देख सकें, मगर मैं इसके मुतालिक बताना चाहता था। देखें, मैं इसके मुतालिक बात करने लगा हूँ। मैं आपको खुदा की सादगी दिखाना चाहता हूँ। देखें, वो कैल्शियम और पोटाश और सब कुछ जो भी है, जबकि उस मटेरियल का सब कुछ जो आपके अंदर है, और वो तो सिर्फ एक चमचा ही बनता है। ये सच है। और वो क्या करता है? वो तो सिर्फ रूह और जिंदगी में बदल जाता है। खुदावन सिर्फ कहेगा और उठाया जाना वाकया हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि फरिश्ते आसमान से आकर बेलचे के साथ कब्रों को खोदेंगे और पुरानी और गली सड़ी लाशों को बाहर निकालेंगे। ये क्या है? ये बदन तो इब्तदा ही से गुनाह में पैदा हुआ है, मगर आप जानते हैं, नया बदन बिल्कुल उस जलाली बदन जैसा होगा, समझे? अगर हमें ये पुराना बदन फिर मिलेगा तो हम फिर मर जाएंगे, समझे? कोई नहीं, आप कहते हैं कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे निकल आएंगे। हो सकता है ये सच हो, मगर ये उस तरह नहीं खुलेंगी जैसे आप कहते हैं खुलेंगी, समझे? ये सच है, समझे? लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, ये बहुत ही पोशीदगी में होगा। उसने कहा था कि वो रात को चोर की मानिंद आएगा, वो हमें इसके मुतालिक यानी उठाए जाने के मुतालिक पहले ही बता चुका है। इसके बाद अदालत होगी, गुनाह, बीमारियां, आफतें और सब कुछ उन पर आन पड़ेगा। अदालत के वक्त लोग मौत को पुकारेंगे ताकि वो उन्हें दबोच ले, कहेंगे खुदावन ये अजाब हम पर क्यों नहीं नाजल हो गया जबकि तूने कहा था कि पहले उठाया जाना होगा। वो कहेगा वो तो पहले ही हो चुका है और तुम्हें मालूम भी नहीं हुआ। समझे, खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है। ओ मेरे खुदाया, ठीक है ये सब तो पहले ही हो चुका है और तुमने इस बात को नहीं जाना। क्यों ईमानदार उसकी आमद के सादा से निशानों पर यकीन नहीं करते हैं? वो इन सब बातों के मुंतजिर थे, जैसा कि नविश्तों में लिखा हुआ है कि चांद दिन दहाड़े डूब जाएगा, बल्कि सूरज दिन दहाड़े डूब जाएगा और इस तरह की सब बातें रुनमा होंगी। हो अगरचे हमारे पास, बल्कि मेरे पास यहाँ कुछ नोट्स रखे हुए हैं, देखें, जिनसे ये पता लगता है कि ये बातें किस तरह वाकया होनी है। देखें, किसी भी तरह इस हफ्ते जब हम मोरों के खुलने के मुतालिक सीखेंगे तो हम इन बातों को देखेंगे। समझे, यही बात है कि ये पहले ही हो चुका है और आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। देखें, अगर ये ऐसा ही है तो खुदावंद का फरिश्ता मोरों को खोलते वक्त इन बातों को आश्कारा करेगा। याद रखें, ये चीजें सात पोशीदा गर्जों में मोहर बंद है। समझे, अब ये क्या है? देखें, क्यों लोग एक खाकसार ग्रोह के लोगों की सादा सी सादगी पर और खुदा के निशानों की आवाज पर ईमान नहीं रखते हैं? क्यों इस पर ईमान नहीं रखते हैं? हमेशा की तरह इस वक्त भी खुदा का सच्चा कलाम जाहिर किया गया है। इस वक्त लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे और होशियार और चलाक हो गए हैं कि इनके लिए सादा सी तहरीरी कलाम पर यकीन करना मुश्किल हो गया है। लोग कलाम की अपनी ही तफसीर चाहते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब वो नहीं है। समझे, इसका मतलब वो नहीं है। सुने, क्या अब मैं जल्दी से एक बात कह सकता हूँ? खुदा इस जगह पर जो रोयाएं हमें दिखाता है, इनका भी गलत मतलब समझ लिया जाता है। यही सबब है कि आपने मुझे टेपों में अक्सर ये कहते सुना होगा कि सिर्फ वही कहें जो टेप कहती है, वही कहें जो रोया बयान करती है। अब अगर आप पूरी तरह से मुतवज्जो हों तो आप जरूर कुछ देखेंगे। समझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसको अपने हाथ में पकड़ कर दिखाने की जरूरत नहीं है। समझे समझे समझे, आप यहाँ हैं, ये यहाँ पर है, हम इख्तिताम पर हैं। समझे, जी हाँ जनाब, पढ़े लिखे होशियार लोग इसको खो देते हैं और सादा रोयाओं को जब इंतहाई सादगी से आश्कारा किया जाता है तो ये उन आलिम लोगों के सरों के ऊपर से गुजर जाती हैं। समझे, क्योंकि मैंने रोया देखी थी और उसके मुतालिक मैंने सारी बातें आपको बताई थी कि मैं ऊपर शिकार खेलने जाऊंगा और आप जानते हैं कि लोग उसके सबब से ठोकर खाएंगे और खुदा ने मुझे सिर्फ खास इसी मकसद के लिए ऊपर भेजा था और मैं वापस लौटा और मैंने हर जगह इसका मतलब बताया और मुझे मेरी माँ की मौत और दूसरी बातों के मुतालिक दिखाया गया था और वापिस आकर मैंने ये सारी बातें आपको वाकया होने से पहले बताई थी और बिल्कुल उसी तरह से वाकया हुई जिस तरह से उसने मुझे बताया था कि होंगी। समझे, और तो भी जब यूहन्ना आया तो उसने इस बात का इकरार किया। उसने कहा कि मैं मसीह नहीं हूँ बल्कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। और उस वक्त शागिर्दों ने पूछा था कि क्यों फकिया कहते हैं और कलाम सिखाता है कि एलिया का पहले आना जरूर है। समझे, खुदा की सादगी आगे बढ़ती है और लोगों के सरों के ऊपर से गुजर जाती है। मुझे इस बात को बयान करने दें और फिर खत्म करते हैं। मैं खुदा की मदद से ये बताऊंगा। समझे, तवज्जो दें, आए अब इसकी खोज लगाते हैं और फिर मुझे अफसोस है कि मैं आपको यही कहता जा रहा हूँ कि मैं खत्म करता हूँ और फिर तवज्जो दें, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको रोक रखा है, मगर सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं, हम फिर वापस मिलेंगे। आए हम स्याही की सादा सी बूंद की मिसाल पर गौर करते हैं। सब चीजें किसी मकसद के वास्ते हैं। आज सुबह आप किसी मकसद के तहत यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। चार्ली, मैंने आपके घर में खाना खाया। भाई नेवल, आपने किसी मकसद के तहत मेरे लिए खाना तैयार किया था। मैं, बल्कि सब कुछ ही मकसद के लिए है। इस चर्च को किसी मकसद के लिए तामीर किया गया है, क्योंकि बिना किसी सबब और मकसद के कुछ भी नहीं है। आए अब स्याही की एक सादा सी बूंद को लें। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आए अब स्याही की एक छोटी सी बूंद को लेते हैं और गौर करते हैं। ये क्या है? स्याही की एक बूंद, ये कहाँ से आती है? ठीक है, आए स्याही की एक बूंद को लेते हैं और कहते हैं कि ये एक काली स्याही है। अब ये स्याही एक मकसद के वास्ते है। ये मेरे लिए कैद की सजा से माफी लिखवा सकती है। इसके साथ मेरी सजाए मौत की बजाय माफी लिखी जा सकती है। ये ठीक बात है। ये यूहन्ना 3:16 को लिख सकती है और इस पर ईमान लाने से मेरी रूह बच सकती है। क्या ये सच है? या ये मेरी मौत का परवाना लिख सकती है, समझे? ये मुझे अदालत में मुजरिम ठहरा सकती है, क्योंकि ये एक मकसद के वास्ते है। क्या ये सच है? ठीक है, आए इस स्याही की बूंद को देखें कि ये कहाँ स्याही है। अब देखें कि ये स्याही है और कई तरह के केमिकल्स को इकट्ठा किया गया है और फिर कहीं जाकर ये स्याही बनी है और इसका रंग स्याह है। आप इसको अपने कपड़ों पर डालें तो ये उन पर दाग धब्बे लगा देगी। मगर हमने एक ऐसी चीज भी बनाई है जिसको रंग कार्ड कहते हैं। आप औरतें दाग धब्बों को खत्म करने के लिए रंग कार्ड का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, मैं स्याही की एक बूंद लेता हूँ और इसको रंग कार्ड के टप में डाल देता हूँ। अब देखें कि स्याही के साथ क्या होता है, समझे? क्यों रंग कार्ड को बनाया गया है? इसकी तहकीक की गई और इसको उन मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर बनाया गया है जो स्याही की बूंदों और निशानों को उड़ा देता है कि आप इसको ढूंढ नहीं सकते हैं। अब देखें, रंग कार्ड का एक हिस्सा पानी है। अब देखें, पानी H2O है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बना है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही धमाका खेज गैसेज है और फिर देखें कि दर हकीकत ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन राख ही होती है। ये ठीक बात है, ये केमिकल्स राख हैं, यही कुछ हैं, केमिकल्स राख होते हैं। अब देखें कि इन दोनों को मिलाया जाए तो आपको पानी मिल जाता है, मगर इनको अलग किया जाए तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है और अमल यूं ही पीछे की जानिब चलता जाता है। हाँ, अब इसको लें, इसको लेते हैं। मैं इसकी तफसील बयान नहीं कर सकता हूँ। अब हो सकता है यहाँ पर कोई केमिकल्स के मुतालिक इल्म रखने वाला बैठा हो। अब मैं इसको इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसका फार्मूला नहीं जानता हूँ, मगर इसका इल्म रखने वाले इसको समझ जाएंगे। मगर मैं इसको अपने सादे तरीके से बयान करना चाहता हूँ और मेरा ईमान है कि खुदा इसी में अपने आप को आश्कारा कर देगा। देखें, मैं स्याही की बूंद को रंग कार्ड के पानी में डाल देता हूँ और फिर देखें क्या होता है। फौरन ही स्याह रंग गायब हो जाएगा और अगर आप चाहें भी तो उसको ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो गायब हो जाता है और आप उसको फिर नहीं देख पाएंगे। क्या हुआ? अब आप उसमें से कुछ भी निकलता हुआ देख नहीं पाते, आप उसको देख नहीं सकते हैं। आप उसको क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो टूट चुका है। अब साइंस कहती है कि वो अपने असली अज्जाई तेजाब में चला जाता है। तेजाब कहाँ से आता है, समझे? अच्छा, आप कहते हैं ये फलां चीज से आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर कहते हैं तेजाब बुखारात से बनता है। बुखारात कहाँ से आते हैं? अच्छा, ये तो थे, हम कहेंगे बुखारात मॉलिक्यूल से बनते हैं। मॉलिक्यूल कहाँ से आते हैं? एटम से आते हैं। एटम कहाँ से आते हैं? इलेक्ट्रॉन से आते हैं। वो कहाँ से आते हैं? कायनाती रोशनी से आते हैं। अब देखें, यहाँ से पीछे की तरफ चलते जाते हैं तो अब आप इल्मे कीमिया के मुतालिक जानते हैं, और अगर ये कोई चीज है तो फिर ये तख्लीक क्यों ही चीज है, तो फिर इसका कोई खालक भी है जिसने इसको बनाया है। बस आप यहाँ पर इत्तफाकन नहीं बैठे हुए हैं। मैंने आपको यहाँ पर 12:30 बजे या 1 बजे तक इत्तफाक से नहीं बिठा रखा है। रास्तबाज आदमी के कदम खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं, समझे? इसके पीछे कोई मकसद है। आपके ईमान रखने का भी कोई मकसद है, आपके बेईमान होने का भी कोई मकसद है। बिल्कुल, जैसे इस स्याही की बूंद का कोई मकसद है। आए हम इसके मजीद टुकड़े करके देखते हैं। अब देखें, यूं कहते हैं कि इसको तोड़ते हैं। पीछे की तरफ जाने से हमें पहली बात जो मालूम होती है वो ये है कि हम इस मॉलिक्यूल तक पहुंच जाएंगे। अब देखें, हम मॉलिक्यूल को लेते हैं। मैं कहता हूं, नंबर एक मॉलिक्यूल को 9 बार या मॉलिक्यूल को 12 बार लेता हूं। अब अगर ये 11 होता है तो ये सुर्ख रंग निकलेगा, मगर इसको काला रंग बनाने के लिए 12 ही होना था। इसके बाद हम इसको तोड़ते हुए एक एटम को लेते हैं। ये एक एटम था और 9-6 को 4-3 में जमा करें तो ये एटम 16-11 बनता है। अगर ये 16-12 बन जाता तो शायद ये पर्पल हो जाता, समझे? इसके बाद आप इसको तोड़ते हुए नीचे तक आ जाते हैं। इससे जाहिर हो जाता है कि इसके पीछे कुछ है जिससे इसकी इब्तदा हुई थी। ये बिल्कुल आम सी समझ की बात है। ये एक तख्लीक की गई चीज है और इसका खालिक होना भी लाजमी है, और ये किसी खालिक के हाथ से बनकर आई है और फिर ये बदलती टूटती हुई इन मुख्तलिफ सूरतों में डल गई है। अब साइंस किसी आइटम को 14×12×16 या जो कुछ भी हो नहीं ले सकती और ना ये बना सकती है। सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है। अब देखें, वहाँ से शुरू करके एटम तक आने के बाद ही साइंस इसको समझना शुरू करती है। फिर इसके बाद वो मॉलिक्यूल तक पहुँचते हैं, फिर वो इसके मुतालिक कुछ बेहतर समझ पाते हैं, फिर इसके बाद वो किसी और चीज पर आते हैं, फिर इसके बाद जो पहली चीज होती है वो केमिकल्स तक पहुँचते हैं और फिर वो उसको मिक्स कर देते हैं। अब देखें, जब इंसान ने गुनाह नहीं किया था, बस अब मैं खत्म करने को हूँ। मगर आप इसको समझने में सुस्ती ना करें। जब इंसान ने गुनाह किया तो उसने अपने आप को खुदा से अलग कर लिया और उसने अपने आप को उस बड़ी खाई के उस तरफ मौत के हवाले कर दिया और वो खो गया जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये सच है, उसके पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मगर जब इंसान ने ये कर लिया तो खुदा ने एक बर्रा या बकरा या एक भेड़ या कुछ ऐसी ही चीज का लहू इवजी के तौर पर कबूल किया, जैसे आदम या हाबल ने किया था। खुदा ने खाई की दूसरी जानब लहू कबूल किया था। उस किनारे पर वो खुदा का बेटा है, वो खुदा से पैदा हुआ है, वो जमीन का वारिस है, वो कुदरत को काबू कर सकता है, वो किसी भी चीज को कहकर तख्लीक कर सकता है। क्यों? इसलिए कि वो खुद ही खालिक है, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। लेकिन जब उसने दायरे को पार किया और गुनाह किया तो उसने बेटा होने का हक खो दिया। वो फितरती तौर से गुनाहगार है, वो शैतान के हाथों में चला गया और उसके मुताहित हो गया। मगर खुदा ने कुर्बानी को कबूल किया जो कि केमिकल की सूरत में लहू था, मगर बैलों और बकरों का लहू गुनाह को खत्म नहीं कर सकता था, ये सिर्फ गुनाहों को डांपता था। अगर मेरे हाथ पर सुर्ख रंग का दाग हो और उसको किसी सफेद कपड़े से ढांप दिया जाए तो अभी भी सुर्ख दाग वहीं पर है। देखा, ये अभी भी वहीं पर है। मगर खुदा ने गुनाह के दाग धब्बे मिटाने के लिए आसमान से रंग काट नाजल किया था और ये उसके अपने ही बेटे का लहू था। इसलिए जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके उसके रंग काट में धुल जाते हैं तो फिर उनको ढूंढने की कोशिश मत करें। फिर गुनाह के दाग और धब्बे वक्त के सांचे से गुजर जाते हैं, ठीक उस इल्जाम लगाने वाले शैतान के ऊपर जा टिकते हैं और कयामत के दिन तक उसी पर रहते हैं। बेटे को क्या होता है? वो दोबारा बाप के साथ कामिल रफाकत में लौट आता है और खाई के उस पार जिंदगी में दाखिल हो जाता है जहां उसके खिलाफ गुनाह की कोई याद बाकी नहीं रहती है। अब उसमें कोई दाग धब्बा नजर नहीं आता है, वो आजाद है। हालेलुया। उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा कि स्याही की बूंद के साथ हुआ था, जो कि फिर स्याही स्याही नहीं रहती क्योंकि वो टूट चुकी है, वो वापस जरा बन गई है। और जब गुनाह का इकरार कर लिया जाता है और उसके लहू में डुबो दिया जाता है, यानी जब कोई मर्द या औरत यीशु मसीह के लहू में डूब जाता है तो फिर गुनाह का असर खत्म हो जाता है और गुनाह के सारे अज्जा वापस शैतान के पास चले जाते हैं और क्यामत के दिन तक उसके ऊपर ठहरे रहते हैं, जहाँ पर उसकी अब्दि मंजिल उस आग की झील में फेंका जाना होगा। फिर इस तरह उस मौत वाली खाई को भर दिया जाता है और फिर कभी गुनाह की याद बाकी नहीं रहती और एक इंसान बख्शीश पाकर खुदा का बेटा बन जाता है। ये सादगी है। मूसा जो कि बैलों और बकरों के लहू के तले था, उसने खुदा के कलाम के मुताबिक इकरार किया था। खुदा उस सादा से इंसान को ले सकता था और अपने कलाम को उसके मुंह में डाल सकता था और उसने साबित किया कि वो यहोवा का खादम है, क्योंकि वो उसकी हजूरी में चलता फिरता था और यहोवा उसके साथ रोया में बातें करता था। वो निकल आया, उसने अपना हाथ पूरब की तरफ बढ़ाया और अब याद रहे कि खुदा ने मूसा से बातें की थी और यही खुदा की सोच थी। इसलिए खुदा इंसान को इस्तेमाल करता है। खुदा ने उसके साथ कलाम किया था, ये सच है। खुदा ने कहा, जो लाठी तेरे हाथ में है उसको पूरब की तरफ बढ़ा और कह मक्खियाँ आ जाएं। मूसा जो कि भेड़ों और बकरों के लहू के तले था, वो चलकर गया, उसने लाठी को लिया और पूरब की तरफ बढ़ाया और कहा, खुदावन यूं फरमाता है मक्खियाँ आ जाएं। मक्खियों के बारे में कभी सुना नहीं गया था, वो वापस मुड़ा, ये तो पहले ही कहा जा चुका था। ये एक ख्याल था और फिर कलाम था और फिर उसको बोला गया और उसको जाहिर किया गया। फिर ये खुदा का कलाम था और फिर ये सादा से शख्स के होंठों से आया और उस इंसान के होंठों पर, यानी सादा से इंसान के होंठों पर आया जो बैलों और बकरों के लहू के नीचे था। पहली बात जो वकू हुई, आप जानते हैं, वहाँ पर हरे रंग की मक्खियाँ आ गईं। और अगली बात जो आप जानते हैं, 250 पौंड मक्खियाँ एक गज के फासले पर मौजूद थी। ये क्या था? ये खुदा का कलाम था जो मूसा के वसीले बोला गया था। ये तख्लीकी कलाम था क्योंकि लहू के तले वो खुदा की हजूरी में खड़ा था, क्योंकि वो अल्फाज उसके अपने अल्फाज ना थे। लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कलीसिया कहाँ खड़ी है? मेंढक आ जाए। उस वक्त मुल्क में एक भी मेंढक ना था, मगर एक ही घंटे के अंदर 10 फीट गहराई तक मेंढक हो गए। ये क्या था? ये खुदाए खालक था जो अपने आप को एक सादा से शख्स में छुपाए हुए था। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर बकरों या बछड़ों का लहू जो कि सिर्फ गुनाह को डांपता था इंसान को ऐसी हालत में ला खड़ा कर सकता था कि वो खुदा तखलीक की कलाम बोले और मक्खियों को वजूद में ले आए, तो फिर क्यों आप यीशु मसीह के लहू को जो गुनाहों को जड़ से खत्म कर देता है उसके सबब से ठोकर खाते हैं कि वो एक इंसान को ऐसी हालत में ला खड़ा कर सकता है कि वो मुंह से बोले और गलेरियां या कुछ और वजूद में आ जाए? सादगी के सबब से ठोकर ना खाएं, ऐसा मत करें। सादगी के सबब से ठोकर ना खाएं। ईमान रखें कि वो अब भी यकसा खुदा है। ओ मेरे खुदाया, गुनाहों के माफ करने वाले, ओ मेरी कितनी आरजू थी कि मैं ये कर पाता। फिर मरकस 11:22, अगर कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे, जो मांगा है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हो मेरे पास 3 या 4 सफ़े और लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे इनको छोड़ना पड़ेगा। आपका शुक्रिया। खुदा अपने आप को सादगी में छुपाए हुए है, क्या आप उसको नहीं देख पाते हैं? तो फिर जरूर कहीं गड़बड़ है, जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। जब खुदा कोई बात कहता है तो फिर वो झूठ नहीं बोल सकता है, उसने वादा किया है, समझे? वो अपने आप को सादगी में छुपाता है। वो बहुत ही सादा है। आलिम और पढ़े लिखे लोग कहते हैं हाँ ये तो टेलीपैथी या कुछ और है। आप जानते हैं ये खुदा है। खुदा अपने आप को वापस ले जाकर वक्त की हदों को पार करके माजी में झांक कर आपको बता सकता है कि पीछे क्या हुआ था, और ठीक ठीक ये भी बता सकता है कि आज आप क्या हैं और आप कल क्या होंगे। अब भी यीशु मसीह के रंग कार्ड से गुनाह मिट जाते हैं, जो एक गुनाहगार को लेकर उसको पाक बना सकता है और वो शख्स खुदा की हजूरी में खड़ा हो सकता है। लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। तुम मुझ पर किस बात का इल्जाम लगाते हो? ओ, क्या तुम्हारा अपना कलाम नहीं कहता है कि खुदा का कलाम जिन नबियों के पास आया क्या तुमने उन्हें खुदा नहीं कहा? तो फिर तुम मुझको क्यों रद्द करते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं खुदा का बेटा हूँ? देखें, वो उसको पहचानने में नाकाम हो गए थे, अब ए कलीसिया, आज रात से लेकर आगे तक जो पैगाम सुनाए जाने हैं उनको समझने में नाकाम मत हो, समझे? इस दिन पर गौर करें जिसमें हम रह रहे हैं, और याद रखें यीशु मसीह का लहू आपके गुनाहों को आपसे इस कदर दूर कर देता है कि वो मजीद खुदा की यादगारी में नहीं रहते हैं, वो सारे दाग धब्बों को मिटा देता है। गुनाह ने तो किरमिसी धब्बे बना दिए थे, उसने उनको धोकर बर्फ की मानित सफेद कर दिया, तब ही तो मैं तख्त के सामने उसके सामने उसी में कामिल खड़ा होता हूँ। ओ मेरे खुदाया, मैं कैसे कामिल बन सकता हूँ? मैं किस तरह कामिल बन सकता हूँ? यीशु का लहू मेरे और खुदा के दरमियान खड़ा होता है, क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो सिर्फ उसके लहू को कबूल किया है, उसने ही ये काम किया है। मैं तो एक गुनाहगार हूँ, लेकिन तू खुदा है। लहू के कीमियाई अज्जा जो गुनाह को बसम कर देते हैं वो मेरे और खुदा के दरमियान पाए जाते हैं, इसलिए खुदा मुझको वैसे ही सफेद देखता है जैसे रंग कार्ड का पानी होता है। मेरे गुनाह बख्शे गए हैं, इसलिए ये उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहाँ एक कुर्बानी दी जा चुकी है। खुदा के सादा कलाम पर यकीन करने के लिए ईमान कहाँ है? जैसे खुदा ने कहा है बिल्कुल वैसे ही उसके कलाम को लें। अब भी खुदा अपने आप को सादगी में छुपाता है, रास्तबाज लोगों के छोटे से ग्रोह में छुपाता है। अब इन दिनों में किसी दिन वो अपने आप को उस पर जाहिर करेगा जैसे उसने हमेशा अपने आप को जाहिर किया था। क्या आप उससे प्यार करते हैं? मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया, और मेरी निजात कलवरी की सूली पर खरीदी। क्या आप उससे प्यार करते हैं? मेरे खुदाया, क्या वो अजीम खुदा नहीं है? मैं उम्मीद करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि ये पैगाम वही कुछ पैदा करेगा जिस नियत से ये बयान किया गया है। आपको उस हालत में ले आएगा, फिर आप दुनियावी खूबसूरत चीजों पर तवज्जो नहीं देंगे या कुछ। जब आप खुदा की अजमत को देख लेते हैं, गौर करें कि वो कितना सादा और हलीम है, और फिर आप खुदा को जानेंगे। उसे यूं तलाश ना करें। जब अलीशा वहाँ उस घर में था, वहाँ से धुआं गुजरा, लहू, गर्जे और बिजलियाँ, اور وغیرہ وغیرہ غور کریں. ان تمام اقسام کے جذبات سے ہم گزر چکے ہیں. چہرے اور ہاتھوں پر لہو دیکھیں، جذبات اور باقی سب کچھ ہوا، مگر ان کے نبی نے کوئی پرواہ نہ کی. وہ اس وقت تک وہیں ٹھہرا رہا جب تک اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی نہ دی. یہ کیا تھا؟ یہ کلام تھا. پھر اس نے چہرے کو ڈانپا اور باہر نکل آیا. دیکھا، یہی تھا جو وہاں ہوا تھا. دوستو یاد رکھیں، کسی بڑی بات کے واقع ہونے کے منتظر مت رہیں. آپ کہتے ہیں کہ خدا نے بڑی اور عظیم باتیں کرنے کے متعلق کہا ہے. دیکھیں، ایک عظیم وقت آئے گا جب یہ یا وہ عظیم اور بڑی باتیں واقعہ ہوں گی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ وہ بات سمجھ رہے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. سمجھے، عظیم اور بڑی چیزیں. دیکھیں اور ہو، جب یہ واقعہ ہوں گی تو یہ اسی طرح عظیم اور بڑی چیزیں ہوں گی. یہ اتنی سادگی سے ہوگا کہ آپ ان ساری چیزوں کو کھو دیں گے. اس لیے صرف سادگی سے چلتے رہیں. دیکھیں اور آپ پیچھے دیکھیں گے اور کہیں گے، اچھا، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا. حالانکہ سب کچھ آپ کے سامنے واقعہ ہو گیا اور آپ اس کو کبھی دیکھ نہ پائے، صرف گزر گئے. دیکھیں، یہ بہت ہی سادہ ہے. سمجھے، خدا سادگی میں رہتا ہے. غور کریں کہ وہ اپنے آپ کو عظمت میں ظاہر کرتا ہے. کیا کوئی چیز اس کو عظیم بنا سکتی ہے؟ سادگی. وہ اپنے آپ کو سادہ بنا لیتا ہے. ایک بڑا آدمی اپنے آپ کو سادہ نہیں بنا سکتا ہے. اس نے تو اپنی عظمت کے ساتھ ہی جڑے رہنا ہوتا ہے. سمجھے، مگر پھر بھی اصل میں وہ اتنا عظیم نہیں ہے. لیکن جب وہ زیادہ بڑا اور عظیم ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نیچا کر لیتا ہے. سمجھے، اپنے آپ کو خاکسار بنا لیتا ہے. جیسے کہ اس بوڑھے بزرگ نے شکاگو میں کہا تھا کہ وہ شخص وہاں پر اپنی پڑھائی لکھائی اور دوسری چیزوں کے ساتھ گیا تھا، کہا مگر سر نیچے جھکائے ہوئے اور ہارے ہوئے انسان کی مانند واپس لوٹ کر آ گیا. اس نے کہا جس طرح وہ آتے وقت تھا، اگر وہ جاتے وقت ہوتا تو جیسا وہ جاتے وقت تھا ویسا ہی آتے وقت ہوتا. خیر، یہ درست بات ہے. سمجھے، اپنے آپ کو فروتن بنائیں، حلیم بنے رہیں. بہت نرالے بننے کی کوشش مت کریں، صرف یسوع کے ساتھ پیار کریں. سمجھے، اور کہیں خداوند، اگر میرے دل میں کوئی مکر ہے یا میرے دل میں کوئی برائی ہے تو اے باپ اس کو مجھ سے نکال دے، کیونکہ میں ویسا نہیں بننا چاہتا. او خداوند، میں اس دن ان بزرگوں کی گنتی میں ہونا چاہتا ہوں اور میں اس دن کو نزدیک آتے ہوئے دیکھتا ہوں. اب غور کریں کہ موریں کھلنے والی ہیں اور خداوند ہم پر ان کو ظاہر کرے گا. یاد رکھیں، وہی ہے جو یہ کر سکتا ہے اور ہم اسی پر بھروسہ رکھے ہوئے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاسٹر صاحب آپ کو کچھ کہیں گے یا ان کے پاس آپ کو کچھ کہنے کے لیے ہے. اس سے پہلے کہ دوبارہ ہم دوپہر کی عبادت میں ملیں، میرا خیال ہے رفاقت ہوگی. پاسٹر صاحب، پرستی 6:30 بجے شروع کی جائے گی اور یوں 6:30 بجے اور دروازے 6 بجے کھل جائیں گے. پرستش 6:30 بجے شروع ہوگی اور خدا کی مرضی سے آج شب میں 7 موروں کی کتاب پر بولوں گا، اور پھر پیر کی رات میں سفید گھوڑے کے سوار کے متعلق بولوں گا، اور منگل کی رات کالے گھوڑے کے سوار کے متعلق بولوں گا، اور بدھ کی رات زرد گھوڑے کے سوار کے متعلق بولوں گا یا لال گھوڑے کے سوار کے متعلق بولوں گا. اس کے بعد چوتھی پانچویں چھٹی مور کے متعلق بولوں گا، اور پھر اگلے اتوار کی شب یا شاید اگلے اتوار کی صبح شفایا عبادت ہو، مجھے معلوم نہیں. اور اب اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اس چرچ کو خدا کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیا ہے. خدا آپ کو برکت دے. میں نے آپ کو 1 گھنٹہ لیٹ کر دیا ہے، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ دیکھیں میرا مطلب ایسا کرنے کا نہیں تھا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دیکھیں میں صرف یہی ہفتہ آپ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد میں پھر چلا جاؤں گا. میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں گا. جہاں کہیں وہ میری رہنمائی کرے گا میں وہاں چلا جاؤں گا. اس لیے اب میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ابدیت آپ کے ساتھ گزارنی ہے. خدا آپ کو برکت دے. اب بھائی نیول.